शुक्रिया भाई नेविल, खुदावंद आपको बरकत दे। आज सुबह फिर टेबरनेकल में आना अच्छा लगा। आप सबको एक सुहानी सुबह बखैर, और मुझे भरोसा है कि ये हम सब के लिए खुदावंद की हजूरी में एक अजीम दिन होगा। आज सुबह जो पैगाम मुझे मिला है, मैं बराए रास्त इस पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ कि ये अहम है, और ये आप जानते हैं कि इज्तमा को परेशानी से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग खड़े हुए हैं और हमें काफी देर ठहरना पड़ेगा। इसलिए मैं सीधा सबक की तरफ जाऊंगा। और अब आज रात जिस मौजू पर मैं बोलना चाहता हूँ वो है मेरी जिंदगी का रहनुमा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात बहुत से लोग इस वक्त मौजूद होंगे। तो भी अगर आपका अपना गिरजा है, हम ये चाहते हैं कि आप अपने गिरजाघर में जाएं, जहां आप मुकरर किए गए हैं। आप पर फर्ज है कि वहां मौजूद हों ताकि तुम्हारी रोशनी चमके। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ मजीद जगह बन चुकी होगी। हमें इसमें हर तरफ दुश्वारी है। इंतजामी बोर्ड ने यकीनन हर चीज की छानबीन की है, और वो इसे एक जगह भेजते हैं, वो उसे ठीक करार देते हैं और फिर किसी और जगह भेज देते हैं, और वहाँ इस पर इख्तलाफ आ जाता है और वो इसे वापस भेज देते हैं, और ये यहाँ फिर इसे ठीक करार देते हैं और वापस भेजते हैं। हम कैसे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शैतान हमेशा दुरुस्त चीज के खिलाफ जंग करता है। याद रहे कि आप हमेशा दुरुस्त हों। एंथोनी, मैं हैरान हो रहा था कि तुम कहाँ पर हो, आप मुझे नजर नहीं आ रहे थे। आपके वालिद से मैं मिला हूँ, मैंने तमाम हाजरीन में से आपको ढूंढा, उन्होंने बताया कि आप वहाँ बैठे थे। हम खुश हैं कि आप और आपके वालिद साहब यहाँ हमारे साथ हैं। न्यूयॉर्क के भाई मलेनो भी यहाँ मौजूद हैं। अगर खुदा की मर्जी हुई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मौसम बहार के इख्तिताम पर इसी तरह के वक्त में न्यूयॉर्क से बाहर किसी जगह जा सकूँ। आज जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम आप सबके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका यहाँ होना बहुत ही अच्छी बात है। कल रात हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, कम से कम मेरा वक्त तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं तो ऐसे था जैसे ये साया हैकल में, और इस तरह इस सुबह जिस मौजू पर हम सीखना या बोलना चाहेंगे, बल्कि अगर हम बोलते हैं तो वो है जिंदा मकदस की तामीर, जिंदा खुदा का जिंदा मकदस जहां वो सुकूनत पजीर होता है, यानी कामिल इंसान की तामीर, जिंदा खुदा का जिंदा मकदस जहां वो सुकूनत पजीर होता है। और अगरचे मैं समझता हूं कि यहां उनमें से कोई अच्छे गीत गाने वाले मौजूद हैं, मैं उन्हें सुन न सका, और आज रात मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां तक पहुंचूं। मेरी एलिया ने मुझे भाई अंगरन के मुतालिक बताया, मुझे यकीन है कि इसका नाम यही है जो कि टेनेसी से है। अब गुज़िश्ता रात वो यहीं थे, मगर आज सुबह वो मुझे नजर नहीं आ रहे, मगर मेरा ख्याल है कि वो यहीं कहीं होंगे। मैं चाहूंगा कि आज रात वो गीत गाएं, अगर मुझसे हो सके कि उसके जलाल में से, या तू कितना अजीम है, तो मैं सुनना पसंद करूंगा। कितने हैं जो भाई अंग्रंथ से गीत सुनना पसंद करेंगे? मैं अच्छे गीत सुनना पसंद करता हूँ। और मेडा ने मुझे बताया कि इसके पास एक बैरीटून था, ये मुझे हमारे भाई बैक्स्टर की याद दिलाता है, वो भी गीत गाने वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, और उसके जलाल के नीचे, या तू कितना अजीम है। मुझे यकीन है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया है वहाँ। भाई अंगरन, क्या ये ठीक बात है? क्या आज रात आप गाएंगे? क्या आप ठहरे रहेंगे या कोशिश करेंगे रात की इबादत में ठहरने के लिए? ठीक है, मैं ठीक है, नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसके मुतालिक क्या ख्याल है। मैं किसी पर किसी किस्म की रुकावट डालना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि नहीं, तब जब मैं सात मोरों पर मनादी कर रहा हूँगा, और अगर उस दौरान आप आ सके तो मैं इसे टेप में महफूज कर लूँगा, और आप गौर करें, इसको समझें, तू कितना अजीम है, और इसी तरह तेरे जलाल में से। इस वक्त हम ऐसा करेंगे। ओ, क्या खुदावंद की खिदमत करना हैरत अंगेज नहीं है? मैं नहीं जानता अगर मैं मसीही ना होता तो क्या होता। मसीही होना कितनी उम्दा बात है, मैं इसी तरह महसूस करता हूँ, और खुशी से ऊपर नीचे उछल कूद और चला रहा हूँ अपनी बुलंद आवाज से। एक मसीही होते हुए इसके मुतालिक सोचूं कि हम सब मसीह पर तवक्कल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा इस शख्स का नाम गलत पुकारता हूँ, ये ST या TS या कुछ इसी तरह सेमनर, भाई सेमनर है वो। मैं इनका और इनकी काबले कदर एहलिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सात कलीसियाई जमानों को टाइप करने में इसे तकरीबन 6 माह लगे। अब 7 कलीसियाई जमाने टाइप शुदा हमारे पास हैं और नजर सानी के लिए तैयार हैं ताकि किताब की शक्ल में आ सकें। बहन सेमनर, आप जहां भी हैं, यकीनन आपने जिस कदर ज्यादा काम किया है इसके लिए हम अदायगी करेंगे, क्योंकि ये इस कदर तवील किताब है इसलिए इस पर इतना ज्यादा काम करना पड़ा है। मुझे अकेले को इसे टेप से उतारने में, इसे वापस घुमाकर बार बार सुनने में और फिर किताब की शक्ल में लाने के लिए तकरीबन 6 माह लगे। हम जल्दी इसे तैयार करके छापाखाना भेज देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ये चीज जल्द लोगों के पास पहुंच जानी चाहिए ताकि आप इसका मुतालिया कर सकें। और चंद मिनट पहले जब मैं पीछे से अंदर आया तो बिली मुझे दिखा रहा था कि ये था, अब ये छपने के लिए तैयार है। इसलिए बहन, ये टैबरनेकल इसके लिए आपको उजरत देगा। मैं नहीं चाहता कि आपसे बगैर उजरत काम लिया जाए, और अगर हमारी किताब तैयार हो जाती है और हमें इसकी कीमत मुकरर करना पड़ती है या कुछ इस तरह, तो हम ऐसी कीमत रखेंगे कि ये जब भी फरोख्त हो, जो कुछ भी कीमत हो, उसमें से आपको कुछ मिल सके। और आप सिर्फ इंतजामी बोर्ड में से किसी से बात करें तो वो आपके लिए बंदोबस्त कर देंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बुजुर्ग भाई किड और सिस्टर किड यहाँ तशरीफ फरमा है। वो 100 से कुछ साल कम हैं, थोड़े से कम हैं। मैं कुछ देर पहले उससे मिला तो वो कहने लगी, ठीक है भाई बिली, शायद ये आखिरी मौका होगा कि मैं आपसे मिलूं। उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैंने कहा, ओ मेरी प्यारी बहन, आप ऐसी बातें ना करें, आप बिल्कुल एक माँ और बाप की तरह हैं। हम भाई किड और बहन किड से मोहब्बत करते हैं, हम में से हर कोई उनसे मोहब्बत करता है। और जब मैं इस ज़हीफ़ जोड़े को चर्च की तरफ चलते हुए देखता हूँ तो मुझे जैसे के कुछ होने लगता है। और जरा सोचें कि मेरी पैदाइश से पहले वो खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। और अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। अभी जरा सोचें, मेरे पैदा होने से पहले से वो मुनादी कर रहे हैं और अब मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं छोड़ देने के बारे में सोच रहा होता हूँ। मैं जब भाई किड और बहन किड को दाखिल होते हुए देखता हूँ तो खुदा को जलाल मिले, हालेलुया। मैं कहता हूँ, नहीं, मैं बेहतर महसूस करता हूँ। जी जनाब, इन्हें देखकर किस तरह आपको रूहानी जोश हासिल होता है। और फिर आप दोबारा मेरी उम्र का अंदाजा करें और ये कि ये अभी भी खिदमत के लिए जाते हैं। और वो आज सुबह आए और किताबों का पूछ रहे थे कि वो किताबें लेकर जाएं, उन्हें बेच सकें और कैसेट्स लेना चाहते हैं ताकि वो इन कैसेट्स को चलाकर रूहें जीत सकें। अब उनकी उम्र तकरीबन 100 साल हो गई। हम कल रात बात कर रहे थे कि आपके दोनों पर कहाँ हैं। जी हाँ, मैं सोचना शुरू करूँ मेरे पर कहाँ हैं। कल जब उसने कहा था, आपकी उम्र कितनी है बहन किड? 81 साल। भाई किड, आपकी उम्र कितनी है? 81 या 82 बरस है। और अभी भी अपने परों को मुसलसल आगे फड़फड़ाते हुए मोतारिक रखते हैं? ओहायो में कोई भी परेशान कुन बात हो और बहन किड को इसका इलम हो जाता है तो घर में फोन की घंटी बज उठती है। किसी रोज उन्होंने फोन किया कि एक छोटी लड़की, मेरा यकीन है कि वो पैदा हुई थी और बच्ची के पेट से अंतड़ियां बाहर की तरफ खुली हुई थी, मसाना बाहर की तरफ निकला हुआ था। और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और वो ऑपरेशन करने से घबरा रहा था। हमने दुआ की, ऑपरेशन के जरिए आंतों को अंदर रखा और उन्होंने ख्याल किया कि जिंदा नहीं रह सकेगी और वो जिंदा है, कोई रास्ता नहीं। तब इसके लिए बड़ी आंत के आखिरी सिरे से कोई खुराक के गुजरने का रास्ता ना था। और बहन किड ने दोबारा बुलाया, हमने दोबारा दुआ की और अब उसका रास्ता ठीक हो गया है और वो बच्ची यहाँ शहादत के तौर पर मौजूद है और इसी तरह डॉक्टर भी मौजूद है, समझे? ये यीशु मसीह के अजीम खालिक होने की गवाही है। क्या आपने देखा कि शैतान ने क्या करने की कोशिश की? उसने बच्ची की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। और फिर देखें, वो खातून खुदावंद की तरफ आई। जब उनकी बच्ची के लिए ये अजीम मौजजा रूनमा हुआ तो वो खुदावंद की तरफ वापस आई। बहन किड ने मसीह की तरफ आने में उनकी रहनुमाई की। कल मुझे कैलिफोर्निया से एक फोन आया था, एक भाई जो वहाँ मनाद है। जब कई साल पहले मैं कैलिफोर्निया गया तो वहाँ उनके पास था। उसका पोता पैदा हुआ जिसके दिल में 4-3 वॉल्व बंद थे। मैंने ये मामला उनको बयान किया मैंने कहा, खुदा जिसने इस दूसरे वॉल्व को खलक किया है, इसे ठीक रखा है, यकीनन आपके पोते को शिफा दे सकता है। सिर्फ अपने लड़के को बताएं कि वो खातिर जमा रखे। जब मैं पहली दफा कैलिफोर्निया गया तो लड़का इस इबादत में मौजूद था। ये 16 बरस पहले की बात है। अब इसे 18 बरस हो गए हैं और मैं कैलिफोर्निया में था, और वो इस इबादत ने इस लड़के पर इस कदर असर किया, यहाँ तक कि जब उनके बच्चा पैदा हुआ, उसके पैदा होने पर उन्होंने देखा कि कुछ गलत बात है, क्योंकि ये नीला हो रहा था, और उन्होंने उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश की और इसी तरह की मजीद कोशिशें जारी रखी, लेकिन वो बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जब डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया तो मालूम हुआ उसके दिल के 3 वॉल्व बंद हैं, जो कभी नहीं खुल सकते थे। समझे, सिर्फ एक वॉल्व काम कर रहा था। और उसने अपने वालिद को बुलाया और कहा, अब्बा जान, फौरन भाई ब्रैनम को बुलाएं, उन्हें कहें कि वो इसके लिए मसीह से दुआ करें, और वो ऐसा करेंगे। ये बात है, ओ मेरे खुदाया, ये उस बात का असर था जो उन्होंने देखा। समझे, जो बात गुज़िश्ता रात लोगों से बयान की गई थी कि ऐन वक्त पर जरूरी खुराक। ठीक है, अगर हम बातें करते रहे तो फिर अपने सबक की तरफ नहीं आ सकते। क्या हम आ सकेंगे? ये ऐसे है जैसे एक यक बस्ता सूप का गुड़ का शीरा। ये इतना गाढ़ा होता है जितना के हो सकता है। आप जानते हैं कि वो चिमटता ही जाता है। हम ऐसी ही रफाकत के लिए खुश हैं। जी जनाब, इसीलिए खामोशी इख्तियार करते हुए अब अपने सबक की तरफ चलते हैं। अब हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आया आप तख्ता स्याह को देख सकते हैं या नहीं। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूं, तो चंद लम्हात में आप अब इसे देख सकेंगे। अब आप में से कुछ को क्या तुम्हें इसको ठीक करने के लिए कुछ चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी ठीक है। डॉक, शायद थोड़ा सा ठीक हुआ है। ठीक फर्श पर, हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम इस वक्त शुरू करेंगे। जब क्या ये ठीक हो गया है? ठीक है, आइए जल्दी से इसकी तरफ मुड़ते हैं। क्या पीछे वालों को दिखाई दे रहा है? क्या आप देख सकते हैं? अगर आप देख सकते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करें। अगर आप इस तख्ता स्याह को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? नहीं, ठीक है, कोई दूसरी जगह ढूंढें। अब जब तक वो इसे दुरुस्त कर रहे हैं, क्या मैं आज सुबह देर से शुरू कर रहा हूँ या नहीं? नहीं, मैं तकरीबन 15 मिनट पहले शुरू कर रहा हूँ, और इस तरह फिर हम वक्त निकालेंगे, क्योंकि हम जल्दी नहीं करना चाहते। जब आप जल्दी करते हैं तो फिर जो कुछ आप कहने जा रहे हैं उसे खराब कर बैठते हैं। अब एक दिन मैं एक टेप सुन रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी हुई। जो कुछ कहा जा रहा था उस पर नहीं, बल्कि जिस अंदाज से कहा जा रहा था, बहुत तेजी से, और ये घबराहट की रफ्तार है। मुझे महसूस हुआ कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एक दिन वो जगह देखी जहाँ लोईवील के दरमियान वो एक बड़ा चिड़ियाघर बनाने वाले थे, और मिस्टर ब्राउन, मेरा ख्याल है कि ये वहीं के मुतालिक बात है, जिसने चिड़ियाघर के लिए 10 लाख डॉलर की पेशकश की थी। ठीक है, अगर वो मेरे पास होते तो मैं उन्हें इसके लिए देता कि जानवरों को छोड़ दिया जाए। मुझे किसी चीज को इस पिंजरे में बंद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने चिड़ियाघर में बेचारे जानवरों को देखा है, रीछ और शेर और दूसरे जानवर भी आगे पीछे चलते हुए, कभी आगे जाते और कभी पीछे, तमाम उम्र के लिए कैद। आपने देखा? इससे आपको बुरा महसूस होता है। आखिरकार वो इंसानी अकल से पकड़े गए हैं, जो इनसे ज्यादा चुस्त हैं। समझे, उन्होंने उन्हें पकड़कर कैद में डाल दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही शैतान करता है कि वो कीमती लोगों को लेता है जो कि खुदा की अजीम जगहों पर जाते हैं, खिदमत के मैदानों में और इसी तरह के काम, और फिर इसे किसी तंजीम या किसी ग्रोह या किसी तरह के कैद खाने में डाल देता है। ये कैसी खौफनाक बात है। मुझे चिड़ियाघर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इन जानवरों में से किसी एक का सा हाल महसूस होता है। जब आप सब पिंजरों में कैद हों और आप आजाद होने की कोशिश कर रहे हों, और आप जानते हैं, ताकि बाहर निकलकर कुछ कर सकें। अब इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, आएं इससे पहले कलाम के मुसन्निफ की तरफ बढ़ते हैं और अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। हमारे मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह फिर हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु के नाम में जमा होते हैं। खुदा मुजस्सम होकर हमारे गुनाहों के कफारे के लिए जमीन पर आया, और रास्तबाज ने जान दे दी ताकि हम नारास्त इसकी रास्तबाजी से इसमें कामिल हो जाएं। खुदावंद, हम इस इकरार के साथ आते हैं, हम इस लायक नहीं हैं, हमारे लिए यहाँ कुछ भलाई नहीं है, और हम सब एक बड़े जेल खाना में खड़े हैं। कोई मसला नहीं कि हम किस किनारे पर खड़े हैं, हम अभी तक एक बड़े जेल खाना में हैं। कोई दूसरे की मदद नहीं कर सकता, मगर खुदा अपने कभी न खत्म होने वाले रहम के साथ नीचे उतरा और कैद खाने के दरवाजे को खोल दिया ताकि हम आजाद हों। मजीद हम किसी कैद में नहीं हैं। अब हम दुनिया के चिड़ियाघर में नहीं बल्कि इससे बाहर हैं, बल्कि आजाद हैं। ओ हम कैसे इससे मोहब्बत करते हैं और ताजीम करते हैं, और इसके सबब से वादों के साथ कैसे चल सकते हैं और इन्हें अपने सामने पूरा होता हुआ देख सकते हैं, और हम अपनी आंखों से देख सकते हैं के अजीम खुदा ने खुद को हमारे सामने जाहिर कर दिया और उसने अपने आप को ऐसा हकीकी पेश किया जिस तरह उसने कदीमुल अयाम में अंबिया के लिए किया था। ये जानते हुए वो इस यकीन के साथ मुतमीन हैं कि किसी दिन दोबारा हम इस जिंदगी के खत्म होने के लिए बहाल किए जाएंगे और हमेशा की जिंदगी के लिए जी उठेंगे और फिर मौत कभी ना आएगी। हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, ना कभी मरेंगे, और ना हम कभी भूखे होंगे और ना कभी मोहताज होंगे, लेकिन हम उसके साथ रहेंगे और हम उसे ये कहते सुनना चाहते हैं, खुदावन की खुशी में शामिल हो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। इससे पहले के गुनाह दाखिल हुआ वो इसे तैयार कर चुका था, जैसे आदम और हवा के लिए कि वो कभी बीमार ना होते या किसी चीज से परेशान ना होते, और अब ये उसने हमारे लिए तैयार की है। और वो हमारे आने से पेशतर ये जानता था, गुनाह ने एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी थी और यीशु के खून से गुनाह दूर किए गए हैं। अब हम खुदा के अबदी वादा के वसीला से वादे की सरजमीन के लिए मुकरर हो चुके हैं। ऐ बाप, जब हम तेरे कलाम का मुतालिया करते हैं तो तू हमें बरकत दे। हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जाने के लिए किस तरह का आदमी होना चाहिए। आज के स्कूल सबक में हमारी मदद फरमा ताकि अजीम उस्ताद हमारे साथ हो जो कि रुल कुछ है, जो नीचे उतर आए और अपने आप को हम पर अपने कलाम के वसीला से आशकारा करे, क्योंकि हम ये उसके नाम में उसी के जलाल के लिए मांगते हैं। आमीन। अब पहले मैं चाहूंगा कि मेरे साथ पत्रस के दूसरे खत के पहले बाप को खोलें। मैं पत्रस के दूसरे खत के पहले बाप का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। और अब जिनके पास कागज और कलम है ले लें। और आज सुबह मुझे बताया गया कि बाज़ औक़ात जब मैं अपना सर यहां सामने से दूर हटाता हूं, तो इससे टेप में कम आवाज आती है। दर हकीकत मेरा मकसद ये करना नहीं होता, और मेरा ईमान है कि बाज़ औक़ात अगर हम एक वेब माइक ले सकें और उसे यहाँ छत के साथ लटका दें, आप जहाँ भी खड़े हों कोई मसला नहीं, ये ठीक रहेगा। छत पर एक माइक लग जाने से इर्द गिर्द सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब जबकि मैं बात कर रहा हूँ, और अगर आप इबादत के बाद आप इस ढांचे का खाका लेना चाहें, तो मैंने इसे भी टाइप कर रखा है। मैं एक कील लगाकर यहाँ सामने रख दूंगा। अगर आप उसे बनाना चाहें तो आज बाद अज दोपहर थोड़ा जल्दी आ जाएं ताकि हम इसे समझ सकें। अब हम सात मोरों की जानिब बढ़ रहे हैं। हमने कुछ वक्त पहले सात कलीसिया जमाने खत्म किए हैं, और ये पैगाम इस तालीम पर है जो इंसान को इस चीज में बांध देती है, जैसे यीशु मसीह के खून के वसीला से रहाई मिलने वाली है, और जो मोहरों के आखिर में इस कलीसियाई जमाने में जारी है जो कि अबदी कलीसियाई जमाना है। हमें मालूम है कि हमारे पास सात नरसिंगे, सात प्याले, सात आफतें, जो हम आगे बढ़ते जाएं, तो ये और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसके लिए इंतजार करते हैं ताकि मजीद जगह हो सके जहां आप बैठ सके। अब मैं समझता हूं कि ये इसी जगह मुंसलिक होगा जहाँ जहाँ मैं उम्मीद कर रहा था। मैं ये खाका बनाना नहीं जानता था, लेकिन एक दिन मैं अपने अच्छे दोस्तों में से एक मिस्टर काक्स के साथ केंटकी में था, और मैं ये सोचकर गया था कि शायद मौसम खत्म होने से पहले गलेरियों के शिकार के लिए मुझे मजीद एक दिन मिल जाएगा। और मैं वहाँ जंगल में अपने दोस्त चार्ली और उसके भाई रोडनी के साथ खड़ा था, और मुझे कोई गलेरी दिखाई ना दी। मैंने सोचा कि शायद जंगल में मेरे चलाने से वो सब खौफजदा होकर भाग गई हैं। यही मेरी समझ में आया। और बहन नीली और मार्जी, मैंने आपसे कहा था आपको इतवार को बताऊंगा जब मैं इसे शुरू करूंगा। ये वो बात है जो मुझे एक पैगाम के बारे में मिली, जिन्हें मैं पेश करने जा रहा हूँ, और किस तरह का बाकी हिस्सा इस दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा हुआ। ओ, मैं इसे पसंद करता हूँ, और जंगल में एक हकीकतन रूह में चलाने लगा। आइए अब हम पहला पत्रस का खत पढ़ते हैं, या बल्कि पत्रस का दूसरा खत पहले बाब का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। शमौन पत्रस, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और निजात दहिंदा यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है, जिस अंदाज से इसे यहाँ बयान किया गया है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि आज सुबह मेरा तमाम मजमून ईमान की बुनियाद पर है, समझे। मैं दोबारा इसे पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। शमौन पत्रस की तरफ से, जो कि यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उनके लिए जिन्होंने हम सा कीमती ईमान पाया खुदा की और हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह की रास्तबाजी से। गौर करें, वो कहता है कि मैंने यही ईमान पाया और मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने हमारा सा कीमती ईमान पाया। मैं चाहता हूँ, ये बैरूनी दुनिया के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए है, समझे, उनके लिए जो मसीह में है, खुदा और हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान के सबब से। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि इसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें हमें अनायत की हैं। उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की हैं, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया। जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से उन वादों तुम उस जाते इलाही में शरीक हो जाओ। आए अब हकीकी गहराई में गोताजन हो। आज सुबह बेशारती पैगाम नहीं, बल्कि हम इस सबक की तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी जाते इलाही। मैं चौथी आयत दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ताकि आप इसको खो ना दें। जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं, ताकि उन वादों के वसीला से तुम उस खुराबी से छूटकर, जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। देखें, दुनिया को अब हम छोड़ चुके हैं, वो कलीसिया से मुखातिब है, इसलिए आज इस सुबह हम यहाँ हैं, ताकि जान सके कि राह क्या है, खुदा का तकाजा क्या है। यहाँ एक शख्स भी नहीं जो खुदा से मोहब्बत ना रखता हो, लेकिन वो मजीद मसीह में बढ़ना चाहता है। अब ये यहाँ पर मिलता है। हर मसीही, मैं एक छोटा सा तजर्बेकार सिपाही हूँ। भाई और बहन किड को देखें, वो इस इमारत में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा हैं। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, तो जवाब होगा खुदा की कुर्बत को हासिल करना। जब आप मसीह के मुतालिक जान जाते हैं, तो इसके मुतालिक कुछ है जो बहुत उम्दा है, आप सिर्फ उसके साथ ही रहने की ख्वाहिश करें। इस बात पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ अरसा पहले मैंने अपनी बीवी को बताया, वो हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, और मैंने उससे कहा क्या तुम पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करती हो। उसने कहा, यकीनन मैं करती हूँ। और मैंने कहा, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने अंदर बसा लूँ, ताकि हम हकीकतन एक हो जाएं। अब जैसा कि 100 मिलियन के साथ जरब दें, तो आप जान जाएंगे कि जो ईमानदार है किस तरह मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसमें दाखिल हो जाता है, क्योंकि ये मोहब्बत है। और यहाँ वो हमें दिखा रहा है कि किस तरह उन वादों के वसीला से हम मसीह की इलाही जात का हिस्सा बन जाते हैं, ये फानी बदन किस तरह उसमें शरीक हो जाता है। शायद मैं यहाँ कुछ कह सकूँ, क्योंकि जिस वजह से मैं ईमान रखता हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई, अब किसी ने मुझे बिल्कुल गलत समझ लिया। मुझे एक खादमाना तंजीम की तरफ से एक खत मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि मैं ईमान रखता हूँ कि जिस रूह के साथ हम रहते हैं और अगर हमारी रूह उनके साथ नहीं मिलती तो हमें अपने साथियों को छोड़ देना चाहिए और ऐसे ही किसी दूसरे से शादी कर लें जिससे हमारी रूह में यगानगत हो। ओ मेरे खुदाया, मैंने कहा मैंने तो ऐसी बिदत पेश करने का जुर्म नहीं किया, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ। मैं इस पर ईमान नहीं रखता, कती तौर पर नहीं। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमें साथी देता है, ये सच है, और फिर हम एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं, ये दुरुस्त है। इससे पहले कि एक आदमी शादी करे उसे इनके मुतल्लिक सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। एक दिन एक नौजवान ने मुझसे पूछा, उसने कहा भाई ब्रैनम, क्या आप समझते हैं कि मैं फला फला लड़की से शादी कर लूं? मैंने कहा आप उसके बारे में किस कदर सोचते हैं? उसने कहा ओ मेरे खुदा, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकते तो बेहतर है तुम उससे शादी कर लो, लेकिन अगर तुम उसके बगैर रह सकते हो तो बेहतर है कि ना करो, लेकिन अगर इससे तुम्हारी जान जा रही है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि बढ़ते चलो और उससे शादी कर लो। मैंने ऐसा कहा था। मैं उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये कि अगर तुम मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हो तो ठीक है, शादी से पहले तो हर चीज बहुत उम्दा और रंगीन है, लेकिन जब तुम शादी कर लोगे तब जिंदगी की सख्तियाँ और आजमाइशें आ जाती हैं। जब आपको एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो जाए कि एक दूसरे को समझ सको, जब तुम उससे मायूस हो जाओ या वो तुमसे मायूस हो जाए फिर भी एक दूसरे को समझो, यही कुछ मसीह के साथ भी है, समझे? जब हमें उससे गहरी मोहब्बत हो जाती है तो जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो नहीं मिलता तो भी हमें इससे जरा भी सदमा नहीं पहुंचता, समझे? क्यों? इस तरह करने का एक ही तरीका है कि आप उसकी जाते इलाही में शरीक हो जाएं, फिर आप वजह समझ जाएंगे कि वो ये क्यों नहीं दे सकता, उसकी जाते इलाही में शरीक हो जाएं। और इसमें देखें, उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, इससे छूटकर, देखें ये किसके लिए है? ये कलीसिया के लिए है, उन्हें जो मसीह में है, सब चीजों से ज्यादा बुलंद कर दिया। वो अपने आप सरफराज नहीं हुए, लेकिन मसीह उन्हें ऊपर लाया है। आज सुबह जितने भी मेरे सियाफाम भाई और बहनें यहाँ मौजूद हैं, इस बात से मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले हम एक इबादत में थे, मैंने कई जगहों पर बताया है, मैं नहीं जानता कभी भी मैंने टैबरनेकल में कभी ये बताया हो। वहाँ एक सियाफाम बहन थी, उसने कहा क्या मैं गवाही या शहादत दे सकती हूँ? यकीनन बहन, आप बयान कीजिए। वो कहने लगी मैं ये गवाही खुदा के जलाल के लिए देना चाहती हूँ। उसने कहा आप जानते हैं मुझे जैसा होना मुझ पर लाजम था मैं वैसी नहीं हूँ। और उसने कहा मैं जैसी बनना चाहती हूँ वैसी भी नहीं हूँ, लेकिन उसने कहा एक बात यकीनी है, ऐसी मैं नहीं हूँ जैसी हो जाती हूँ, समझे? वो कहीं से आई हुई थी, उसे लाया गया था। हम जानते हैं कि इसी तरह हम मौत से जिंदगी में आए हैं, हम वापस उस गड़े की तरफ देखें जहाँ से हमें निकाला गया था, समझे? जो हम बनना चाहते थे हम नहीं हैं, हत्ता के जैसा हम पर होना लाजिम है वैसे भी नहीं है, लेकिन एक चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे हम नहीं हैं, ये दुरुस्त है, हम राह पर हैं। और दुनिया की खराबी से छूटकर, दुनिया की खराबी और बुरी ख्वाहिश छोड़ चुके हैं, आप इससे ऊपर हैं। अब जिस शख्स से वो मुखातिब है वो इस किस्म का शख्स है जो दुनिया की खराबी से छूट गया है, समझे? दुनिया की खराबी से। बस इसी के बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अब उस खुदा ने हमें यहाँ खाका दे दिया है कि क्या करना है और ये जाने कि इसे कैसे करना है। अब जैसे मैंने कहा हम सब खुदा के करीब तर होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने कलीसिया के लिए आज सुबह इस पैगाम का इंतखाब किया है, ये जानकर कि लोग इसके लिए सफर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात मैंने कहा कितने हैं जो इस कस्बा के बाहर से आए हैं, तकरीबन 98% लोग बाहर से आए थे। कितने हैं जो 100 मील के फासले से आए हैं? क्यों? मेरा अंदाजा है कि ये 80% से ज्यादा थे। कितने हैं जो 500 मील के फासले से आए हैं और तकरीबन एक तहाई हिस्से के बराबर लोग हैं जो 500 मील के फासले से आए थे। लोगों के सफर करने पर गौर करें। ठीक है, ये लोग सिर्फ दिखाई देने के लिए गिरजाघर में नहीं आते। इस जगह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बैरूनी दुनिया को कुछ खूबसूरती नजर आए। यहाँ सब के सब आम लोग हैं, नादार, मामूली पोशाक जेब तन किए, यहाँ तक किसी मलाइक सफात का दावा करने वाली क्वायर भी नहीं, पाइप ऑर्गन, ना ही नक्शुदा शीशों वाली खिड़कियां हैं। आपको बेंच पर बैठकर बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है और दीवारों के साथ खड़ा होना पड़ता है। और किसी ऐसी बात के लिए नहीं आए, लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी चीज है जो उस खूबसूरती को देखती है जो जिस्मानी आंखों से दिखाई नहीं देती। ये रूहानी आंख है जो मसीह की खूबसूरती को देखती है, वो इस वजह से आते हैं। इस तरह इबादत से पहले के आयाम में मैं जंगल में मुसलसल दुआ करता रहा। जंगल में जाने से पहले अपनी जेब में कलम कागज रखकर बीवी को बताया, मैं आज सुबह गलहरियों के शिकार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं कलम और कागज का एक टुकड़ा अपनी जेब में रखता। जैसे ही रोशनी इतनी होती कि आसानी से दिखाई देने लगे, तो मैं किसी जगह पर दरख्त के साथ बैठ जाता, हाथ ऊपर हवा में करता और कहता, खुदावंद, आज मैं क्या करूं? तू अपने बच्चों को देने के लिए मुझे कुछ दे। जब कोई चीज मुझे झटका देती जो जलती हुई महसूस होती है, जब उसकी हजूरी करीब तर होती है तो इस तरह ही महसूस होता है, तो मैं सुनने लग जाता हूँ जैसे दूर फासले से इस तरतीब से आई हुई कोई चीज हो। दो जरब दो बराबर चार करीब तर, दो जरब दो बराबर चार, दो जरब दो बराबर चार, दो जरब दो बराबर चार, ऊपर 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 आवाज बुलंद करते, इसी तरह उसकी हजूरी आती है। अपने आप को उसके हवाले कर दो, बाद अजां अपने आप से दूर हो जाएं। रोया इसी तरह आती है, फलां फलां जगह जाओ और फलां फलां चीज है। समझे, रियाजत से शुरू होकर आपका जहन दुनिया से अलहदा होकर दुनिया से दूर खुदा पर हो, ये दुनिया से दूर बाहर बियाबान में आपकी तरफ आना शुरू करती है। और ये आना शुरू करती है एक एक, मैं कोई अदद या कोई चीज कहता हूँ, कोई धुंधली सी शय धीरे धीरे अंदर आ रही है, फिर ये तेज तेज हो जाती है। और फिर आप बैठ जाएं और अपने हाथ उठाएं, कोई लफ्ज ना कहें, सिर्फ अपने हाथ हवा में रखें। पहली चीज आप जानते हैं कि आपकी पूरी हस्ती को लपेट में ले लिया जाएगा, फिर आप वो चीजें देखेंगे जो कि खुदा चाहता है, ताकि आप जाने कि वो आपको आने वाली चीजें दिखाता है। कभी कभार ये किसी निशान तक आ जाती है, यहाँ तक के किसी खास निशान तक आकर फिर रुक जाती है। रोया जाहिर नहीं होती, कलाम आपस में मिलना शुरू हो जाता है। मैं अपनी कलम साथ रखता हूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ, और मैं इसे लिख लेता हूँ, इसे जरूर लिख लेता हूँ, और मैं घर आकर इसका मुतालिया करता हूँ। और कभी कभार तो इस पर नजर दौड़ाने से पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, और फिर देर बाद ही वो सामने आ जाती है और ये वाजे होकर दोबारा दूर चली जाती है। और मेरे पास एक छोटी सी किताब है, और जो कुछ खुदा मुझे बताता है उसका जितना अच्छा खाका मैं बना सकता हूँ बनाता हूँ। मैंने सोचा, खुदावंद, मैं टैबरनेकल में लोगों को कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, आ उतर आ, और मुझे उनके लिए कुछ मिल जाता है। ठीक है, ये इसी तरह से आता है, बिल्कुल ऐसे ही। जब तक वो पहले मुझे नहीं देता, मैं किसी को नहीं बता सकता। बस फिर इन छोटे छोटे खाकों के जरिए जिन पर नजर करते हुए आप मुझे देखते हैं, और इसे पहले जब मैंने शुरू किया तो मुझे इसका ये हिस्सा ना मिला, जब तक एक या दो दिन पहले मैं जंगल में ना गया। अब ये लोग हैं, पत्रस यहाँ कहता है कि हमें उसकी जाते इलाही में शरीक होना है। अब हम में से हर एक खुदा के कदो कामत में नशो नमा पाने की कोशिश कर रहा है। अब सात मोरों को जानने के बाद और फिर सात मोरों के दौरान, ये उनके खुलने के दौरान, बिलाशुबा हमने जाना कि मोहर क्या है। सात मोहरों का खुलना एक खिदमत का खुलना है, और हम इसे चार्ट पर देखेंगे। ये एक पैगाम को खोला जाना है, कोई चीज जो मोहर बंद ना हो। पिछले इतवार की शब मैंने कुंजी के मौजू पर मनादी की, और कुंजी ईमान है, कुंजी ईमान के पास है, कुंजी कलाम मुकद्दस है, और मसीह दरवाजा है। समझे, پس ایمان کلام کے کچھ حوالوں کو لیتا ہے اور خدا کی بلائی اور جلال کے تالے اس کے لوگوں کے لیے کھولتا ہے، سمجھے؟ پس اگر یہ ایمان کے پاس لوگوں پر مسیح کو کھولنے کی چابی ہے تو وہ کھولتا ہے، اسے ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اس چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے قد و قامت میں راست مسیحی بننے کی راہ کو کھول سکیں، تاکہ زندہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے زندہ مقدس بن جائیں۔ یاد رکھیں، خدا اپنے آپ کو تین طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے آپ کو آگ کے ستون میں ظاہر کیا، وہ باپ کہلایا۔ پھر وہی خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا، اس نے ایک جسم تیار کیا، یہ بدن بنایا۔ تیسری دفعہ اس جسم کی موت کے وسیلہ سے اس نے کلیسیا کو پاک کیا تاکہ وہ اس میں رہ سکے۔ یہ خدا تھا جو ہمارے اوپر، خدا ہمارے درمیان، خدا ہمارے اندر، وہی خدا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باپ، بیٹا اور روح القدس کہلایا۔ تین خدا نہیں، ایک خدا کے تین ظہور۔ اگر وہ ناسین کی کونسل کے وقت صرف سوچتے تو ہم سب کی اس طرح کھچڑی نہ بنتی، کیا نہیں؟ یہ درست ہے، تین خدا نہیں، لوگ نہ سمجھ سکے کہ یسوع کیسے اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتا، اور وہ اور باپ ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پر ساری بات موجود ہے۔ یقیناً یہ اسے کھول دیتا ہے، یقینی طور پر ایسا ہے، سمجھے؟ یہ تین خدا نہیں، تین خدمات ہیں، تین ظہور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خدا نے اپنی مخلوق پر کرم کیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لفظ خدا کا مطلب ہے عبادت کے لائق۔ یہ خدا ہی ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ ان سے وہ کچھ حاصل کر سکے جس کے لیے اس نے انہیں خلق کیا۔ اس نے آپ کو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہونے کے علاوہ کچھ سننے کے لیے خلق نہیں کیا۔ اگر آپ اسے کھو چکے ہیں اور خدا کا بیٹا یا بیٹی نہیں بن سکے تو آپ نشان سے ہٹ چکے ہیں۔ اور ہٹ جانا، لفظ گناہ کا مطلب ہے نشان سے ہٹ جانا، نشان سے ہٹ جانا۔ اور پھر اگر مجھے ایک ہدف پر 50 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر گولی چلانی ہو اور میں اپنی بندوق نیچے لا کر چلاؤں اور ہدف سے 4 یا 5 انچ نشانہ ہٹ جائے تو کیا ہوا؟ میری بندوق ٹھیک ہونے والی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے۔ اور اگر میں خدا پر سے اپنا اعتقاد کھو بیٹھا ہوں، اگر میں مسیحی بننے سے ہٹ گیا ہوں، خدا نے آپ کو یہاں ایک مسیحی بننے کے لیے رکھا ہے، اور اگر آپ ایک طرف کو دوڑ جاتے ہیں، واپس آئیں اور درستگی کر لیں۔ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو درست کر سکتی ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام۔ کلام میں موجود روح القدس آپ کو درست کر سکتا ہے، آپ کو دوبارہ سیدھا نشان کی طرف لاتا ہے، یہی درست ہے۔ اب ہم اس کے کلام کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ ایمال 7 باب میں اسطفنس نے کہا، اور اسی طرح آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ اب ہم خدا کے مقدس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اب اسطفنس نے کہا، زندہ خدا کا زندہ مقدس ہوتے ہوئے، اسطفنس نے ایمال کے 7 باب میں کہا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ ہم ایمال 7 باب کی 44 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے مطابق اسے بنانا۔ اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یسوع کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خداوند ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا۔ لیکن باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، چنانچہ نبی نے یہ کہا، خداوند فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ خداوند فرماتا ہے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ اب اس میں اب خیمہ بے شک وہ جگہ ہے جہاں ہم تازگی اور اب اطمینان پانے جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، بالکل جیسے نیند سے آرام پانا یا اسی طرح کی اور کچھ جگہ۔ اب عبرانیوں 10:5 میں پالوس اس کے متعلق کہتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، قربانی بدن یعنی مسیح، کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اب خیمہ کیا ہے؟ ایک بدن۔ خدا ایک بدن میں خیمہ زن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ خدا اوپر بلندی پر سے جب نیچے پہاڑ پر آیا، यहाँ तक कि अगर एक बैल या गाय भी पहाड़ को छू लेती तो वो जरूर मर जाते, क्योंकि खुदा पाक है। कल शाम के पैगाम के मुताबिक उन फरिश्तों ने अपने चेहरे ढांप रखे थे, पाक सराफीम पाक चेहरों के साथ, ये तक नहीं जानते कि गुनाह का क्या मतलब है, और खुदा की हजूरी में उन्हें अपने चेहरे ढांपने पड़ते थे और वो अपने पांव आजिजी से ढांपते थे। अब पाक खुदा गुनाह से चश्म पोशी नहीं कर सकता, इसलिए जहां पर खुदा था इस पहाड़ को कोई चीज छू नहीं सकती थी। फिर खुदा ने एक बदन बनाया और हमारे दरमियान अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में, जो उसने तख्लीक किया, रहा। फिर उस बेटे ने अपनी जान दे दी और खुदा के खून के खुलिये को तोड़ा गया, ताकि उस खून में से हमारे लिए जिंदगी निकले। उसी खून के वसीला हम साफ किए गए हैं, और अब हमारा खून हमारी जिंदगी, जो नफसानी ख्वाहिश में से गुजर कर हमारी जिंदगी को दुनिया में लाती है। यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है, हम पर रुल कुछ नाजिल करने से हमारी फितरत को तब्दील करता है। तब हम खुदा की इलाही कुदरत में आ जाते हैं, तब हम खुदा के रहने की जगह बन जाते हैं। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। समझे? इस बात को समझें कि खुदा किस तरह अपनी कलीसिया में है। अब कलीसिया को उसकी खिदमत को जारी रखने के लिए मसीह की जगह को लेना है। वो जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब इससे कुछ देर बाद दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा। समझे? इस तरह से उसने अपना काम जारी रखा हुआ है। अब खुदा, बाइबल कहती है कि स्तिफनस ने सुलेमान की हैकल की तामीर करने का बयान किया, और कादरे मुतलिक हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, क्योंकि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, और मेरी आरामगाह कौन सी है, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया है। आमीन। यह है आपका मकाम, तूने एक बदन मेरे लिए तैयार किया है। खुदा इंसान के मुजस्मा के अंदर रहता है, इसी वजूद से अपने आप को मुनक्कस करता है। ये उसकी कामिल इबादत है। खुदा हम में है, हम खुदा की खैमागाह हैं, ये खुदा का जहूर है। ओ, हम इस पर कैसे ठहर सकते हैं जब तक हम मुकम्मल तौर पर आग से साफ ना हो जाएं? गौर करें कि खुदा ने हर दफा हमेशा अपने आप को इंसान में जाहिर किया। खुदा मूसा में था, उस पर निगाह करें, एक रहनुमा पैदा हुआ, मसीह। जब मूसा पैदा हुआ, उस वक्त उसकी तलाश में बच्चों को कत्ल किया गया, और ऐसे ही मसीह के साथ हुआ। उस वक्त उसे बचाया गया, और ऐसे ही मसीह के साथ हुआ। वो एक शरीयत देने वाला था, जैसे के मसीह भी था। मूसा 40 दिन के लिए ऊपर पहाड़ पर गया और उसे हकाम मिले और वापिस आया। मसीह 40 दिन के लिए बियाबान में गया और वापिस आया और मुखातिब हुआ। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तुम जनाना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, तो वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। समझे? इन तमाम मुख्तलिफ चीजों से जैसा कि खुदा अपने आप को जाहिर करता है। यूसुफ पर निगाह करें, भाइयों के एक ग्रोह में एक रूहानी लड़का पैदा हुआ। वो सब अच्छे आदमी थे, सभी इसराइली बुजुर्ग थे, लेकिन जब यूसुफ आया तो वो मुख्तलिफ था। वो रोया देखता और ख्वाबों की तबीर कर सकता था। इस वजह से उसके भाई उससे नफरत करने लगे, क्योंकि खुदा ने उसे जमीन पर सर अंजाम देने के लिए जो काम दिया था, उसकी वजह से उसके भाई उससे नफरत करते थे। समझे? इन सब का इशारा सलीब की जानिब था। और देखें, उसके भाइयों ने उसे चांदी के 30 सिक्कों के इवज बेच दिया, और उसके भाइयों ने उसे मरने के लिए कुएं में फेंक दिया। वो कुएं से बाहर निकाला गया, और वो जाकर फराउन के दाहिने हाथ मुकरर हुआ, और कोई शख्स फराउन के पास नहीं आ सकता था, क्योंकि वो उस वक्त दुनिया का हुक्मरान था। कोई फराउन के पास नहीं आ सकता था, लेकिन सिर्फ यूसुफ के जरिए से आ सकता था। कोई शख्स मसीह के वसीले के बगैर खुदा के पास नहीं आ सकता। जब यूसुफ महल से निकलता, उसके महल से निकलने से पहले एक नरसिंगा फूंका जाता, और पुकारने वाला उसके आगे भागता और तजीमन पुकारता, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, यूसुफ आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ और क्या कर रहे थे, या आपका काम किस कदर अहम था, जब तक यूसुफ वहाँ है, आपको अपने घुटनों के बल होना ही है। और जब इन दिनों में किसी रोज नरसिंगे की आवाज आएगी तो हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी। जब मसीह यानी हमारा यूसुफ जलाल को छोड़कर आएगा तो फिर आपके काम अहम नहीं होंगे। हर एक घुटना झुकेगा और उसका इकरार करेगा कि वो खुदा का बेटा है। ये दुरुस्त है। हो हम कैसे इसे दाऊद में देखते हैं? दाऊद एक रद्द किया बादशाह था। उसके तख्त को उसके भाइयों ने उलट दिया। उसके अपने बेटे ने उसे कोए जैतून पर पहुंचा दिया। जूं ही वो कोए जैतून की चोटी पर गया तो उसने पीछे यरूशलेम पर निगाह की और रोया, क्योंकि इसके अपने लोग जिनमें उसने खिदमत की थी और उन्हें खुदा के कलाम के बारे में सिखाया था, वही इसके अपने लोग इससे फिर गए और उस पर चीजें फेंकी और उस पर थूका और उसका मजाक उड़ाया। और जब वो पहाड़ पर चढ़ने लगा तो उसे रद्द किया गया। ओ कितनी दुरुस्तगी से ये 800 साल बाद खुदा का बेटा अपने ही लोगों में रद्द किया हुआ बादशाह पहाड़ पर पहुंचा और रद्द किए हुए बादशाह के तौर पर यरूशलेम पर रोया। ये क्या था? खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा था, उन नबियों के वसीला से मसीह को जाहिर कर रहा था। तब वो आया जो खुदा का कामिल नमूना था। ये खुदा हमारे दरमियान था और उस वक्त से लेकर उसने अपने आप को अपनी कलीसिया में कलवरी के उस पार जाहिर किया। बस आप देखें कि हम सब इस रहने की जगह यानी जिंदा खुदा का मकदस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, गौर करते हैं। उसने कहा पहले हमारे पास ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सबर, मेहरबानी, खुदा प्रस्ती और बरादराना उल्फत होनी चाहिए। ठीक है, बरादराना उल्फत और इसमें मोहब्बत का इजाफा। मैं इस तमाम को एक दफा दोबारा पढ़ूंगा। मुझे यकीन है कि आप इसे जान लेंगे। अब हम पांचवी आयत से शुरू करेंगे। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ जो मोहब्बत है। अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। अब पत्रस हमारे लिए खाका दे रहा है कि इस तक कैसे पहुँचें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीही होने का दावा भी नहीं करते, मगर नेकी, मार्फत, हिकमत, सबर और ऐसे दूसरे कामों का कुछ हिस्सा रखते हैं। अब हम संडे स्कूल की तालीम दे रहे हैं और ये दुरुस्त है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये बातें किसी कदर मौजूद हैं, जो मसीही होने का दावा भी नहीं करते, लेकिन ये नहीं, यहाँ इससे काम नहीं चलेगा। ये एक स्याह परिंदे की मानिद है जो अपने परों में मोर के पंख लगाने की कोशिश कर रहा हो ताकि मोर बन जाए। वो सिर्फ अपनी तजलील करता है। बेहतर है कि वो स्याह ही रहे, समझे? बगैर मसीह बने जब वो इन चीजों को करने की मश करता है तो वो सब बेतरतीब हो जाती हैं। ये ऐसा ही है जैसे अंजीर का दरख्त सेब पैदा करने की कोशिश करे, वो ऐसा नहीं कर सकता, समझे? अगरचे एक दरख्त है लेकिन ये सेब पैदा नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है जैसे कि खच्चर ऊन पैदा करने की कोशिश में हो, भेड़ बनने की कोशिश में हो, जबकि वो एक खच्चर है, आप समझे? वो ऊन पैदा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। ऊन भेड़ को एक अतिया है, ना के खच्चर को। वो एक भेड़ की तरह अदाकारी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी तक वो खच्चर ही है, समझे? इसी तरह वो कहता है ठीक है, मैं एक भेड़ की तरह खा सकता हूँ, मैं एक भेड़ की तरह कर सकता हूँ। कोई बात नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, आपको ऊन हासिल करने के लिए भेड़ बनना पड़ेगा। मैं एक मिनट के लिए यहाँ रुकता हूँ। भेड़ ऊन पैदा नहीं करती, ऊन उसके पास है क्योंकि वो एक भेड़ है। बहुत से लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, मैं ये करने की कोशिश करूंगा, कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक भेड़ से ऊन तैयार करने की तवक्को नहीं की जाती, बल्कि ये तो ऊन रखती है। चूंकि ये एक भेड़ है इसीलिए ये इसके पास है। और अगर आप एक मसीही हैं तो रूल कुछ के फल रखते हैं। आप इन्हें पैदा नहीं करते, आप इन्हें बनाने की कोशिश नहीं करते। आप कोशिश करते हैं, आप अपने आप को वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जो आप हैं नहीं। आप वो बन जाएं जो आपको होना चाहिए, तो फिर ये अपनी फिक्र खुद ही करेगा। क्या आपने लोगों को कहते सुना है ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं कलीसिया में शामिल हो गया हूँ, मैंने अब झूठपन को छोड़ने का इरादा कर लिया है। अब आप दोबारा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये इससे ज्यादा ना होगा। जैसा कि एक 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 खच्चर अपने आप को ऐसा बनाए कि ऊन पा सके, वो ऐसा नहीं कर सकता। या एक गिद्ध एक फाख्ता के साथ खाने की कोशिश करता है। एक मुर्दार खोर फाख्ता बनने की कोशिश कर रहा है। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं कि एक चील कहे कि आप जानते हैं कि मैं एक फाख्ता हूँ, और कुछ पर अपने ऊपर लगाकर कहे, देखें मैं इसी तरह लगता हूँ। समझे, वो अपनी शक्ल को बिगाड़ लेगा। ये एक ऐसा शख्स है जो वो कुछ होने का दावा करे जो वो नहीं है। समझे, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, अब देखें, चूंकि मुझे नेक होना चाहिए इसीलिए अब मैं नेकी करूंगा। मुझे खुदा प्रस्ती में रहना चाहिए, इसे मैं ऐसा ही करूंगा। क्यों? आप सिर्फ पर से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद वो आपकी पहुंच में हैं, लेकिन आप इन परों को गलत परिंदे में नहीं लगा सकते। समझे, ये कतई तौर पर काम नहीं करेंगे, और इससे सिर्फ यही पता चलता है कि वो परिंदा कितना रयाकार है। समझे, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बूढ़ा चील फाख्ता के कुछ परों को लगाने की कोशिश करते हुए कहे, देखने वालों यहाँ देखो, मैं एक फाख्ता हूँ। समझे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक चील है। समझे, समझे, बस यही बात है। ये बात हम सब बता सकते हैं कि वो एक मुर्दार खोर है। ठीक है, अब इस तरीके से ये मसीहत को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला काम जो आपको करना है वो है नए सिरे से पैदा होना। आपको तब्दील होना है, समझे, और जब आप बदल जाते हैं तो आप एक नए मखलूक बन जाते हैं। अब आप ठीक जा रहे हैं, समझे, आपको परों के मुतल्लिक परेशान होने की जरूरत नहीं, तो ये अपनी हिफाजत खुद करेंगे जब आप नए सिरे से पैदा होंगे। जी जनाब, जैसा मैंने हमेशा कहा, आप एक सूर लेकर उसे साफ कर लें, बल्कि और उसे एक कोट से मुलब्बस करें और आप उसे बाहर छोड़ दें, तो वो सीधा कीचड़ में जाएगा और इसमें लेट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इससे कुछ फायदा ना होगा। वो एक सूर है और ये उसकी फितरत है। लोटनियाँ लेना उसकी फितरत है। आपको उसकी फितरत को तब्दील करना है और वो बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। अब गौर करें, आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये है तब्दील होना, तब्दील होना जरूर है। आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रैनम, मैं यहाँ एक खातून को जानता हूँ, क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो एक अच्छी खातून है। ये फलां फलां भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ हो। इसका कुछ मतलब नहीं, हो सकता है वो अच्छा हमसाया बन सकता है, लेकिन जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो वो एक मसीही नहीं बन सकता। यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, मुकद्दस यूहन्ना 3:3 में, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब इसका मतलब है, देखने का मतलब है समझना। आप किसी चीज को देखते हैं और कहते हैं मैं इसे नहीं जानता, इसका मतलब है कि आप उसे नहीं समझे। एक शख्स कभी नहीं समझ सकता कि लोग क्यों जोर जोर से पुकारते हैं। एक शख्स नहीं समझ सकता क्यों किसी इंसान की बोली तब्दील हो सकती है और वो बेगाना जुबानों में बोलने लगता है। एक तबई शख्स नहीं समझ सकता कि कैसे खुदा का जलाल किसी आदमी की आंखों पर आएगा और वो रोया देखेगा और वो आदमियों को यकीनी बातें बताएगा और ये क्या करना है, लेकिन उनको बातें बताएगा जो होने वाली हैं और जिन बातों को वाकया होना है, जैसे खुदावन ने गुज़िश्ता रात हमारे लिए किया। समझे, समझे, फितरी ज़हन अदादो शमार पेश करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसने क्या किया या वो किस किस्म का झांसा दे रहा है, कौन सा दाव इस्तेमाल कर रहा है। किसी शख्स को गैर जुबानों में बातें करता देखकर वो कहते हैं और कोई इसका तर्जमा करे, और बिल्कुल ठीक है, जमात के किसी रुकन को बताइए कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। समझे, समझे, वो सोचते हैं कि ये किसी किस्म का फरेब है, उनके दरमियान कोई बात तयशुदा है। वो इसे समझ नहीं सकते जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता, और जब वो नए सिरे से पैदा होता है तब वो रफाकत से जुड़ा होता है, क्योंकि वो एक नया मखलूक है। वो बूढ़ा अजीब मशकूक आदमी था जो मर चुका है, अब वो एक नई मखलूक बन गया है। बस आपने देखा, इसे अपने आप में किसी चीज के इजाफे की जरूरत नहीं अब, क्योंकि इसका इजाफा तो खुद बखुद हो जाएगा। गौर करें, आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो आपको ईमान की जरूरत है। ईमान के बगैर पैदा नहीं हो सकते, ये सच है। इसी तरह आप मेरे चार्ट पर देखें, मैंने एक दुरुस्त बुनियाद हासिल कर ली है। इस सब की बुनियाद ईमान है, क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, समझे। इसे ये जरूर करना है। और जब आप बाइबल के बारे में शकूक का शिकार हो जाते हैं और आप कलाम के बारे में शुबा करते हैं कि आया ये दुरुस्त है, इस पर ईमान रखने से पहले आप महज पीछे ठहरे रहते हैं। गुनाह क्या है? बेएतकादी। सिर्फ दो अनासर हैं जो बनिनो इंसान को काबू में रखते हैं, एक शक और दूसरा ईमान, एक या फिर दूसरा। आप किसी एक के जेरे असर हैं जो आपकी जिंदगी पर हुक्मरानी करता है। इसका इंसार इस पर है कि आप कितना ईमान रखते हैं और कितनी बुलंदी तक ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन पहले ईमान का होना जरूर है। मुझे थोड़ी देर के लिए इस बुनियाद पर खड़े होने दें। अब ईमान ये है जिसका आपको यकीन हो। ईमान क्या है? ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जब आप ईमान पाते हैं तो ये पहले ही आप में आ जाता है, क्योंकि ये ईमान में जाहिर होता है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। अब्रानियों 11 बाब देखें। और सबूत है, ये क्या है? किस किस्म का सबूत? एक पाकीजा सबूत। इसलिए जब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा शाफी है, ठीक है, अगर आप ईमान रखते हैं और फिर इसे अपना शाफी कबूल करते हैं और गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन ये ईमान रखते हैं कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, तो यकीनी बात है कि आपको कोई इससे हटा नहीं सकता। ये तयशुदा बात है। अब मुमकिन है आप पूर्व उम्मीद हो, लेकिन कभी इसको धोखा और कभी उसको धोखा दे रहे हो, लेकिन जब आप ईमान पाते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि ये एक सबूत है कि ये पहले ही आपको मिल चुका है। मैं आज सुबह जब ओरल रॉबर्ट्स मुनादी कर रहा था तो कितने लोगों ने उसे कहते हुए सुना, ओरल रॉबर्ट्स को मैंने इस ईमान के मतलब कुछ यूं कहते हुए सुना कि कोई छुटकारे का ईमान भी होता है। वो छुटकारे के ईमान के मतलब दुआ कर रहे थे और उसने कहा, रेडियो को छूने से आप राबता बहाल करते हैं, इसी तरह अपना राबता किसी और चीज को छूने से करते हैं। ये आदमी इस तरह कर रहा था, इस तरह वो लोगों को ये कह रहा था कि अपने हाथ ये कहते हुए किसी चीज पर रखें कि मैंने अब इसे पा लिया है, क्योंकि उसने मुझे बताया कि अपने रेडियो को छू लें, मैंने इसे पा लिया है, समझे। अब ये सच है, लेकिन अब हकीकी खालिस ईमान को किसी चीज या शय को छूने की जरूरत नहीं। अब मैं भाई ओरल को मुजरम नहीं ठहरा रहा, हरगिज नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो एक खुदा प्रस्त आदमी है, और मैं वाकई ओरल रॉबर्ट्स की बहुत कदर करता हूँ, और बड़ी बात है कि ऐसे खदम हमारे पास ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कि ईमान को किसी शय की जरूरत नहीं है, समझे। ईमान खुदा के कलाम का यकीन करता है, क्योंकि ईमान पैदा होता है छूने से नहीं, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। ये इसे संभाले रखता है, ये वहाँ है, समझे। और जैसा मैंने कहा कि ईमान कुछ दूर नहीं, ईमान अभी यहीं पर है, यहाँ ईमान है। अब जैसे अगर कोई शख्स एक दिन, वो छोटा बच्चा, उसकी माँ जिसके मुतल्लक बहन किड और दूसरे लोग बात कर रहे थे कि उसके एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी आंतें बाहर थी और बड़ी आंत की तरफ से खुलने वाला कोई सिरा नहीं जिससे खुराक का गुजर हो। अब उस खातून ने बहन किड को और दूसरे शख्स को गवाही देते सुना और ईमान रखा कि अगर इसका राबता हो सका और मैंने इस बच्चे के लिए दुआ की। देखें, खुदा हमें लोग देता है, हम में से कुछ को खुदा के साथ तजर्बात होते हैं, इसीलिए कि खुदा ऐसे बन जाता है जैसे आप भाई नेवल या किसी और के साथ बात कर रहे हों जिससे आप वाकिफ हों। और किसी वक्त हम उन लोगों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमें यही कुछ करना चाहिए। और फिर अगर हम ईमान रखते हैं कि फलां आदमी या औरत या जो कोई भी हमारे लिए दुआ कर रहा है वो खुदा से बातें कर रहा है, और हमारा ईमान गिरफ्त में आ चुका है, ये मजबूत हो गया है, ये तय हो गया है। वो रोमी यीशु से मिलने गया और उसने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन ये कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है और तू सिर्फ जुबान से कह दे, समझे, तो मेरा बेटा जीता रहेगा। ये क्या था? फासले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। वो कादरे मुतलिक खुदा है और खुदा हर जगह मौजूद है। कादरे मुतलिक खुदा हर जगह मौजूद है और खुदा हाजरे कुल कायनात होते हुए हर जगह मौजूद है, समझे। खुदा जिस कदर अजीम जर्मनी में है उतना ही स्विट्जरलैंड में, ये ठीक है, इसी मिनट में अफ्रीका में भी है, जैसे कि वो यहाँ है। हो, ये है आपका मकाम। बस उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, सिर्फ जुबान से ही कह दे। ये क्या था? ये रोमी शख्स का ईमान था। उसने इस पर ईमान रखा और यीशु ने कहा, जा, चला जा, तेरा बेटा जीता है। और सफर में उसे दो दिन लगे और अगले दिन उससे पहले कि वो घर पहुंचता, उसके खादम आते हुए उसे मिले और उन्होंने कहा, तेरा बेटा जिंदा है। और रोमी उस वक्त जोश से भर गया। उसने कहा, दिन का कौन सा पहर था जब वो ठीक होना शुरू हुआ? दिन का कौन सा पहर था? उसने कहा, 11वें घंटे के करीब उसकी हालत तब्दील होना शुरू हुई। और रोमी जानता था कि ये वही वक्त था जब यीशु ने कहा, तेरा बेटा जीता है, और उसने ईमान रखा। आमीन। खुदा कादरे मुतलिक हर जगह मौजूद, आलमे कुल और लामहदूद खुदा है। बस कोई फोन कॉल करे और कहे, दुआ करें, ये रब्ता है और आपका ईमान खुदा को ले आता है। ये वो चीज है जो खुदा और दुआ को एक साथ मंजर पर ले आती है। दुआ, ईमान दुआ को यहाँ से वहाँ तक बदल देता है। ये इसे इकट्ठा करता है। कलाम कर, मैं तुझसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू कलाम कर तो सब कुछ ठीक है, समझे। उसका वहाँ होना जरूरी ना था, सिर्फ मुँह से कह दे। क्यों? खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद है। वो तमाम कुवत का मालिक है। वो दुनिया के निचली तरफ भी इतना ही ताकतवर है जितना के उसके ऊपर वाली तरफ या उसकी दूसरी दोनों अतराफ में। वो खुदा है। उसने कहा, तुझे सिर्फ ये करना है कि कलाम कर और अब बाकी ईमान पर छोड़ दे। बाकी ईमान करता है। बस आपको बुनियाद के लिए ईमान रखना जरूरी है। तमाम मसीहत, वो सब कुछ जो आप हैं या जो कुछ भी आइंदा होंगे, इस सब के लिए बुनियाद कलाम है। इसी वजह से कलाम पर ईमान रखना है, समझे। मैं अपना इतकाद किसी और चीज पर नहीं रख सकता। और अगर मैं कलीसिया पर ईमान रखता हूँ तो किस कलीसिया पर ईमान रखूँ? कैथोलिक, लूथर, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकास्टलों पर? मैं किस पर ईमान रखूंगा? मैं नहीं जानता। वो सब बसों पेश से काम ले चले हैं और उन्होंने अपनी हद बंदी की और दूसरी चीजें कायम कर ली हैं। लेकिन जब मैं अपना ईमान उसके कलाम पर रखता हूँ तो उसे हिलाया नहीं जा सकता। कोई उसकी तशरी नहीं कर सकता। ये इस तरह है, खुदावन फरमाता है तो मैं इस पर ईमान रखता हूँ। इसकी बुनियाद ये होती है। डॉक्टर साम अडेर मेरा एक अच्छा दोस्त है। वो इस शहर का अच्छा डॉक्टर है। हमने लड़कपन इकट्ठे गुजारा और आप सब साम को जानते हैं। उसने मुझसे कहा, बिल, रोया हासिल करने के बाद उसे बताया गया था कि वो कहां पर अपनी जगह तामीर करेगा, ये कैसी दिखाई देगी। अब किसी वक्त जाकर उससे पूछ लें, क्या ये सच नहीं है? इसके वाकये होने से 2 या 3 साल पेशतर उसे बताया कि ये कहां होगा। मैंने कहा, आप तकरीबन शहर के ब्लॉक ही में जगह लेंगे और इस बात में जरा बराबर भी फर्क नहीं है और वो जगह कायम है। डॉक्टर अडेर ने इसका बाकी हिस्सा दुआ साजी की जगह के लिए रख लिया। ये इसी तरह है। डॉक्टर अडेर ने एन उसकी रोया को पूरा किया। जहां जिस मकाम पर उसने कहा, उस जगह को 25 बरस तक भी नहीं छुआ जा सकता था, ये फैसला था। मैंने कहा, डॉक्टर, खुदावंद तुम्हारी हलीमी के बायस ये तुम्हें देता है। उसने कहा, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम एक कछुए की मानिंद हो। तुमने एक बैरूनी खोल चढ़ा रखा है, एक तय जिसमें से तुम अपने दोस्तों को देखते हो, लेकिन अंदर से तुम एक हकीकी आदमी हो। इस खोल से बाहर निकल आओ। मैंने कहा, खुदा तुम्हें ये देता है। उसने कहा, बिली, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया, लेकिन इसका मैं यकीन नहीं कर सकता। मैंने कहा, अपने दफ्तर चले जाओ। बस वो अपने दफ्तर चला गया। अगली सुबह उसने मुझे फोन किया और कहा, मैं मरने की हद तक ठंडा हो रहा हूँ। मैंने कहा, मामला क्या है? ये तकरीबन जुलाई था। मैंने कहा, क्या मामला है डॉक? उसने कहा, बिली, मैंने पहले ही वो जगह खरीद ली है। कल रात उन्होंने बोस्टन में एक मीटिंग की थी और आज सुबह मैं वो जगह खरीद चुका हूँ। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। फिर किसी रोज मैं उससे बात कर रहा था, जब वो मेरे सामने खुल पड़ा। उसने कहा, मैं तसव्वुर करता हूँ, मैं हजारों लोगों को जो यहाँ आते हैं ये बता चुका हूँ। ये क्या है? अब जब खुदा कुछ कहता है तो ये होकर रहता है। गुजरी शाम कुछ दोस्त आए, उन्होंने 12 सिंगा जिसके सिंग 42 इंच थे और चांदी के सर वाले बूरे रीछ वाली रोया के मुतल्लिक सुना। मैं नहीं जानता कि कितने लोग घर पर इसे देखने के लिए आए थे। मैंने कहा, ये नापने का फीता है, सिंगों की पैमाश करें। इससे पहले कि ये वकूफ पजीर होता, आपने सुना था, समझे? क्यों? जब खुदा कुछ कहता है तो होकर रहता है। यही वजह है कि ये बुनियाद है। अब यहाँ नजात का मंसूबा है और तब अगर उसकी रोया ठीक और मुकम्मल तौर पर वाके होती है कि जिस तरह से उसे बयान किया गया है, और कलीसिया ये जानती है कि ये दुरुस्त है, इसके कलाम के बारे में क्या ख्याल है, समझे? वो रोया से ज्यादा यकीनी है। अगर रोया कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर रोया गलत है। लेकिन अव्वल कलाम है, क्योंकि कलाम खुदा है, समझे? बस वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। वो जो यहाँ फरमाता है वो इसे कनाडा में भी वकू करता है। आमीन। देखें, वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो आप ईमान पाते हैं और आप कलाम पर एतमाद करते हैं। जब तक आप नए सिरे से पैदा ना हो, आप सब इसके खिलाफ बहस करते हैं। अगर आपका झुकाव मजहब की जानिब है और आपको एक इंसानी इलम का किसी कदर इलम है कि आपको दुरुस्त काम करने चाहिए, तो आप कभी भी खुदा के कलाम से मुतफिक नहीं होंगे। आप ये कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और नए सिरे से पैदा होना इससे ईमान पैदा होना है। ठीक है, तब ईमान पा लेने के बाद, जो कि FAITH ईमान है, तब आप इस हालत में हैं कि मजीद नशोनुमा पाएं। अब बहुत से लोग मजबा पर जाकर दुआ करते हैं और कहते हैं, खुदावंद मुझे माफ कर, और रास्तबाजी का अजीम तजर्बा उन पर आकर ठहर जाता है। तब मजबा पर पुकारने के लिए आपके पास बेहतरीन वक्त होता है। आप वापस जाते हैं और कहते हैं, मुबारक खुदा है, मैंने इसे हासिल कर लिया है। नहीं, आपने तो सिर्फ इस जगह से शुरू किया है जहां आपको निशोनमा पा सकते हैं। अभी तक आपने कुछ हासिल नहीं किया, समझे? आपने सिर्फ अभी बुनियाद रखी है। अब आप एक घर बनाने लगे हैं और आप बुनियाद डालते हैं और कहते हैं, लड़के, मैंने इसे बना लिया है, समझे? आपने अपना घर बनाने के लिए बुनियाद डाली है, अब आप अपना घर बनाएंगे। आज सुबह जो चीजें सामने आती हैं, हम उन पर बात करते जा रहे हैं। ठीक है, एक घर बनाने के लिए पहले उसकी बुनियाद रखना जरूरी है। मसीहत की बुनियाद क्या है? खुदा के कलाम पर ईमान रखना, ये है आपकी बुनियाद। तब आप बढ़ना शुरू करते हैं, फिर आप इस बुनियाद पर इजाफा करना शुरू करते हैं। अब घर बनाते हुए आप अपनी दयानतदारी और हर कोशिश सर्व करते हैं। बाई वुड्स और कुछ दूसरे बढ़ई और ठेकेदार जो यहाँ हैं, हमें बता सकते हैं कि आप कैसे घर बना सकते हैं, समझे? लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो अपना रूहानी घर कैसे बनाए जहाँ खुदा रह सके। वो आप में रहना चाहता है, वो आपको अपनी मानित बनाना चाहता है, वो आपसे चाहता है कि उसकी मखलूक में से, यानी आप में से उसका अक्स नजर आए। आप जानते हैं कि पहले वक्तों में जब सोना बनाया जाता था, तो इससे पहले कि उनके पास उसे पिघलाने के लिए बटियां होती थीं, वो सोने पर चोट लगाते ताकि खोट बाहर निकल आए, यानी लोहा, तांबा और दूसरा मवाद बिल्कुल बाहर आते, और इसे चोट लगते हुए उसका रुख बदलते और लगाते रहते। इंडियन अब भी ऐसे ही करते हैं, वो सोने को चोट लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कैसे बता सकते हैं कि लोहा, दाते, कसाफत और गंदगी इससे बाहर निकल गई है? जब पीटने वाला इसमें एक आईने की तरह अपना अक्स देखता है, ये इतना साफ और वाजे होता है, यहाँ तक कि पीटने वाला अपना अक्स देखने लगता है। खुदा भी इसी तरह करता है, वो जमीन से हासिल शुदा सोने को लेता है और उसे रुल कुछ से चोट लगाता है और इसका रुख बदलता है, बार 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 उसे पीटता है, यहाँ तक कि उसे हासिल कर लेता है, वो इसमें अपना अक्स देख सकता है। और यही कुछ हमें करना है कि खुदा के बेटे का अक्स दें, और अब हमें उसका काम करना है। उसने कहा, वो जो मुझ पर ईमान लाता है, योहन्ना 14:7, वो जो मुझ पर ईमान लाता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। आप मसीह के कामों का अक्स देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि उनमें मसीह का अक्स नजर आए, हम में से बहुत से इसका काम शुरू करने की कोशिश करते हैं और ये बड़ी मुश्किल है। हम ऐसे वाकयात होते देखते हैं, आप इसे जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ। हम ऐसी ठोकर खिलाने वाली चीजें सड़क के किनारे पर देखते हैं। हमें ऐसे बेकार खादमों और मसीहियों के अंबार सड़कों के साथ जमा होते मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि वो इसमें दुरुस्त तरीके से शामिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि मैं आज यहाँ अपने आप को और इस छोटी कलीसिया को तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम जिंदा खुदा के रहने की जगह बन सकें। कितने हैं जो जिंदा खुदा के रहने की जगह बनना पसंद करेंगे? जिंदा खुदा के रहने की जगह। हम यहाँ क्या करते हैं? पहली चीज क्या है? ईमान रखना और नए सिरे से पैदा होना, ये ही बुनियाद है। तब बुनियाद डालने के बाद हमारा दूसरा काम इस बुनियाद पर इजाफा करना है। ईमान पर इजाफा करो। पत्रस ने यहाँ कहा, बढ़ाओ, पहले आप ईमान रखते हैं, फिर अपने ईमान पर नेकी का इजाफा करते हैं। ये अगला कदम है, पहले अपनी बुनियाद डालें, यानी ईमान, फिर अपने ईमान में नेकी का इजाफा करें। अब यहाँ बहुत सी बातें हैं जो हमें खबरदार करती हैं। जी जनाब, जी हाँ, ईमान में नेकी का इजाफा करें। इसका मतलब एक कुंवारे मर्द या औरत की तरह जिंदगी गुजारना नहीं है, आप जानते हैं, और इसी तरह है, इससे मुराद ऐसा करना नहीं। बाइबल ने कहा, हम लूका की किताब में पढ़ेंगे, जहाँ ये कहा गया, नेकी उससे निकलती है। क्या यह दुरुस्त है? अगर हम उसकी मानित बनने लगते हैं, तो हमें नेक बनना जरूर है। उसकी मानित बनने के लिए हमें उसे जरूर पाना है। हम के गीतों में जो हमेशा मुझे पसंद रहा, उन गीतों में एक खूबसूरत गीत, यस्सु की मानित बनो। ठीक है, अगर मैं यस्सु की मानित बनने लगा हूँ, तो मुझे नेक बनना है और एक रास्ता बनाना है, ताकि ये मुझसे लोगों में मुंतकिल हो, क्योंकि नेकी इसी में से निकलकर लोगों में गई, नेकी। और इससे पहले कि आप इसे जाहिर करें, पहले आपको उसे हासिल करना है। अगर आपने इसे हासिल नहीं किया, तो फिर ये जाहिर नहीं हो सकती, फिर कोई ऐसी चीज नहीं जिससे ये जाहिर हो सके। अगर हम में कोई नेकी लेना चाहे तो क्या हो? चेक वापिस हो जाएगा, ना काफी जखीरा होने की वजह से, समझे? वो कहेगा, नहीं नहीं, इसे हासिल करने को कुछ नहीं है, चेक वापिस आता है। कोई आपको बतौर मसीही देखता है और अगले दिन आपको एक गुनाहगार की हालत में देखता है, अब इससे कुछ नेकी हासिल नहीं की जा सकती, समझे? ये दुरुस्त है। हम में नेकी होनी चाहिए, और जब तक हम नेकी पाते हैं, जब हम हकीकी नेकी पाते हैं, तो हम इसे अपने ईमान में शामिल कर सकते हैं। बुनियाद की अगली दीवार ये है। अब सबसे पहले आपको ईमान रखना है, लेकिन ईमान अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप, पत्रस ने कहा, फिर ईमान में नेकी बढ़ाओ। आपके पास ईमान होना जरूरी है, ताकि उस पर नेकी का इजाफा कर सकें। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसे पाया ही ना हो, क्योंकि आज की बहुत सी कलीसियाएं आपको तालीम देती हैं कि इसे हासिल करना जरूरी नहीं है, या ये कि इसका जमाना गुजर गया है, अब इनके लिए इसे हासिल करना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि कलीसिया में शमूलियत इख्तियार कर लें। जी हाँ, वो जमाना गुजर गया है। नेकी, क्या कोई जानता है कि लफ्ज नेकी का क्या मतलब है? देखें, और हमें इसे हासिल करना है। अगर नेकी उसमें से निकली ताकि बीमार औरत को शिफा दे, वो इसी नेकी की तवक्को अपनी कलीसिया से कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए नमूना था। अगर उसके पास लोगों को फराम करने के लिए नेकी मौजूद थी, तो वो हमसे भी तवक्को करता है कि लोगों को नेकी दें। और नेकी क्या है? नेकी ताकत है, कुवत है, हत्ता के उनमें से कुछ खुदा की कुदरत पर ईमान ही नहीं रखते। वो कहते हैं, वो गुजर चुका है, आपको सिर्फ ये करना है कि अपना नाम रजिस्टर्ड में दर्ज करवाएं, छिड़काओ या अंडेलने का बपतिस्मा या जो कुछ भी, ये सब कुछ करना है। लेकिन पत्रस ने कहा, नेकी का इजाफा करो। अब पत्रस खुदा का घर बनाने की बात कर रहा है, समझे? खुदा के मकदस के लिए एक जगह मुकर्रर कर रहा है। और नेकी हासिल करने के बाद आपको जरूर चाहिए, ईमान पाने के बाद आपको इसके साथ नेकी का इजाफा करना है। ये दुरुस्त है। तमाम दुनिया के लिए नेकी हासिल करो। मेरा अंदाजा है पास्टर रेवरेंड मिस्टर लिली, पास्टर लिली के यहाँ 20 बरस कबल मैंने ये पैगाम दिया था। मैंने वहाँ से हवाला लिया था जहाँ यीशु ने कहा शोषण के दरख्तों पर गौर करें कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी एक की मानित भी मुलबिस ना था। शोषण पर निगाह करें, ये गंदगी से आते हैं और दिन के हर मिनट में ये जमीन से खुराक हासिल करते हैं, समझे? और इसी नेकी को जो उसे हासिल है क्या करता है? ये उसे फराम कर देता है, ये मदा के लिए एक खूबसूरत मंजर देता है, ये अपना शहद मुहैया करता है ताकि शहद की मक्खी आए और अपना हिस्सा ले ले, शिकवा ना करें। ये तो सिर्फ देने ही के लिए हासिल हुआ है। क्या हो अगर एक शहद की मक्खी आए और वहाँ पर शहद ना पाए? वो छोटी मक्खी अपना सर खुजाएगी और कहेगी वो शोषण का फूल किस किस्म का है। अगर कोई शख्स निजात पाने के लिए आए और ऐसी कलीसिया में चला जाए जो ये ईमान रखते हों कि मौजजात के दिन गुजर चुके हैं, तो क्या हो? जैसा कि जैकोई ने एक मरतबा कहा था, किसी रेस्तरां में जाकर खाने का एक बड़ा मेन्यू लेकर उसे नीचे तक पढ़ना शुरू करें, टी बोन स्टिक और दूसरी चीजें वगैरह, और कहें मैं टी बोन लूंगा, ठीक है ये तो एक दिन पहले के लिए था, हमारे पास नहीं है। शायद उसी वक्त मेन्यू नीचे रखकर बाहर निकल आए, समझे? ये दुरुस्त है। बहर सूरत इसी वजह से उन्हें खाने को मयसर ना हो, बस आप ऐसे रेस्तरां में जाएं जहां खाने को मयसर हो। और एक रूहानी निशोनमा पाने वाले शख्स को गजा की जरूरत है, और ये खुदा का कलाम है। मैं इसके हर लफ्ज पर एतमाद रखता हूँ। खुदा ने मेज लगा रखी है जहाँ खुदा के मुकद्दसीन को शेयर किया जाता है। वो अपने चुने हुए लोगों को दावत देता है, आओ और खाओ। वो अपने मन से खिलाता है, वो हमारी सब जरूरतें पूरी करता है। हो यीशु के साथ हर वक्त खाने में शरीक होना किस कदर दिलकश है, ये दुरुस्त है। जी जनाब, उसने इसे पा लिया, ये कलीसिया के पास है। जिंदा खुदा का मकदस मसीह की मार्फत से कामिल आदमी में तामीर किया गया है। अब नेकी हासिल करना आपके लिए जरूरी है। मैंने कहा पहली चीज जो आपके इलम में है कि यहाँ कोई है जो खुशबू देना पसंद करता है, वो खुद गर्ज नहीं है, वो खुशबू रखता है। इससे पहले कि वो अपनी खुशबू दे, पहले उसे हासिल करना है। इससे पहले कि वो शहद दे, उसे खुद हासिल होना चाहिए। इससे पहले कि वो खूबसूरती दे सके, उसे पाना है। कबल के आप नेकी दे सके, आपको इसे हासिल करना है। इसलिए अपने ईमान में नेकी बढ़ाएं। आमीन। समझ गए? हम इस पर मजीद वक्त सर्व कर सकते हैं, लेकिन वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। ईमान पर नेकी बढ़ाएं। अब पहले ईमान है, फिर नेकी, और फिर तीसरी चीज मार्फत का इजाफा करो। मार्फत, अब मार्फत से मुराद दुनियावी इलम नहीं है, क्योंकि खुदा के नजदीक ये बेवकूफी है, लेकिन पहचान की मार्फत। पहचान कैसी? गलत में से दुरुस्त पहचान। आप किस तरह पहचान करेंगे? फिर जब आपको ईमान, नेकी और मसीही मार्फत हासिल है, तो आप पहचानेंगे कि आया ये कलाम दुरुस्त है या गलत है। अगर आप अपने तमाम अकायद और हर चीज को जिसे आप रखते हैं एक तरफ कर दें, तब आपको मार्फत हासिल होगी, ताकि ईमान रखें कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। हर आदमी का कलाम झूठा ठहरे और मेरा कलाम सच्चा ठहरे, समझे? अब आप मार्फत हासिल कर रहे हैं, ये सबसे आला तरीन इलम है। इसको हासिल करने के लिए आपको किसी कॉलेज या ऐसी ही किसी जगह से 4 डिग्रियों के असूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम जोहर आपको खुदा की तरफ से हासिल होते हैं कि ईमान की बुनियाद पर इजाफा करें, ताकि आप हकीकी तौर पर खुदा के साथ चलने वाले इंसान की पूरी कदो कामत पा सकें। जी जनाब, इजाफा करें, मार्फत का इजाफा करें, ताकि उसके कलाम की मार्फत का इजाफा करें। आपको इस तरह ईमान रखना है जैसा कि आपको आज भी ईमान रखना चाहिए, ताकि और इसे कबूल करना चाहिए कि मौजजात के दिन खत्म नहीं हुए हैं। ये मार्फत है कि खुदा जो कुछ कहता है, खुदा ही उसे अमल में लाने के काबिल है। इब्राहिम इस पर ईमान लाया जब वो 100 साल का था, तो वो खुदा के वादों पर बेईमानी के सबब से नहीं डगमगाया। देखे खुदा की कुदरत कितनी अजीब है। 100 साल बूढ़ा आदमी एक 90 साल उम्र रसीदा औरत से अपने घर में एक बच्चे की पैदाइश की उम्मीद लगाए बैठा है, समझे? जिसे बांझपन की जिंदगी गुजारते हुए तकरीबन 50 साल हो चले थे, और वो उसके साथ उस वक्त थी जब वो एक नौजवान लड़की थी, और इधर खुद इब्राहिम की जिंदगी के सोते बंद हो चले थे और सारा की कोख भी बेजान हो गई थी। वो तमाम उम्मीदें उम्मीद ही में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी उम्मीद के खिलाफ उसने उम्मीद पर ईमान रखा, क्योंकि उसे मार्फत हासिल थी कि खुदा हर वो काम के लायक है जिसका उसने वादा किया है। अब जब आप इसे इस तरीके से चाहते हैं, तो फिर अपने ईमान में इसका इजाफा कर लें। जब आप हकीकी नेकी पा चुके हैं तो इसे अपने ईमान में शामिल कर लें। जब आप यहाँ गली में चलते हों तो एक मसीही की तरह रहें, एक मसीही जैसा अमल करें, एक मसीही बनें और अपने ईमान में इसका इजाफा कर लें। जब आपके पास मार्फत, आप कहते हैं ठीक है, मैं नहीं जानता आया कि यह हवाला कलाम दुरुस्त है, अब यहाँ इमाल 2:38, मैं नहीं जानता इस पर कैसे अमल किया जाए, इमाल 28:19 पर कैसे अमल किया जाए, ठीक है, आप कुछ भी ना शामिल करें, इसलिए कि आपने अभी तक इसे हासिल नहीं किया, समझे? आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको खुदा के मुतल्लिक ज्यादा इलम नहीं है। कभी भी बाइबल अज खुद अपनी तरदीद नहीं करती। इसे छोड़ दें, इसके मुतल्लिक मजीद कुछ ना कहें, समझे? बस इसे छोड़ दें। लेकिन जब आपको समझ आ जाए कि किताबे मुकद्दस में तजाद नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं, जैसा कि खुदा के मुकाशफे के जरिए से देख सकते हैं, कि तमाम कलाम वेदों की सूरत में लिखा गया है और सिर्फ खुदा की मार्फत ही से इसे आश्कारा किया जा सकता है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो कलाम के हर लफ्ज पर जोर देकर कहते हैं आमीन, तब अपने ईमान में इसका इजाफा कर लें। हो, आप अभी से एक बहुत अच्छे इंसान बनते जा रहे हैं, समझे? आप बढ़ रहे हैं, समझे? किसके साथ? पहले ईमान, फिर नेकी और फिर मार्फत के साथ। देखें किस तरह ये उस आदमी की तामीर कर रही है। देखें, इससे फरार की कोई राह नहीं है। मसीह की पूरी कदो कामत पाने का यही रास्ता है। जी हाँ जनाब, सही जानने के लिए तहकीक करें कि आया खुदा के कलाम पर ईमान रखना गलत है या कि दुरुस्त है। मुझे अकायद की खिदमत करनी चाहिए या खुदा की? तहकीक करें कि यह दुरुस्त है या गलत। तहकीक करें आया यह गलत है या दुरुस्त। मुझे नए सिरे से पैदा होना चाहिए या कलीसिया में शमूलियत करनी चाहिए? फिर आप शुरू कर देते हैं सही तहकीक करते हुए। तब अगर कोई मनाद कहता है मौजजात का जमाना गुजर गया है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज और बल्कि अब तक यकसा है, अब आप किस पर ईमान रखने जा रहे हैं? जब आप कहते हैं मैं खुदा को चुनूंगा, अब आप ये महज कहने की हद तक ना कहें, ठीक है मैं इसे लेता हूँ, बल्कि अपने दिल से। लेकिन आपके अंदर कोई चीज है, आपका ईमान कहता है, आपका ईमान इसे बाहर लाता है, ये है आपका मकाम। आपका ईमान कहता है कि वो यकसा है, आमीन, मैं उसका गवाह हूँ, वो यकसा है, कोई चीज नहीं जो इससे आपको जुदा करे, मैं जानता हूँ वो हकीकी है, आमीन, फिर इसे अपने ईमान में शामिल कर ले। इसे बुनियाद पर डाल दें। देखें अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक बादशाही की तरफ, ये निशान हासिल करके, ठीक है। अब अगली चीज जो मनाद आपको बताएगा, और बहुत से लोग कहते हैं ये चीजें जो आपने बाइबल में पढ़ी हैं, ये किसी और जमाने के लिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें आज इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, समझे? हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीजों को अमल में नहीं लाना चाहिए। और जैसे अपनी कलीसिया में इलाही शिफा और गैर जुबाने बोलने के अमल को नहीं लाते ताकि हमारी कलीसिया ठीक रहे, हम ये नहीं करते हैं, और हम इसको जानेंगे। यहाँ मेरे पास इसके मुतालिक एक हवाला लिखा हुआ है, समझे, कि आया हमें अभी भी करना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ वो कहता है मैं नहीं जानता, हमें आज ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें ये करना चाहिए कि हमें मजमे के सामने साफ बोलना चाहिए, हमें जाकर अपने जहन का नफसियाती टेस्ट करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम इस लायक हैं कि हाजिर दिमागी से रहें। अगर हमारा जहनी मियार ये करने के लिए काफी बुलंद है और इसी तरह करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ी जमात बना लेते हैं और हम अपनी तंजीम तमीर कर लेते हैं। लेकिन हम कोई तंजीम नहीं बना रहे हैं। मैं आज सुबह यहाँ कोई तंजीम बनाने के लिए नहीं आया। मसीह ने मुझे एक तंजीम बनाने के लिए कभी नहीं भेजा। मसीह ने मुझे फर्दन फर्दन लोगों को यीशु के कदो कामत पर तमीर करने के लिए भेजा है, ताकि वो कुवत का घर बन जाएं और उसके कलाम के वसीला से, उसके रूह के वसीला से रहने की जगह बन जाएं, उसके कलाम के वसीला से देखें, इनफरादी तौर पर तामीर करें, ना के एक बड़ी मिशन की बड़ी तंजीम, लेकिन खुदा के बेटों और बेटियों की इनफरादी तौर पर तामीर करें, ये है मंसूबा, समझे? अपने ईमान पर नेकी और अपनी नेकी पर मार्फत बढ़ाओ, ठीक है। अब आप एक मकाम पर आ रहे हैं, अब जब वो कहना शुरू करते हैं, ठीक है, हमें आज इसे कबूल करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जरूर होना चाहिए। कलाम मुकद्दस झूठ नहीं कह सकता। बाइबल कहती है इसकी कोई जाती तशरी नहीं है। आपको इस पर इसी तरह ईमान रखना है जैसे लिखा हुआ है। समझे, आपको ये चीजें हासिल करनी है। इन सब को हासिल करने के लायक आप सिर्फ इसी तरह हो सकते हैं कि आसमानी पदेश की मार्फत हासिल कर लें, और आसमानी पदेश का इलम कलाम को साधक ठहराएगा। समझे, आपने ईमान पाया है, ना के ईमान बनाया है। उनमें से किसी पर भी ईमान ना बनाए। देखें, अगर आप ये कहने की कोशिश करें मैंने इसे बना लिया, स्याह परिंदे की तरह अपने ऊपर मोर के पंख ना लगाएं, समझे, क्योंकि वो तो गिर जाएंगे, वो असल उगे ही नहीं हैं, क्योंकि वो लगाए गए हैं। मैं गौर करता हूँ जहाँ दाऊद ने कहा जबूर एक में, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आप जानते हैं लगाए जाने में और पैवंदकारी में कितना फर्क है। जैसे पुराना बलूत का दरख्त लगाया गया हो और अच्छी तरह से फैल चुका हो और मजबूत हो गया हो, और एक पुरानी छड़ी जो वहाँ पैवंद हुई हो और आप नहीं जानते कि उसके साथ क्या होगा, उसकी कोई जड़ नहीं और ना ही बुनियाद है। समझे, ये ऐसे ही है जैसे कि कुछ लोग किसी सेमिनरी से या ऐसी ही किसी जगह से आ रहे हों। समझे, इसे मत लें, ठीक है, डॉक्टर फला फला ने मुझे मखसूस किया था, उसको ख्याल में मत लाएं कि वो क्या था। आप ईमान से देखें, देखें मसीह इसमें आपको पैदा करता है। समझे, आपने असला पाई है और इसमें पैदा हुए हैं, और इसमें पैदाइश पाने के बाद वो इन चीजों की आपसे तवक्को करता है कि इन्हें शामिल कर लें, इनमें इजाफा करते जाएं, और हम बिल्कुल ठीक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस मार्फत पर एक चीज और होगी, हम इसे इलाही मार्फत कह सकते हैं। समझे, क्या इस जमाना में बाइबल अपने मतलब को खो बैठी है? देखें, वो बहुत से लोग आपको ये बताते हैं कि दरअसल बाइबल का ये मतलब नहीं है। अगर खुदा मुझ पर निगाह करे और मेरे गुनाह से मेरी असलाह करे, और अगर मैं खुदा का बेटा हूँ तो वो ये करता है, इसी तरह से वो आपके साथ करता है। बेटों और बेटियों, जब आप कोई चीज गलत करते हैं तो वो आपकी सलाह करता है। तब आप, अगर आप खुदा के नजदीक इतने अजीज हैं कि वो आप पर निगाह करता है और आपकी सलाह करता है, तो इसका कलाम किस कदर दुरुस्त है जो आपके लिए नमूना है, जो कि बजाते खुद वो है। इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। बाइबल इस तरह बयान करती है कि कलाम यीशु मसीह का मुकाशवा है, मसीह अपने कलाम में जाहिर हुआ है। और जब आप इन कवानीन से सरकशी करते हैं और वो आप पर निगाह करता है, तो इसके बायस वो आपको ठुकरा देता है। तो किस कदर ज्यादा वो अपने कवानीन पर निगाह रखता है जो के आपको ठुकराते हैं। आमीन। जाओ भाइयों, इस तरह की बातें मुझे ना बताओ। मैं रुलकुस की खालस मार्फत पर ईमान रखता हूँ। रुलकुस की मार्फत हमेशा कलाम पर जोर देकर आमीन कहेगी। जब आप ऐसी चीजें देखते हैं जिनकी बाइबल में तर्दीद होती नजर आती है, तो आप बैठ जाएं और दुआ करते हुए मुतालिया करें, और पहली चीज जो आप जानेंगे कि रुलकुस हरकत में आ जाएगा, और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये बहम इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर आपने इसे हासिल कर लिया। समझे, ये मार्फत है। उनमें से कुछ कहते हैं ठीक है, अब बाइबल ने कहा है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और कलीसिया कहती है एक मौसर ख्याल के मुताबिक वो यकसा है। ओ ओ ओ, आपने वहाँ शगाब बना दिया। समझे, जी जनाब, नहीं जनाब, वो यकसा है, जी जनाब, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, इसमें कतई कुछ ताखीर नहीं। वो अपनी कलीसिया में रहते हुए वही कुछ कर रहा है। थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने हवाला दिया था, थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे। इसलिए उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा। फिर उसने कहा जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। फिर उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और डाली सिर्फ अंगूर के दरख्त के वसीला से जिंदा रहती है। अंगूर के दरख्त के अंदर जो कुछ भी है वो डाली के जरिए से बाहर आता है। जलाल हो। तब मसीह यीशु कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद यीशु की जिंदगी को पैदा करता है। आमीन। मार्फत दुनियावी इलम नहीं है, ये बहस नहीं करता। किसी तरह का भी दुनियावी इलम बहस करता है, समझे, लेकिन ईमान बहस नहीं करता। खुदा आप पर जाहिर करता है कि कोई खास बात वकू में होने वाली है। दुनिया का हर साइंसदान आपको इसके बरक्स बता सकता है कि ये नहीं हो सकता। बहरतौर आप फिर भी ईमान रखें। समझे, जी जनाब, ये बहस नहीं करता। बाइबल ने कहा कि हम तकरार में ना पड़ें। आप ईमान के साथ बहस ना करें। ईमान बहस नहीं करता। ईमान को मालूम है कि ये कहाँ पर है। ईमान अमल करता है। ईमान कायम रहता है। इसे जुम्बश नहीं, इसे कोई हिला नहीं सकता। मुझे परवाह नहीं कि ये या वो कोई दूसरा क्या कहता है। इसे जरा भी जुम्बश नहीं, ये अपनी जगह पर कायम है। ठहरे ठहरे ठहरे, इंतजार करें। इसमें कोई फर्क नहीं आने पाएगा। इसके साथ ठहरे रहें। खुदा ने नूह को बताया कि ये चीजें वाकया होने को हैं। उसने ईमान रखा, समझे। खुदा ने मूसा को बताया ये चीजें वाकया होने वाली हैं। उसने ईमान रखा। खुदा ने शागिर्दों से कहा कि ये चीजें वकूफ पजीर होंगी। ऊपर बाला खाना में जाओ और पैंतीकोस तक ठहरे रहो, और वहाँ वो ठहरे रहे। जी जनाब, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब मार्फत, अब ये दुनियावी इलम नहीं बल्कि ये आसमानी इलम है, और आसमानी इलम खुदा जो तमाम अलूम का सरचश्मा है और कलाम खुदा है। तो फिर अगर आप आसमानी इलम पा चुके हैं तो आप कलाम पर ईमान रखते हैं, और आप कलाम के वसीला से किसी भी चीज की वजह बयान कर सकते हैं। ये खोल चढ़ाकर बैठ जाना कि कलीसिया अंदर आ गई है या मैं अंदर आ गया हूँ, ये बात एक मर्तबा एक छोटी सी मुलाकात में चंद अशखास में से एक ने मुझसे कही। मैंने कहा वो कुछ भी खराबी ना निकाल सके, तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, फिर अगर इसमें कोई खराबी नहीं है तो आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, समझे समझे। और मैं कुछ हवाला जात उसको बताने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, उस ताकतवर दोस्त ने जिसके हाथ में सिगरेट था, उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, मैं बाइबल का एक तालिबे इल्म हूँ। मैंने कहा मुझे ये सुनकर खुशी हुई। उसने कहा अब मैं जानता हूँ कि ये गलत अकीदा है कि आप जो रमाल बाहर बेचते हैं उनके पैसे लेते हैं। इन रमालों पर गलत अकीदे की दुआ करके उन्हें बाहर बेच देते हैं, इनमें मसा शुदा कपड़ों को, जिनको आप कहते हैं पारचा। उसने कहा फिर इनके इस पैसे लेते हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, इसके इस पैसे नहीं लेते। और उसने कहा ठीक है, इस गलत अकीदे पर क्या ख्याल है। मैंने कहा आप इसे गलत अकीदा कहते हैं। जनाब, आपने चंद मिनट कबल मुझे बताया था कि मैं एक बाइबल का तालिब इलम हूँ। उसने कहा मैं हूँ। मैंने कहा मेरे लिए इमाल 19:11 का हवाला पढ़े। मार्फत, उसके अपने इलम ने उसे जाल में फंसा दिया। उसने मजमून बदलने की कोशिश की। मैंने कहा फिर यूहन्ना 5:14 का हवाला पढ़ें। वो ऐसा ना कर सका था। मैंने कहा फिर यकूब 5:14 का हवाला पढ़ें। वो ऐसा ना कर सका। मैंने कहा क्या आप यूहन्ना 3:16 को जानते हैं, समझे। दुनिया का इलम चलाकी है। लेकिन उसने कहा मिस्टर ब्रैनम, आप इस मसले को बाइबल के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम इसे वतन के कवानीन के मुताबिक देखते हैं। मैंने कहा जनाब, क्या मुल्क के कानून की बुनियाद बाइबल पर नहीं है, तब ये इंसाफ है। आमीन। यकीनन मार्फत, यकीनन दुनियावी इल्म नहीं बल्कि रूहानी इल्म, ये जानकर कि खुदा क्या कहता है, वही करें जो खुदा कहे, ये दुरुस्त है। अगर आप हासिल कर चुके हैं और इन सब चीजों पर ईमान रख सकते हैं कि वो तमाम चीजों में यकसा है जो कलाम कहता है सच है, तो आप हर बात के इख्ताम पर कहेंगे आमीन, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अपने ईमान में इसका इजाफा कर लें, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, अगर कोई शख्स आपको ये बताने की कोशिश करे कि बाइबल अपना इख्तियार खो चुकी है और रूल कुछ जैसी कोई चीज नहीं है, ओहो, उसे मत शामिल करें। ये काम नहीं करेगा। ये गिर जाएगा जैसे चट्टान पर से गारा। ये ठहर नहीं सकेगा। ये रेजा रेजा हो जाएगा। तब अगर लोग आपको बताते हैं आज बाइबल पर एतमाद नहीं किया जा सकता, आप मोहतात हो जाएं। इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई नहीं हो सकती। आप कई दफा कुछ एक को सुन चुके हैं ऐसा कहते हुए कि आप बाइबल पर एतमाद नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये बात आपके जहन में आ चुकी है तो फिर आप इसे शामिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम नहीं करेगी। पूरी इमारत वहीं ढेर हो जाएगी। इसे पाक रूह की राल की जरूरत है। मेरी मुराद बाहम जुड़ जाने से है। राल जो इसे सरबा मोहर कर सकती है, यही वो चीज है जो इसे सरबा मोहर करती है। आप ये जानते हैं किस तरह रबड़ में गंधक मिलाकर ट्यूब की मजबूती को बढ़ाते हैं, और बजाय इसके कि एक पुराने जोड़ पर थोड़ी सी गर्माइश से एक टायर का टुकड़ा लगा दिया जाता है, पहली चीज जो आप जानते हैं वो ये होगी कि थोड़ा सा तेज चलाने से टायर को कुछ ही गर्मी पहुंचती है, ये पिघल जाएगा। जी हाँ जनाब, समझे। यही मामला आज बहुत से लोगों के साथ है। वो अपने दुनियावी इलम को थोड़ी सी पुरानी जमीनी गूंद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब आजमाइशें आती हैं, ठीक है, शायद मैं गलती पर था, समझे, फिर हवा निकल जाती है और आप चंद मिनटों में पिचक जाते हैं। आपका तमाम चलाना, ऊपर नीचे उछलना कूदना बेसुध रहा, लोग आपको दोबारा उसी दलदल में वापिस पड़ा देखते हैं, समझे, ये दुरुस्त है। लेकिन अगर आप रूल कुश की तेज आंच में ठहरे हैं, जब तक के आपको और ट्यूब को एक ना कर दे, ये बात है, आप और ट्यूब यकजा हो जाएंगे। जब आप उस वक्त तक ठहरे रहें, जब तक आप और खुदा का हर वादा एक हो जाए, फिर इसे अपने ईमान में शामिल कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो इसे हरगिज शामिल ना करें। आप कहते हैं कि कलाम पर एतमाद नहीं किया जा सकता, तो इसे शामिल करने की कोशिश ना करें। आप कहते हैं, जैसा कि कुछ कलीसियाएं आज कहती हैं, कि रूल कुछ के बपतिस्मा का वादा सिर्फ 12 रसूलों के साथ था, तो इसे शामिल करने की कोशिश ना करें। यही वो मकाम है जहां उनकी बुनियाद मुकम्मल तौर पर रेजा रेजा हो जाती है, समझे। जैसे गुज़िश्ता रात उज़िया की तरह था, जब उसने उस आदमी की बुनियाद देखी जिस पर वो एतमाद करता था कि वो टूट चुकी है और कोड में मुब्तला हो गया है, ये बलाई ना थी। अब सिर्फ 12 रसूलों के लिए, सिर्फ 12 रसूलों के लिए। एक दिन मैं भाई राइट के साथ था, मेरा ख्याल है वो पीछे कहीं बैठे हैं। एक रात वहाँ एक खादम था, मैं मुनादी कर रहा था, हम 4 या 5 खादम इकट्ठे थे। ये खादम उठा और कहने लगा, अब मेरे अजीजों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ओ आप मेरे नजदीक बहुत उम्दा लोग हैं। मैंने कहा, मैंने किसी शख्स को बताया और कहा, ये अभी यहीं बैठा हुआ था, देखें। बस जूनियर जैक्सन पीछे बैठा हुआ बोलने लगा और उसने कहा, मैं खुदा के फजल पर मुनादी कर रहा था। ओ मेरे खुदाया, वो कितनी शिद्दत से इंतजार में था। मौका पाते ही वो ये कहने की कोशिश करने लगा, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस्टर ब्रैनम, मैं आपको बताता हूँ, एक मुखालफ मसीह है। और उस शब इसी तरह से शुरू रहा, कुछ एक मुनाद बोलना शुरू हुए। मैंने कहा, एक मिनट इंतजार करें, अब भाइयों कुछ ना कहें, वो हमारे ग्रोह में से एक है। मैंने कहा, इसे अब अकेला छोड़ दें। उसने मेरे ऊपर बात की है, मुझे अपने मुतल्लिक अपने आप के लिए ये बहुत बुरा लगा है, मैं नहीं जानता कि अब क्या करूं, समझे। उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम एक मुखालफ मसीह है, और आप जानते हैं वो सब कुछ कह रहा था। वहाँ उसने कहा कि रूल कुछ का बपतिस्मा, उसने कहा बाइबल फरमाती है कि वहाँ सिर्फ 12 रसूल थे जिन्होंने रूल कुछ का बपतिस्मा पाया। इलाही शिफा के मुतल्लक कहने लगा, सिर्फ 12 शागिर्दों के पास इलाही शिफा थी। उसने कहा, हम वहाँ बोलते हैं जहाँ बाइबल बोलती है, और जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ हम भी खामोश हैं। मैंने इंतजार किया जबकि वो आधे घंटे तक अपनी जुबान चलाता रहा। मैंने कहा, एक मिनट के लिए ठहरिए, मैंने यहाँ कुछ चीजें लिख रखी हैं। मैंने कहा, मुझे चंद एक बातों का जवाब देने का मौका दें। और जब मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा, इन जनाब ने कहा था कि वो सिर्फ वहाँ बोलते हैं जहाँ बाइबल बोलती है, और उसकी कलीसिया ने भी ऐसा ही किया है, और जहाँ बाइबल खामोश है वो भी खामोश है, आप सब गवाह हैं। जी हाँ जनाब। मैंने कहा, अब उसने कहा है कि वहाँ सिर्फ 12 रसूलों ने रूल कुछ हासिल किया था, मेरी बाइबल कहती है पहले मौके पर 120 की जमात थी, आमीन। इस तरह का इलम निकाल फेंके। आपने देखा वो क्या कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, शायद पालूस ने रूल कुछ नहीं पाया था जबकि उसने कहा इसे हासिल है, समझे। मैंने कहा कि फिलिपस ने जब वो सामरिया में जाकर कलाम सुनाया तो उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम में बपतिस्मा पाया था, अभी तक रूल कुछ उन पर नाजिल नहीं हुआ था, और उन्होंने पत्रस और योहन्ना को भेजा उन पर हाथ रखें ताकि रूल कुछ नाजिल हो। मेरा ख्याल है क्या वो सिर्फ 12 थे। मैंने कहा, इमाल 10:49 में जब पत्रस घर की छत के कोठे पर था और रोया में कर्नीलियस के वहाँ जाने की हिदायत पाई, जब पत्रस कलाम कर ही रहा था, जितने कलाम सुन रहे थे सब रूल कुछ से भर गए। मैंने कहा, बाइबल का बयान जारी है, आपकी कलीसिया कहाँ है, ये अभी भी माजी में है, ये दुरुस्त है, समझे। मैंने कहा, आपने कहा कि इलाही शिफा की कुदरत सिर्फ 12 रसूलों को हासिल थी, बाइबल ने कहा कि स्तिफनस सामरिया में जाकर बदरूहों को निकालता रहा और बीमारों को शिफा देता रहा, और बड़ी खुशी वहाँ पर हुई। वो उन 12 में से नहीं था, वो एक रसूल भी नहीं था, वो एक डीकन था, आमीन आमीन। मैंने कहा, अगर पालूस जो उन 12 में से नहीं था जो बालाखाना में थे, तो भी उसने शिफा देने की नेमत हासिल की थी। मैंने कहा, खुदा की शिफा की नेमतों को देखें, और ठीक 30 बरस के बाद वो अब भी करंथस में मसीह के बदन में शिफा की नेमत को कायम कर रहा है। ओ मेरे खुदाया, अब जो इलम आपने चंद किताबों से हासिल किया है, बेहतर है उसे कूड़ेदान में डाल दें। और इस मार्फत के पास आए। जब खुदावर ने कहा वो कल आज बल्कि अब तक यक्सा है, कहें आमीन। जी जनाब, जी जनाब, सिर्फ 12 रसूलों के लिए नहीं, ये सब के लिए है। जब आप इस तरह का ईमान पाते हैं तो इस नुक्ते पर जोर देकर कहते हैं आमीन, फिर आप कहते हैं ठीक है, इसे इसमें शामिल कर लें। चौथी चीज हमें जल्दी करनी होगी। मैं यहाँ खड़े होकर इसके मुतल्लक बात करना पसंद करता हूँ, आमीन। जी हाँ, चौथी चीज, शुक्रिया। परहेजगारी का इजाफा करें। ओ मेरे खुदाया, हम परहेजगारी की जानी बातें हैं। अब पहले आपके पास ईमान था शुरू करने के लिए और आपको वो हासिल करना होगा, फिर आप ईमान में नेकी बढ़ाएं, और अगर ये दुरुस्त किस्म की नेकी है तो फिर मार्फत का इजाफा करें। ये दुरुस्त किस्म की मार्फत है तो अब आप परहेजगारी का इजाफा करने लगे हैं। परहेजगारी का ये मतलब नहीं कि यहाँ इस तरह से शराब न पिए, नहीं नहीं, परहेजगारी का मतलब शराब नोशी से असला नहीं है, इस तरह से नहीं। ये बाइबल की परहेजगारी है, रूल कुछ की परहेजगारी है। ये तो जिस्म की ख्वाहिशात हैं, लेकिन हम रूल कुछ की परहेजगारी पर बात कर रहे हैं। इससे मुराद है कैसे अपनी जुबान पर काबू पा सकते हैं, बेढंगी बातें करने वाले ना बने, कैसे अपने मजाज पर काबू पाना है। अक्सर औकात किसी से सख्त अल्फाज में ना बोलें कि कोई तीखे लहजे में आपसे बात करे। ओ मेरे खुदाया, भाई हम में से ज्यादातर शुरू करने से पहले ही गिर जाते हैं, क्या नहीं समझे? फिर हम हैरान होते हैं कि खुदा क्यों अपनी कलीसिया में मौजजात और ऐसे काम जो वो करता रहा है नहीं कर रहा। जी जनाब, समझे? इन चीजों का इजाफा कर लें, इसमें परहेजगारी बढ़ाएं। ओ परहेजगारी, जब कोई आपसे गलीज़ो गजब में बोले तो कैसे मेहरबानी से आप जवाब दें। कोई शख्स कहे तुम मजहबी जुनूनी लोगों का ग्रोह हो, उछल कर आस्तीने ऊपर ना चढ़ाएं, समझे? ऐसा ना करें, बल्कि इलाही मोहब्बत से बात करें, परहेजगारी मेहरबानी से बात करें। क्या यही रास्ता है जो आपको अपनाना होगा? जब आप पर गुस्सा किया जाए बदले में गुस्सा ना करें, मसीह को अपना नमूना बनाएं। जब अब्लीस ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के तेरे लिए रोटी बन जाए, वो ऐसा करके दिखा सकता था कि वो खुदा था, लेकिन उसने परहेजगारी से काम लिया। जब उन्होंने उसे ये कहकर पुकारा बालजबूब, यीशु ने कहा मैं इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ, क्या ये दुरुस्त है? उन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा और उसके चेहरे पर थूका और कहा सलीब से नीचे उतरा। उसने कहा ए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तब चूंकि उसके पास नेमते थी, वो सब चीजें जानता था क्योंकि अलूयत की सारी मामूरी उसी में थी। उन्होंने उसे मौजजाना तौर पर लोगों को उनकी परेशानियां बयान करते देखा था और इसी तरह और बहुत सारे काम। उन्होंने उसके सर के गिर्द आंखों पर पट्टी बांधी और उस पर छड़ी से वार करके कहा नबुवत कर और बता तुझे किसने मारा है तो हम तेरा यकीन कर लेंगे, समझे? उसमें परहेजगारी थी। अब अगर ये इस तरह से आपके पास है तो इसे अपने ईमान में शामिल कर लें। अगर अभी तक गुस्से में फुंकारते हैं, जोश खाते हैं और अजतराबी कैफियत और जेनी उलझन का शिकार रहते हैं तो अफसोस, आप इसे हासिल नहीं कर पाए, आप इसका इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि ये शामिल ना होगी, समझे? इस रबड़ में गंधक नहीं मलाई गई। आप जानते हैं आप रबड़ के एक टुकड़े को लेकर उसे लोहे के टुकड़े के साथ शामिल नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा, नहीं, इसे रबड़ की तरह लचकदार होना चाहिए, समझे? और आपका ईमान और परहेजगारी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसी के रूल कुछ की परहेजगारी जो के वो रखता है, तो फिर ये उसके साथ गुल मिल जाएगी, आप इसमें शामिल किए गए हैं। जब आपकी नेकी उसकी नेकी जैसी है तो आप इसे शामिल कर लें। जब आपकी मार्फत उसकी मार्फत जैसी है, ऐ खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करता हूँ, समझे? बाप के कलाम के साथ उसने हर बुराई को शिकस्त दी, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन कलाम नहीं टलेगा, समझे? जब आप इस किस्म की मार्फत पा लेते हैं तो ये आपके ईमान के साथ जुड़ जाएगा। जब आप उसकी मानी दुरुस्त परहेजगारी पालेंगे जैसी के उसकी है तो ये मजबूती से जुड़ जाएगा। अगर आपका ईमान और परहेजगारी इंसान की बुनाई हुई नामुकम्मल और बदमस्त है, हो मुझे चाहिए इसे थप्पड़ रसीद कर दूं, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा ना हो क्योंकि वो इस वजह से मेरा नाम अखबार में दे देंगे। क्या ये ऐसी परहेजगारी है जिसकी खुदा बात कर रहा है? इसे शामिल करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप हर शख्स को खुश दिली से माफ कर देते हैं तो इत्मीनान रखें, इसे बढ़ने दें, देखें ये इसके साथ जुड़ जाएगा, आप इसे अपने ईमान में शामिल कर सकते हैं। वाह, अगर कलीसिया कम है तो कोई बात नहीं, क्या ये दुरुस्त नहीं? कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ बाइबल में लिखा है, तोबा करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और एक पक्का तसलीसी इस पर ईमान नहीं रखता और कहेगा ये पुराना मुखालफ मसीह है, वो यीशु नाम का है, वो जीसस ओनली है। देखें नौजवान, इस वक्त मुझे आपकी परहेजगारी की समझ नहीं आ रही, समझे? आप आकर इस तरह क्यों नहीं कहते, भाई ब्रैनम आए इस पर मिलकर गौरव खोज करते हैं, क्या मैं इसकी वजाहत सुनना पसंद करूंगा, समझे? तो फिर आए बैठकर इसे गौर से सुने, और जब ये आपको बता दिया जाए तो फिर आप रास्ता बदल लें। हम खुदा परस्ती में रहते हुए इसे चंद मिनटों में जान लेंगे, समझे? लेकिन जब आप आपे से बाहर हो जाएं और हर नतीजे पर जल्दी से पहुंचना चाहें, अफसोस ये ऐसा तो नहीं है, समझे? अभी तक आपने बाइबल का मजाज नहीं पाया। अगर यही कुछ करते हैं तो कैसे जवाब दिया जाएगा? अगर ये सब आपने हासिल कर लिया है तो अपने ईमान में इसका इजाफा करें। फिर इसके बाद चौथी चीज ये है कि आप अपने ईमान में सबर का इजाफा करें, और अगर आपने ईमान पाया है तो ये सबर को काम में लाएगा। बाइबल इसी तरह कहती है, समझे? बस ये सबर है। अब ये अगली चीज है जो इस कदो कामत को तामीर कर रही है। आपको मालूम है कि खुदा के पास उसकी अमारत के लिए हकीकी सामान मौजूद है। देखें हम कितने नामुकम्मल हैं भाइयों और बहनों, समझे? देखें क्यों हम कहां पर हैं। जी जनाब, समझे? हमारे पास जलाल है, हमारे पास नारे हैं, इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि हमने ईमान हासिल कर लिया है। लेकिन जब हम इन चीजों पर आते हैं तो खुदा हमें इस तरह की जगह नहीं बना सकता, समझे? वो ऐसा नहीं कर सकता, वो हमें किसी और किस्म की जगह नहीं बना सकता। हम दूसरी तमाम तरह की चीजों में गिर जाते हैं और हम इनके साथ फिसल जाते हैं, समझे? वो अपनी कलीसिया की तामीर नहीं कर सकता। किसके साथ सबर? किस तरह का सबर? पहली चीज, खुदा के साथ सबर करो। अगर आपने हकीकी खालिस ईमान पाया है तो आप हकीकी खालिस सबर पाएंगे, क्योंकि ईमान सबर के साथ काम करता है। जब खुदा कुछ कहता है आप इसका यकीन करते हैं, यही सारी बात है। आपने सबर पा लिया। कुछ कहते हैं ठीक है, मैंने गुज़िश्ता रात खुदा से कहा कि मुझे शिफा बख्श दे, लेकिन आज सुबह मैं वैसा ही बीमार हूँ, ओ मेरे खुदाया। ये कैसा सबर है? खुदा ने इब्राहिम से वादा किया और 25 साल के बाद एक निशान भी ना था, उसने फिर भी ईमान रखा, वो खुदा के साथ साबर था। वाह, खुदा को हमेशा अव्वल दर्जा दें, इसे आगे बढ़ने दें। आप इसको आगे बढ़ने दें, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, बस इसे अपने से आगे रखें, उसने कहा, और ऐसा हो जाएगा, समझे? इसे अपने आगे रखें, यही दुरुस्त है। नूह साबिर था। जी हाँ, नूह हकीकी इलाही सबर रखता था। खुदा ने कहा मैं दुनिया को बारिश से तबाह करने वाला हूँ, और नूह ने इस पर 120 बरस तक मनादी की, बेशबहा सबर। आसमान से पानी का एक कतरा भी ना गिरा, कुछ भी ना हुआ था, माहौल इतना ही गर्द अलूदा था जितना के 120 साल पहले था, लेकिन वो सबर था। फिर खुदा आपके सबर को आजमाता है, ये सच है, खुदा उनको आजमाता है। नूह को बताने के बाद अब उसने कहा, नूह मैं चाहता हूँ कि तुम कश्ती में दाखिल हो जाओ, मैं जानवरों को इसमें लाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम दाखिल हो जाओ, अब ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ जाओ ताकि तुम ऊपर वाली खिड़की से बाहर देख सको। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें दाखिल हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को बताओ कि कल जिस बात की मनादी मैं 120 साल से कर रहा था वो कल वकू पजीर होने को है। ठीक है, तुम जाकर उन्हें बताओ। पहला निशान क्या था? नूह कश्ती में दाखिल हुआ, कोई बारिश ना थी, नूह तैयार हो गया, उसने बरसाती पहन ली और सारी तैयारी कर ली ताकि वो कभी कभार बाहर देख सके, वो तैयार हो गया। लेकिन अगले दिन, मैं यकीन से कहता हूँ कि शायद उसने अपने खानदान और अपने दामादों और सबको बताते हुए कहा, ओ मेरे खुदाया, कल आप वो कुछ देखने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि सारे आसमान पर बादल छा जाएंगे, गर्ज और चमक होगी, खुदा की अजीम तलवार आसमान को चाक कर देगी, वो गुनाहगारों के इन ग्रहों को जिन्होंने इन 120 सालों में हमारी बात को रद्द किया है सजा देगा, तुम सिर्फ गौर से देखते रहो, समझे? कुछ नीम ईमानदार आप जानते हैं जो उसके गिरदा गिर्द मंडलाते रहे और कभी अंदर ना आए, आप जानते हैं ऐसे लोग अभी भी हैं, आप ये जानते हैं। बस वो आए और कहा, ठीक है शायद ये बूढ़ा आदमी दुरुस्त कहता है, ओ मगर हम कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे या सुबह के कुछ घंटों तक इंतजार करेंगे और जायजा लेंगे। अगले दिन काले बादल की बजाय हमेशा की तरह सूरज तुलू हो रहा था। नूह ने बाहर देखा, नूह ने कहा अरे कोई बादल नहीं है। जब उन नीम ईमानदारों में से एक आया और कहा, हाँ मैं जानता था कि तुम भी उनमें से एक हो, मैं तुम्हें वहाँ टहलते हुए देख रहा था। ठीक है, मुझे माफ कर दें जनाब, शायद मैं तो सिर्फ आपको मालूम है कि मैं जोश में भर गया था। आपको इल्म है इसके सबर को देखें। लेकिन नू इसने सबर रखा और कहा, अगर ये आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। क्यों उसने सबर किया? क्योंकि खुदा ने इसी तरह कहा था। नू, उसने तुम्हें ये कब बताया? 120 बरस पेशतर मैं इतनी मुद्दत से बारिश की आमद का मुंतजर था। बस अब मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ। देखें कैसे, और कुछ ही देर बाद हमें मिलता है कि खुदा की आमद के लिए कलीसिया भी इंतजार कर रही है, और वो आएगा। परेशान ना हो, उसने वादा किया है। ये तमाम अरसा उठाए जाने के लिए इंतजार किया, किसी दिन ये होगा। घबराएं नहीं, खुदा ने इसका वादा किया है। सिर्फ सब्र के साथ इंतजार करें। आप गनूदगी महसूस करने लगते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये वकू होने से पेशतर शायद आप कुछ सस्ता लें, लेकिन उस वक़्त आप जाग उठेंगे। उसने वादा किया है, आपने देखा है। एक जबकि, देखें, हम कहते हैं मौत की एक जबकि। आप जानते हैं हम मौत को क्या कहते हैं? नींद की एक जबकि, या मसीह में सो जाना। मसीह में मौत कोई चीज नहीं है। जिंदगी और मौत दोनों एक साथ नहीं रहते, समझे? हम सिर्फ नींद की एक जबकि लेते हैं, ऐसी नींद जिससे हमारे दोस्त हमें पुकार नहीं सकते। सिर्फ वही एक है जो पुकार सकता है। वो पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। अयूब ने इसी तरह कहा। अब अयूब को सोए हुए 4000 साल हो गए हैं। घबराए नहीं, वो जाग उठेगा। परेशान मत हो, वो अभी भी इंतजार कर रहा है। नूह ने इंतजार किया। चौथा दिन गुजर गया लेकिन बारिश ना आई। कोई बात नहीं, ये वकू होगी। मैं नूह की बहू को ये कहते हुए सुन सकता हूँ, अब्बा जान, क्या आपको यकीन है? ऐसी बातें ना करो। वो साबर था क्योंकि उसके पास ईमान था। जी जनाब, इसके पास नेकी थी, उसके पास मार्फत थी। खुदा बरहक है, इसमें परहेजगारी थी। उसने गुस्से में बेकाबू होकर ये नहीं कहा, ठीक है, मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है, मैंने अपनी तमाम शोहरत खो दी है। नहीं नहीं, अब लोग मजीद मेरी कुछ परवाह ना करेंगे। मैं बाहर निकलकर नए तौर से दोबारा शुरुआत करूंगा। नहीं नहीं, बल्कि वो साबिर था। खुदा ने वादा किया है, खुदा इसे पूरा करेगा। चूंकि खुदा ने ऐसा कहा है, खुदा इसे पूरा करेगा। मैं अंदाजा कर सकता हूँ उसका बेटा कहता होगा, अब्बा जान, आप जानते हैं वो कई सौ साल का हो गया था। आप जानते हैं, अपने लंबे सुरमाई रंग के बालों को सुलाते हुए वहाँ बैठ गया और उसने कहा, और मैं जानता हूँ कि आप खानदान के बुजुर्ग हैं। मैं आपसे अब्बा जान मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपसे छोटी सी गलती हो गई हो। ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है। अच्छा अब्बा जान, हमें इस बड़ी पुरानी कश्ती में बैठे हुए आज 6 दिन हो गए हैं, और इसके अंदर और बाहर राल लगी हुई है, और इन तमाम सालों में हम इसे तामीर करते रहे हैं, और आप बाहर खड़े होकर मनादी करते रहे हैं, यहाँ तक कि आपका सर सफेद हो गया है और फिर बाल झड़ने लगे हैं, और अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, और लोग हंस रहे हैं, और गले सड़े टमाटर इस तरह की चीजें कश्ती की तरफ फेंकते हैं। देखें आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपको मालूम है? बेटे सब्र रखो। क्या आपको यकीन है अब्बा जान, बारिश होगी? उसकी बहू ने कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं बारिश होगी, लेकिन हम इन तमाम बरसों में इंतजार करते रहे हैं, हम तैयारी करते रहे हैं, और एक हफ्ता पहले आपने बताया कि बारिश होगी, और हम यहाँ इन बंद दरवाजों के अंदर इधर उधर चलते फिरते रहे, और सूरज बिल्कुल पहले की तरह आग उगल रहा है। लेकिन बारिश होगी, आपको कैसे इल्म है अब्बा जान? ये खुदा का फरमान है। जब आपको समझ आ जाए इसे शामिल कर लें, लेकिन अगर आपने इसे इस तरह नहीं पाया तो इसे शामिल करने की कोशिश ना करें। ये काम नहीं करेगा, ये शिफा पर काम नहीं करेगा, ना ही किसी और चीज पर काम करेगा, समझे? ये तो उसी मवाद के साथ जोड़ी गई है जिसके साथ ये बनी हुई है। ये सच है, आपको इसे शामिल करना है, खुदा के वादे के साथ सब्र करना है। जी जनाब, नू ने इस पर ईमान रखा और वो 120 साल तक खुदा के साथ सब्र करता रहा। मूसा खुदा के साथ साबर रहा। जी जनाब, मूसा, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी, मैं उनकी मुसीबत देख चुका हूँ, मैं उन्हें आजाद कराने के लिए आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ भेजने को हूँ। उसके और खुदा के दरमियान थोड़ी सी तकरार हुई और खुदा ने उसे अपना जलाल दिखाया। मूसा ने कहा, मैं जाता हूँ। जब एक मर्तबा उसने खुदा के जलाल को देख लिया, आपने देखा, तो उसने यकीन किया। खुदा ने कहा, मूसा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, एक लाठी। खुदा ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। वो एक सांप बन गई। उसने कहा, ओ मेरे खुदाया। फिर खुदा ने कहा, मूसा, इसे ऊपर उठा लो। अगर मैं इसे एक सांप बना सकता हूँ तो मैं इसे वापस तब्दील कर सकता हूँ। आहा, आमीन। अगर खुदा मुझे एक फितरी जिंदगी दे सकता है तो वो मुझे रूहानी जिंदगी भी दे सकता है। अगर वो मुझे पहली पैदाइश दे सकता है तो वो मुझे दूसरी पैदाइश भी दे सकता है। आमीन। अगर खुदा इसे इलाही शिफा दे सकता है तो वो इन आखिरी अयाम में अपने जलाल में कायम भी रख सकता है। ये दुरुस्त है। मैं इस लाठी को नीचे फेंक कर सांप बना सकता हूँ तो मैं इसे वापस लाठी भी बना सकता हूँ। इसे दुम से पकड़ लो। मूसा ने झुक कर उसे पकड़ लिया तो ये एक लाठी बन गई। खुदा ने वहाँ मार्फत को बढ़ाना शुरू कर दिया। समझे? मूसा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। इसे अपनी बगल में रख लो। ठीक है, अब क्या ख्याल है? कोर से सफेद हो गया। ऐ खुदावंद, मेरे हाथ को देख। मूसा, इसे दोबारा अपनी बगल में रखो। मूसा, इसे पहले की तरह रखो कि ये पहले जैसा हो जाए। उसने इनमें फिर इजाफा करना शुरू कर दिया। समझे? जी जनाब। वो वहाँ आया और पहली मुखालफत का सामना करना पड़ा। वो वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच कर उसने कहा, खुदावंद खुदा फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दो। फराउन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुदावंद का नुमाइंदा होकर आया हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फराउन ने कहा, कौन सी बात माननी होगी? क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं फराउन हूँ। तुम मेरी बात मानो क्योंकि तुम एक गुलाम हो। समझे? फराउन ने कहा, तुम मेरी ताबेदारी में रहोगे या सजा पाओगे? दोनों में से तुम क्या चाहते हो? और क्योंकि उसे इलम था कि वो क्या बात कर रहा था, उसके पास इख्तियार था। वो गया, उसने खुदा से बात की। वो ईमान रखता था, वो जानता था कि वो कहाँ पर था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मुझे कोई निशान दिखाओ। उसने अपना आसा नीचे फेंका और वो सांप बन गया। क्यों? उसने कहा, ये तो घटिया जादुई कर्तव्य है। एक मिनट के लिए यहाँ आओ, यहाँ आओ। यनीस और यमरीस, अपनी लाठियाँ नीचे फेंको। उन्होंने अपनी लाठियाँ नीचे फेंकी और वो सांप बन गई। फराउन ने कहा, अब तुम हकीर शख्स यहाँ मेरे पास आओ। मैं एक मिस्री हूँ और मिस्र का फराउन हूँ, और तुम यहाँ अपने चंद घटिया जादुई कर्तव्य लेकर आए हो, जैसे तुम्हारे कुछ फरेबों में से ज़ेन पढ़ना भी है। आप जानते हैं जो कि मेरा मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ज़ेन, टेलीपैथी या कुछ ऐसे ही। आपने देखा? जी हाँ, ये अपने कर्तव्यों के साथ यहाँ आता है और कहने लगा, अच्छा, जो कुछ तुम करते हो वही कुछ हम भी करते हैं। मूसा ने क्या किया था? उसने ये नहीं कहा, ओ मिस्टर फराउन, मुझे माफ फरमा दे जनाब, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। नहीं जनाब, बल्कि वो खड़ा रहा। आमीन। वहीं खड़ा रहा। उसने दिल में कुछ शक ना किया। खुदा ने कहा, खातर जमा रखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। जो कुछ वो करने को कहे, जब आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं, अगरचे ये लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो भी कायम रहें, साबिर रहें। मूसा ने कहा, तुम जानते हो, जब मैं इस बुनियाद पर रखा गया तो वहाँ सबर रखा गया था, इसलिए मैं इंतजार करूँगा और देखूंगा कि खुदा क्या करेगा। वहाँ सांप एक दूसरे पर मस्कारते और फुंकारते हुए इर्द गिर्द रेंग रहे थे। पहली बात आपको मालूम है, मूसा का सांप गया और हड़प 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 और उन सबको निगल गया। मूसा साबिर था। वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो असर नो कुवत पाएंगे, वो अकाबों की मानित बालों पर पाएंगे। क्या ये दुरुस्त है? समझे जनाब? वो दौड़ेंगे मांदा ना होंगे, चलेंगे पस मुर्दा ना होंगे। समझे? बस सिर्फ खुदावंद का इंतजार करेंगे, सबर रखें। समझे? जी जनाब। जब इसराइल का खुरूज होने वाला था तो कई बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मूसा ने इंतजार किया। फिर उसे बियाबान में जाना पड़ा। ये महज 3 या 4 दिन का सफर था। ये वहाँ से सिर्फ 40 मील दूर था जहाँ से उसने पार किया था। ठीक इसी जगह से उन्होंने दोबारा अबूर किया। लेकिन मूसा ने बियाबान में 40 साल इंतजार किया, सबर किया। आमीन। ये दुरुस्त है। उसने 40 साल इंतजार किया। ओ जी जनाब, हमें भी एक दूसरे के साथ सब्र से पेश आना चाहिए। समझे? एक मर्तबा हम कभी कभार हम एक दूसरे से बड़ी बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें मूसा की मानित बनना है। मूसा लोगों के साथ सब्र से पेश आता था। गौर करें, क्या वजह हुई कि वो आगे ना जा सके? समझे? अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने इस पैगाम को टैबरनेकल तक लाने की कोशिश की है, ये देखने के लिए कि टैबरनेकल का हर रुकन इसके मुताबिक बन जाए, ऐसा करना दुश्वार है। मैंने कोशिश की है कि 33 सालों में मैं सबर रहा हूँ। समझे? सबर देखें। औरतें अभी भी पहले की तरह बालों को तराशती हैं, लेकिन सबर करो। समझे? सब्र करो, इंतजार करो, ये करना होगा। अगर आप इसे हासिल कर सके तो इसे तामीर करने की कोशिश ना करें, सब्र करें। हत्ता के एक दफा जब बागी लोगों के ग्रोह ने बेसब्री का मुजाहरा किया, उन्होंने मूसा से वो काम करवाया जो कि गलत था, लेकिन तब जब उन्होंने ऐसा किया तो खुदा उनके काम से नाराज हुआ। खुदा ने कहा, मूसा इनसे अपने आप को अलग कर लो, मैं इस सारी जमात को मार डालूंगा और नई शुरुआत करूंगा। वो रखना में खड़ा हो गया और उसने कहा, खुदा ऐसा मत कर। क्या हुआ? उन लोगों के साथ साबर रहा जो उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे। कितना अच्छा हो अगर हम ऐसा कर सकें। अगर आप नहीं कर सकते तो इस पर तामीर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई तब्दीली ना होगी। आप जानते हैं कि यही तरीका है, उसके साथ जुड़ जाएं, और हर एक के लिए यही तरीका है कि उसके साथ जुड़ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जिंदा खुदा के रहने की जगह इसकी कद्दोकामत नहीं बन सकते। अगर आपने सब्र को नहीं पाया तो एक दूसरे के साथ सब्र से पेश आएं, ठीक है? अब्रानी सब्र रखते थे, यकीनन वो साबिर थे। खुदा का वादा उनके साथ था और खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम किसी मूरत के आगे सर ना झुकाना, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और कहा, हमारा खुदा कादिर है, लेकिन हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। सब्र रखें, ये जानते हुए कि खुदा उन्हें आखिरी दिनों में ऊपर उठाएगा। बहरहाल इस जिंदगी का मतलब देरपा नहीं है, समझे? खुदा इन्हें आखिरी अयाम में जिंदा करेगा, लेकिन जहाँ तक तेरी मूरत के सामने झुकने की बात है तो हम नहीं झुकेंगे। अब हम जो कैसर का है वो कैसर को देंगे, लेकिन जब कैसर खुदा के मामले में दखल अंदाजी करेगा तो खुदा अव्वल है। खुदा ने कहा, तुम उसके सामने ना झुकना, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, और अगर उसने ऐसा ना भी किया तो भी मैं तेरी मूरत के सामने नहीं झुकूंगा। उसने कहा, ठीक है, वहाँ आग की भट्टी है, ठीक है। उसने कहा, ओ मेरा ख्याल है कि आज रात तेज बारिश होगी और इसे बुझा देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, अभी तक सब्र है। अगली सुबह जब उन्हें अदालत के सामने लाया गया जहाँ नबूकदनज़र बैठा था, उसने कहा, ठीक है नौजवानों, क्या तुम मुझे अपना बादशाह तस्लीम करते हो? यकीनन है बादशाह, अब तक जीता रहे, अब मेरी मूरत के आगे सजदा करो। ओ नहीं, ठीक है, तुम्हें जला दिया जाएगा, तुम दानिशमंद हो और होशियार हो, तुम लोगों ने हमेशा हमारे लिए अच्छा काम किया है, हमारी बादशाह के लिए तुम बाइस से बरकत रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसका ऐलान कर चुका हूँ, अब ऐसा करना होगा, मैं तुम्हें वहाँ उसमें फेंकना नहीं चाहता। ओ साहिबो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं जानता हूँ ये सब ठीक लगता है, लेकिन हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ। उन्होंने सब्र रखा, एक दूसरे पर निगाह करते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। ये ठीक है, सब ठीक है, हम साबिर हैं। पहली सीढ़ी चढ़े, वहाँ खुदा ना था, दूसरे कदम पर खुदा वहाँ भी ना था, तीसरे कदम पर, चौथे कदम पर, पांचवें कदम पर, सिर्फ चलते ही रहे, मगर वो अब भी वहाँ ना था। और वो आग की जलती हुई भट्टी में दाखिल हो गए और उन्होंने सब्र रखा, मगर वो वहाँ मौजूद था, समझे? उनके हाथों और पांव की रस्सियां जलाने के लिए आग काफी थी। जब उनके कदमों ने भट्टी की तह को छुआ, वो वहाँ था, समझे? वो साबिर थे। इसी तरह से दानियल भी था, दानियल साबर था, यकीनन वो इसे छोड़ने के लिए तैयार ना था। नहीं जनाब, उसने क्या किया? उसने खिड़की खोली और फिर भी दुआ की, ये खुदा का हुक्म था। वो सब्र के साथ कायम रहा, उसने ये जानते हुए खुदा का इंतजार किया कि वो अपने कलाम को पूरा करेगा। उन्होंने उसे शेरों की गार में फेंक दिया और कहा, अब तुम्हें शेर खा जाएंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, वो साबर था, क्यों? ठीक है, मैंने ये तमाम वक्त खुदा का इंतजार किया है, और अगर मुझे चंद हजार साल और इंतजार करना पड़े तो मैं आखिरी अयाम में दोबारा जी उठूंगा। बस सब्र के साथ इंतजार करें। पालूस साबर था, यकीनन उसने सब्र किया। देखें पालूस को क्या कुछ करना पड़ा। सब्र के मुतल्लिक बात करें, पेंतिकोस के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? जैसे उन्होंने हुक्म पाया तब तक इंतजार किया, समझे? ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। कितनी देर तक? ये कोई सवाल नहीं कि कितनी देर तक होगा, उन्हें जवाब मिल गया, इंतजार करो। जब तक वो ऊपर बाला खाना में गए और कहा, ठीक है नौजवानों, अब शायद 15 मिनटों में रूल कुछ तुम पर नाजिल हो जाए और हम अपनी खिदमत शुरू कर दें। 15 मिनट गुजर गए, कोई भी ना आया। एक दिन गुजर गया, कुछ ना हुआ। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात दिन गुजर गए। उनमें चंद एक ने शायद कहा, अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम इसे पहले ही नहीं पा चुके? नहीं 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 नहीं, यही बात है, नहीं ये दुरुस्त है। नौजवानों बहुत हुआ, अब बाहर चलें। अब्लीस ने कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम पा चुके हो, जाओ और अपनी खिदमत का आगाज करो। नहीं नहीं नहीं, अभी तक हमने नहीं पाया। क्योंकि उसने कहा आखिरी दिनों में क्या होगा, ऐसा होगा मैं अजनबी होंठों और बेगाना जुबानों में से इनसे बातें करूंगा और जो कुछ मैंने कहा है वो हक है। देखें यसाया 28:19 में कहा गया है ये वही है जब तुम उसे पाओगे। कैसे? जब वो नाजिल होता है तो हमें क्यों कर इलम होगा, जब ये नाजिल होगा तो हमें खबर हो जाएगी, हम इसे जान जाएंगे, ये बाप का वादा है। उन्होंने वहाँ 9 दिन इंतजार किया और फिर 10वें दिन रूल कुछ से मामूर हो गए, उन्होंने सब्र से काम किया। अब अगर आपने इस तरह का सब्र हासिल कर लिया है जब खुदा आपसे वादा करे और आप उसे बाइबल में देखते हैं कि ये मेरा है, तब इंतजार करें। तब अगर इस तरह का सब्र आप में पाया जाता है तो इसे अपने ईमान में शामिल कर लें। और आपने देखा है अब आप किस बुलंदी पर जा रहे हैं, अब आप ऊपर तामीर होते जा रहे हैं, ठीक है, घड़ी की सुइयां अपने रास्ते पर गामजन है, तो भी क्या ऐसा नहीं? ठीक है तो फिर इसे अपने ईमान में शामिल कर लें, हमेशा इसे अपने आगे रखते हुए और याद करते हुए कि ये उसका वादा था, मेरा वादा नहीं था, ना ही पासबान का, हमारे प्यारे भाई नेवल का वादा नहीं, ये किसी और खादम ने वादा नहीं किया, ना ही किसी मनाद ने, ना ही किसी पोप ने, और ना ही जमीन के किसी और आदमी का, ये वादा खुदा ने किया था और खुदा ने जिस चीज का वादा किया है उसे करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ये जानकर खुदा ने इसका वादा किया है इस तरह का ईमान रखते हैं तो कहें भाई ब्रैनम मैं बीमार हूँ, मुझे बड़ी शिद्दत से इसकी जरूरत है, इसे कबूल करें, ये एक नेमत है जो आपको दी गई है। जी जनाब, अगर आप इस पर ईमान नहीं लाते, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ और फिर इसे भूल जाते हैं, ये बात है, खत्म हो चुका है, समझे? सब्र रखें, अगर आप सब्र करते हैं, अगर आप सब्र नहीं करते तो आप इस इमारत की तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, समझे? ये एक चीज बाकी तमाम को ढेर बना देगी, आपको इसे हासिल करना है, इसे मत शामिल करें क्योंकि ये आपकी इमारत को तबाह कर देगी। अगर आपने सब्र हासिल नहीं किया, अगर आपके पास नेकी नहीं है अपने ईमान में शामिल करने के लिए जो आप कहते हैं कि आपके पास है, और अगर आपके पास कोई ईमान नहीं और इसमें नेकी शामिल करना चाहते हैं तो ये आपके ईमान को तोड़ देगी, समझे? फिर आप कहते हैं ठीक है अब एक मिनट इंतजार करें, किसी भी तरह शायद ये तमाम मखलूत हो, शायद कोई खुदा नहीं है, हो सकता है खुदा खुदा नहीं है, देखें ये चीज इनमें शगाव डाल देगी, समझे? लेकिन अगर आपके पास हकीकी ईमान है तब हकीकी नेकी इस पर रख दें, फिर हकीकी मार्फत, फिर हकीकी परहेजगारी, फिर खालिस सबर रखें, समझे? आप दुरुस्त सिमत बढ़ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। पांचवी चीज, दीनदारी का इजाफा करें। ओ मेरे खुदाया, फिर दीनदारी ही का इजाफा होना है। दीनदारी से क्या मुराद है? मैंने 4 या 5 लुगात में इसे तलाश किया तो भी मुझे इसका मतलब नहीं मिल सका। आखिरकार जब मैं भाई जेफरीज के पास था, हमने एक लुगात में इसके मैनी तलाश कर ही लिए। दीनदारी का मतलब है खुदा की मानित बनना। ओ मेरे खुदाया, ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी और सबर को हासिल करने के बाद तब खुदा की मानित बनो। वाह, आप कहते हैं भाई ब्रैनम मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ जी हाँ, आप कर सकते हैं। एक मिनट में मैं आपके लिए चंद एक हवाला जात पढ़ता हूँ, मत्ती 5:48, और इस अकेले हवाले को लेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहता है। मत्ती 5:48, और देखें कि आया आपको खुदा की मानित बनना चाहिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है तुम खुदा हो, यीशु ने भी ऐसे ही कहा, क्यों? तमाम नेकी सब चीजें जो खुदा में हैं वो तुम में है, मत्ती 5:48। बस यीशु मुबारकबादियों पर बात कर रहे थे, बस चाहिए कि तुम कामिल हो, PERFECT। कामिल क्या है? कामिल जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। ऐसा करने से पहले आपको एक राह बताई गई है, ये सब चीजें पहले शामिल होनी है, फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो वो आपसे कहता है कि कामिल बनो, दीनदारी, खुदा के बेटे और बेटियाँ, ये दुरुस्त है। इस जमन में और कितनी बातें कहूँ। आइए इफिसियों 4 में चलें और देखें इफिसियों की किताब इसके मुतल्लक क्या कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इफिसियों 4 बाब और उसकी 12वीं आयत से शुरू करते हैं। इफिसियों 4 बाब 12वीं आयत से शुरू करते हैं, ठीक है, आइए 11वीं आयत से शुरू करते हैं। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी बनाकर भेजा। याद करें गुज़िश्ता रात क्या सीखा था, कि किसी दूसरे शख्स की जगह लेने की कोशिश ना करें, समझे? और बाज को मुबशिर और बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद, क्या खुदा की कामलियत के लिए? क्या इसे इसी तरह पढ़ना है? किन की कामलियत के लिए? मुकदसों की मुकदसीन कौन है? पाक किए गए, आमीन, वो जिन्होंने नीचे से इब्तदा की है ताकि मुकदस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए, यीशु मसीह की खिदमत का, और मसीह का बदन तरक्की पाए, तरक्की के लिए, इसकी तामीर करने के लिए, तरक्की के लिए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, इस यकीन के साथ, ओ मेरे खुदाया, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक पहुंच ना जाएं। जो कामिल हैं, वो दीनदारी पाते हैं। आपको अपने ईमान में दीनदारी को बढ़ाना है। देखें, आपने नीचे नेकी से शुरू किया, फिर आपने मार्फत पाई, फिर परहेजगारी पाई, फिर सबर पाया, अब आप दीनदारी पर हैं, दीनदारी। ओ मेरे खुदाया, वक्त भाग रहा है, आए देखें। लेकिन आप जानते हैं दीनदारी से क्या मुराद है? आप ये गीत गाते हैं, यीशु की मानित बनो, यीशु की मानित बनो, मैं जब तक जमीन पर रहूं, उसकी मानित बनूं, जीवन के सारे सफर में जमीन से जलाल तक मैं बस यही चाहूंगा कि उसकी मानित बनूं, ये दीनदारी है। जब उसके एक गाल पर तमाचा मारा गया तो उसने दूसरा फेर दिया, जब उसके साथ तमस्कर अमेज लहजे में बोला गया तो भी खामोश रहा, उसने बदला में बुराई ना की, समझे? दीनदारी हमेशा एक चीज की खोज में रहती है कि मैं सिर्फ वही करूं जिससे मेरे बाप की खुशी पूरी हो, समझे? जी जनाब, हमेशा यही है दीनदारी, समझे? देखें, जब आप यहाँ तक कर लिया है तो अब आप खुदा के बेटे के पूरे कद तक पहुँच रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ आपको इसे हासिल करना है, और आप उस वक़्त तक आगाज नहीं कर सकते जब तक आप इसे हासिल नहीं करते। अब आपको मोर के परों के साथ स्याह परिंदा याद होगा, इसे हरगिज मत भूलें, समझे? जब तक आप हकीकतन नए सिरे से पैदा ना हो, इसमें इजाफा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जानते हैं ये काम नहीं करेगा और आप इससे काम नहीं ले सकते, ये या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ ये कहीं पर तोड़ फोड़ कर देगा। लेकिन जब आप नए सिरे से पैदा शुदा फाख्ता बन जाते हैं तो आप किसी बनावटी चीज को नहीं लेते, ये तो आप में बाशमूल है, समझे? ये जाहिर हो जाती है, ठीक है, अब कामलियत में बढ़ते हैं, ठीक है। फिर छठी चीज का इजाफा करें, यहाँ बाइबल ने कहा ब्रादराना उल्फत बढ़ाओ, ब्रादराना उल्फत, अब ये अच्छाई है, ठीक है, यहाँ छठी चीज है, और फिर सातवीं है, ठीक है, ब्रादराना उल्फत बढ़ाओ, ठीक है। जब हम ब्रादराना उल्फत पर आते हैं तो इस मामले में अपने आप को इसकी जगह पर रखें। अब आप कहते हैं मेरे भाई ने मेरा गुनाह किया है, पत्रस ने कहा क्या मैं इसे माफ कर दूं? उसने कहा क्या दिन में 7 मर्तबा? यीशु ने कहा 7 के 70 मर्तबा, समझे? ब्रादराना मोहब्बत, अब आप देखें, अगर कोई भाई गलती करे तो इसके साथ बेसब्री का मुजाहरा ना करें, समझे? नहीं, समझे, जैसे भी हो सके जाइए और मेहरबानी से पेश आए। कुछ अरसा पेशतर किसी ने कहा, उसने कहा जिस तरीके से आप अमल करते हैं, आप किस तरह इन चीजों पर ईमान रख सकते हैं और अभी भी असेंबलीज ऑफ गॉड में जाते हैं और वदानियत वालों में जाते हैं और बाकी सब में भी? फिर देखें, ब्रादराना मेहरबानी, समझे? समझे, उम्मीद करते हैं किसी दिन आ जाएगी, समझे? इसके साथ सब्र से रहें, समझे? परहेजगारी के साथ इसकी बर्दाश्त करें और समझने की मार्फत रखें कि वो क्या ईमान रखता है, और याद रखें कि ये इसके दिल में है, यही कुछ है, नेकी जो के आप में है, इसके साथ मेहरबानी की जाए, हलीमी से इसको ये ईमान रखते हुए कि खुदा किसी दिन कलीसिया में इसको लाएगा, समझे? ब्रादराना उल्फत, सातवीं चीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझे? 7 चीजें। फिर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली चीज, फिर इसके बाद नरम दिली को शामिल करें जो के मोहब्बत है, ये सिरे का पत्थर है। इन्हीं दिनों में से एक दिन कलीसिया, अब मेहरबानी से मैं इस टेप के जरिए बता रहा हूँ, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ मैं इसे बतौरे अकीदा नहीं सिखा रहा, लेकिन जो मैं खुदा की मदद से दिखाना चाह रहा हूँ कि दरअसल ये क्या है कि ये पहली बाइबल जो खुदा ने आसमान में लिखी मुंतकता अलबरुज थी, ये कुंवारी से शुरू होती है और ये बुर्ज असद शेर पर खत्म होती है, और जब मैं छठी और सातवीं मोहर में जाता हूँ तो आपको इलम होगा कि जब दूसरी मोहरों को खोला गया तो वहाँ मुंतकता अलबरुज का निशान बुर्जे सरतान एक केकड़ा हम जिस जमाने में रह रहे हैं जाहिर हो चुका है, और जब अगली मोहर को खोला गया तो उसने बुर्ज असद यानी शेर को जाहिर किया, यानी मसीह की आमदेसानी, वो खुदा सबसे पहले कुंवारी के वसीला आया और इसके बाद बुर्ज असद का वो शेर आता है। मैं इसे लाऊंगा। अब पता नहीं कि मुझे इस शुभ वक्त मिले या ना मिले। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। ये एकदम ठीक मखरूती बुर्ज के मुताबिक है। खुदा ने दूसरी बाइबल लिखी, हन्नूक ने उसे लिखा और इसे मखरूती बुर्ज में डाल दिया। और तीसरी, खुदा हमेशा तीन में कामिल है, यानी फिर उसने अपने आप को अपना कलाम बनाया। यहाँ अब याद रखें, मखरूती बुर्ज में मेरा अंदाजा है कि आप में बहुत से फौजी जो मिस्र गए थे, आप जानते हैं मखरूती बुर्ज के ऊपर टोपी नहीं है और ना कभी थी, और वो पत्थर सर था और उनके पास बाकी हर चीज थी लेकिन अभी तक टोपी नहीं थी। अगर आपके पास जेब में एक डॉलर का नोट है, अगर आप डॉलर के नोट पर देखें तो आपको उसकी दाहिनी तरफ अमेरिकन झंडे के साथ अकाब मिलेगा और इस पर लिखा है रियासत-ए-हाय मुत्तहिदा की मोहर, और इसकी दूसरी जानब एक मखरूती बुर्ज बना हुआ है जिस पर एक बड़ा सा सिरे का पत्थर है और एक इंसानी आंख भी है, और इस तरफ लिखा है अजीम मोहर। ठीक है, अगर ये अजीम कौम है तो ये अजीम मोहर उनकी कौमी मोहर क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाएं, खुदा ने उनसे अपनी गवाही लेनी है। लेकिन एक दिन मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, वो इलाही शिफा के मुतालिक कुछ मुझसे खामखा उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। हम गली में खड़े हुए थे, उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, आप सिर्फ लोगों को उलझन में डालते हैं। उसने कहा, दुआओं के अलावा और कोई शिफा नहीं है। मैंने मुड़कर उसकी कार पर इस निशान को देखा जहाँ लकड़ी पर सांप लटका हुआ था। मैंने कहा, बेहतर है तुम इस निशान को कार से उतार डालो फिर, क्योंकि तुम्हारा अपना निशान ये शहादत देता है कि खुदा शाफी है। एक हकीकी डॉक्टर इस बात पर ईमान रखता है और ये उनको लर्जा देता है। जी जनाब, लकड़ी पर सांप, मूसा ने सांप को लकड़ी पर ऊंचे पर लटकाया। खुदा ने कहा, मैं तेरा खुदावंद हूँ जो तुझे सब बीमारियों से शिफा देता हूँ, और उन्होंने इलाही शिफा के लिए सांप पर निगाह की और फिर भी वो इसके खिलाफ शहादत देते हैं और इनका अपना निशान इनके खिलाफ गवाही देता है। वाह, यहाँ हम कौम के लोगों को तरह तरह की बातें कहते सुनते हैं, वो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं और इनके अपने ही नोट, अपनी करेंसी इस बात की शहादत देती है कि तमाम कायनात की मोहर खुदा है। देखें कि क्या वो आंख डॉलर के नोट पर बनी हुई है। ये अजीम मोहर है, ये कभी भी मखरूती बुर्ज की चोटी पर नहीं रखा हुआ था। वो इसे ना समझ सके, क्यों? सिरे के पत्थर को रद्द कर दिया गया जो के सर यानी मसीह है, लेकिन जो किसी दिन आएगा। अब नेकी की तामीर करते हुए, इस यादगार की तामीर, कदोकामत की तामीर है। देखें, इसकी बुनियाद को शुरू करना है जो के ईमान, नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सबर, दीनदारी और बरादराना उल्फत है। इससे क्या होता है? इसके बाद वो सिरे के पत्थर का इंतजार कर रहे हैं जो के मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, वो हाकिम है और वो इन सब चीजों की ताकत है। यही दुरुस्त है। जी जनाब, ये यहाँ है, बिल्कुल इसी जगह पर। आपने देखा, मैंने इन तमाम कामों में यहाँ और वहाँ अपने दरमियान छोटी लहरों को आते हुए पाया है। ये क्या है? रूल कुछ मसीह के जरिए नीचे आता है, समझे? रूल कुछ इन सब से ऊपर है, इसको आपस में जोड़े हुए है, तामीर कर रहा है। क्या तामीर कर रहा है? सिरे के पत्थर के लिए एक कामिल कलीसिया जिसका वो सर है। ये दोबारा क्या हो रहा है? ये सात कलीसियाओं और सात पैगंबरों के वसीला से जाहिर हो रहा है। ये इस जगह से शुरू हुआ है। कलीसिया पहले किस जगह पाई गई? पैंती कोस्टल कलीसिया पहले कहाँ पाई गई थी? इफ्सस के मकाम पर, मुकद्दस पालूस के वसीला से, जो इफ्सस की कलीसियाई जमाने का सितारा है, यानी इफ्सस का। दूसरा कलीसियाई जमाना स्मुरना का था, नेकी, अरिनियस, मर्द अजीम जो पालूस की मुनादी पर कायम रहा। अगला कलीसियाई जमाना पुरगमन का था, जो के मार्टन था। मार्टन वो अजीम शख्स था जो कायम रहा, पालूस, अरिनियस और मार्टन। और फिर थवाथिरा में कोलंबा आता है, क्या आपको याद है? ये यहाँ है, इसीलिए ये बाहर निकल आई। कोलंबा के बाद तारीख दौर शुरू होता है। फिर सर्दीस का जमाना आता है जिसका मतलब है मौत। लूथर आया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? सर्दीस में लूथर के बाद फिर कौन सा जमाना आता है? फिर फल्दलिफिया का जमाना आता है, दीनदारी, वैसरी से पाकिजगी, रास्तबाज सिर्फ ईमान से जीता रहेगा। लूथर ने यही कहा था, वैसरी के जरिए से तकदीस आई। लोदिकिया के वसीला से ब्रादरन उल्फत आई, और हम ईमान रखते हैं कि एलिया के दूसरे जहूर का अजीम पैगाम इन आखिरी दिनों में जमीन पर फैल जाएगा। ये है आपका मकाम, सात कलीसियाई जमाने, सात अकदाम। खुदा ऐसे अपनी कलीसिया तामीर कर रहा है। इनफरादी तौर पर इसमें आए, जलाल और खुदा की कुदरत इसी के वसीला से नीचे आ रही है और इसे बाहम जोड़ रही है। इसीलिए तो पेंटिकॉस्टल लोगों ने लूथरन को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बगैर ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, वेस्ली और दूसरी चीजों को निकाल दिया। आपने देखा, वो हैकल के इस हिस्से में रहते थे। इसी तरह कुछ लोग ऊपर बुलंदी तक आते हैं और फिर गिर जाते हैं, लेकिन इसका असली हिस्सा ही इस इमारत को बनाने में लगा रहता है। मैं बहाल करूंगा, खुदावंद फरमाता है। क्या आपको शजरे दुल्हन याद है? क्या आपको शजरे दुल्हन के मजमून पर पैगाम याद है? उन्होंने इसे खा लिया, लेकिन उसने छांटा। इस पर तंजीमी शाखें निकल आईं, उसने उन्हें तराश दिया। उन्होंने किसी कलीसिया को बढ़ा लिया, तंजीमी डालियां, उसने उन्हें कलम कर दिया। लेकिन इस दरख्त का दिल निशोनमा पाता रहा, शाम के वक्त रोशनी होगी। समझे, जब मसीह आता है जो रूल कुछ है, यीशु आता है और फिर अपने आप को कलीसिया के सर के तौर पर कायम करता है और वो इस कलीसिया को बतौरे अपना बदन उठा खड़ा करता है। इस बदन में खुदा हमसे जिस तरह तवक्को कर रहा है कि इनफरादी तौर पर निशोनमा पाएं, इसी तरह से वो अपनी कलीसिया की निशोनमा करता है। हर कलीसियाई जमाना एक बड़ी कलीसिया बन जाता है, समझे। देखें, ये जो कुछ भी थे उसे इन आदमियों की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी कि वो क्या था, समझे। लेकिन वो अपनी कलीसिया को इस तरह से ऊपर लाया, वो अपने लोगों को ऊपर लाने के वसीला से अपनी कलीसिया को ऊपर ला रहा है। फिर पत्रस यहाँ कहता है, पहली चीज से लेकर सातवीं चीज तक ईमान, नेकी, देखें वो ऊपर आ रहा है, मार्फत, परहेजगारी, सबर, दीनदारी, ब्रादरना उल्फत और ब्रादरना उल्फत पर फिर मोहब्बत, यानी रूलकुस मसीह, रूलकुस की जात में, आप में, रूलकुस के हकीकी बपतिस्मा के वसीला से आता है और आप अपने अंदर उनकी खसूसियात को सरबा मोहर पाते हैं। फिर खुदा इस इमारत में जो खैमा कहलाता है और जिंदा खुदा के रहने का जिंदा मकदस है, जब कोई शख्स इस तरह की चीजें अपने अंदर रखता है तब रूल कुछ उस पर उतर आता है। कुछ फर्क नहीं, शायद आप गैर जुबानें बोल सकते हो, आपसे खुदा की कोई भी नेमत जाहिर हो सकती हो, शायद आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब तक ये जोहर आप में आना बाकी है, आप अभी तक असल हकीकी बुनियाद से हटे हुए हैं। लेकिन ये सफात निशोनमा पाती हैं, जैसा कि आप एक को दूसरी में बढ़ाते हैं, तब आप जिंदा यादगार हैं, आप एक जिंदा मुतहरक मुजस्मा हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बुत प्रस्त, बुत तसव्वुराती खुदा के सामने सजदा करते हैं और एक तसव्वुराती तरीके से एतकाद रखते हैं कि तसव्वुराती देवता उनकी बात का जवाब देता है। ये शिर्क है, ये रोमनिज्म है। वो हर तरह के मुकद्दसीन और ऐसी हर चीज के सामने झुकते हैं, जैसे के मुकद्दस सिसलिया जो घर का देवता है, और उनके इस तरह बहुत से देवता हैं, वो उनके सामने झुकते हैं और हकीकतन वो तसव्वुराती तौर पर उन पर ईमान रखते हैं। उनके सच्चे जिंदा खुदा के साथ क्या मुशाबत है? लेकिन जब हम तसव्वुराती तरीके से नहीं बल्कि अपने जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, तो ये एक जिंदा नेकी, जिंदा मार्फत, जिंदा सबर, जिंदा दीनदारी और एक जिंदा कुवत खुदा के वसीला से आती है, ताकि जिंदा शख्स को जिंदा खुदा के कदो कामत की जिंदा शबी बनाए। वो क्या कर रहा है? वही कुछ जो यीशु ने किया। वो इस तरह चल रहा है जिस तरह वो चला। वो वही कुछ कर रहा है जो उसने किया, क्योंकि ये कोई तसव्वुराती चीज नहीं है, ये हकीकत है जो इसे साबित करती है। क्या आप समझते हैं कि इससे मेरी क्या मुराद है? देखें किस तरह से ये सफात, ये अमारती सामान कलीसियाई जमानों के साथ कलीसियाई पैगंबरों की तशबीह है। अब इन अयाम में से किसी एक में हम इन अल्फाज में से हर एक का मुतालिया करेंगे और दिखाएंगे कि ये इसे साबित करते हैं। ये सब बाहम साथ साथ चलते हैं, यकीनन, समझे। ओ मेरे खुदाया, ये कैसा बेहतरीन है। देखें कि ये जानता है कि ये क्या है और ये क्या करता है। अब ये वो घर है जिसमें खुदा रहता है। ये कोई ऐसी इमारत नहीं जहां ऊपर बुलंदी पर एक बड़ी घंटी और एक ऊंचा बुर्ज हो, समझे। लेकिन ये तो तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया है, ऐसा बदन जिसमें वो सुकूनत कर सके, जिसमें खुदा चहलकदमी कर सके, जिसमें से खुदा देख सके, जिसमें से खुदा बात कर सके, जिसमें से खुदा काम कर सके। आमीन। खुदा का जिंदा आलाकार, खुदा आप में रहकर दो पांव पर चलता है। तारीफ हो। راستباز خدا کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. خدا تم میں چلتا ہے کیونکہ تم وہ لکھے ہوئے خط ہو جسے سب آدمی پڑھتے ہیں. اگر مسیح جیسی زندگی آپ میں ہے تو آپ کی زندگی ایسی ہوگی جیسی مسیح کی تھی. جیسا میں نے ہمیشہ کہا ہے, آڑو کے درخت سے ارک نکال کر اگر بذریہ طریقہ انتقال اسے سیب کے درخت میں منتقل کر سکیں تو سیب کا درخت آڑو اگائے گا. یقیناً ایسا ہی ہوگا. کوئی بات نہیں, ڈالیاں کیسی نظر آتی ہیں؟ اس میں سیب کے درخت کا ارک ڈال دیا گیا ہے. دیکھیں, یہ کوئی بھی درخت ہو, سمجھے, سیب کے درخت سے تمام زندگی نکال لیں اور اسے ایک دوسرے میں منتقل کر دیں, اور آڑو کے درخت میں سوراخ کر کے اسے سیب کے درخت میں منتقل کر دیں, ارک کا انتقال کر دیں. کیا ہوتا ہے؟ اب یہ مزید آڑو نہیں اگائے گا, سمجھے؟ نہیں جناب, یہ نہیں اگائے گا. اگر آڑو کے درخت میں سے سیب کے درخت میں زندگی آتی ہے تو اب یہ مزید سیب پیدا نہیں کرے گا, یہ مزید آڑو ہی پیدا کرے گا. دیکھا, سمجھے, کیونکہ اس میں کوئی اور زندگی آ چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں ایک جنگلی کدو سے زیادہ کچھ نہ جانیں, سمجھے, اور وہاں ہمارے لیے کچھ نہیں کیونکہ ہم سب گناہ اور خطا میں مر گئے ہیں. ہم سب ایسی ہی صورتحال میں ہیں, اور پھر ہم نے اپنے آپ کو بذات خود گرا دیا ہے. آپ اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکتے ہیں جبکہ خدا اپنی انتقال کی ٹوپ لیتا ہے جو کہ یسوع مسیح کا نام ہے, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات پائیں, اور وہ مسیح کی زندگی ہم میں منتقل کرتا ہے. پھر ہمارا ایمان ویسا ہی ہوگا جیسا کہ مسیح کا بھی تھا, اور مسیح کے ایمان کی بنیاد فریسیوں اور صدوقیوں پر نہ تھی, اور نہ ہی ان کے ظروف, کیتلیوں اور ان کے مٹکوں اور ان کی طہارت پر تھی. اس کی بنیاد خدا کے کلام پر تھی. آمین. قصہ مختصر, مسیح خدا کا کلام تھا اور کلام مجسم ہوا, اور جب ہم اس کی قوت میں سے اپنے اندر لے سکتے ہیں تو ہم اپنی سوچ کو مار ڈالتے ہیں اور ہمارا ایمان اصل ایمان بن جاتا ہے. ہاللویہ. پھر مسیح کی زندگی ہم میں منتقل ہو جاتی ہے اور ہم خدا کی زندہ تخلیق بن جاتے ہیں, یعنی اس کے رہنے کی جگہ جہاں روح القدس اپنی الہی برکات کی کرنیں بیچ سکے, اور ہم مسیح کی قد و قامت میں بن جاتے ہیں. یسو نے کہا, کیا یہ نہیں لکھا تم نے میرا یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیا یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ کیا تمہاری اپنی شریعت نہیں کہتی؟ جیسا کہ موسیٰ, ایلیا اور ان انبیاء کی طرح جو خدا کی نزدیکی میں رہ رہے تھے, اور خدا نے اپنا آپ ان میں منتقل کر دیا تھا جنہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے کلام کیا. فکر نہ کرو تم کیا کہو گے, کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارا آسمانی باپ ہے جو تم میں رہتا ہے, وہ کلام کرے گا, کیونکہ اس کی اپنی زندگی تو ختم ہو گئی تھی, اس لیے اس کے الفاظ اس کے اپنے نہ تھے. اگر آپ مر جاتے ہیں, آپ ایک شخص کا خون باہر نکال لیتے ہیں, آپ اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں. اس میں مشکل یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی ذخیرہ کیا ہی نہیں. آپ ایک شخص کا خون باہر نکال لیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اور خون واپس لگا دیں, وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. آپ نے اس کا خون باہر نکال لیا تھا, اور اب ہم اس میں یسوع مسیح کا خون لگا دیں تو دیکھیں, اور وہ یسوع مسیح کا ایمان, یسوع مسیح کی نیکی, یسوع مسیح کی معرفت, یسوع مسیح کی پرہیزگاری, یسوع مسیح کا صبر, یسوع مسیح کی دینداری, یسوع مسیح کی برادرانہ الفت اور خدا کی محبت جو کہ یسوع مسیح ہے لائے گا. وہ سر ہے جو آپ کو قابو رکھتا ہے, اور ایمان آپ کے پاؤں کی بنیاد ہے. آمین. وہ سر کے تابع لوگوں کو لیتا ہے. یہ ہے آپ کا مقام. خدا کا کامل شخص وہ ہے جو یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے. پھر خدا اپنی کلیسیا کو ایک دلہن, ایک عورت کے طور پر پیش کرتا ہے. خدا اپنی کلیسیا کو ایک دلہن کے طور پر پیش کرتا ہے, اور جس طرح سے وہ ہر ایک کو انفرادی طور پر اپنا بیٹا ہوتے ہوئے دلہن میں شامل کرتا ہے, اور وہ دلہن کو ان ادوار سے نکال لاتا ہے جب تک کہ ایک مکمل کلیسیا اس میں نہ لے آئے. میرے پاؤں حرکت کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنے کو میرا سر کہتا ہے. اب یہ میرے ہاتھ کی طرح حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میرے پاؤں ہیں. لوتھر وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو ہم نے کیے, اور نہ ہی میتھوڈسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ اور تھے, سمجھے. اور پاؤں اس لیے حرکت کرتے ہیں کیونکہ سر اس طرح کہتا ہے. سر یہ کبھی نہیں کہتا اب پاؤں ہاتھ بن جائیں اور کان آنکھیں بن جائیں, سمجھے. لیکن ہر زمانہ میں خدا نے یہ چیزیں اپنی کلیسیا میں رکھی اور انہیں اس طرح ترتیب دیا. कि उनमें से इंफरादी तौर पर हर एक के पास ये खसूसियात हैं, और ये मखलूक जब ये मुकम्मल होगी तो खुदा की कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब मखलूक इसकी कलीसिया में बतौर खुदा के खादम के तकमील हो जाएगी तो वो उठाई जाएगी। तारीफ हो। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? ये है आपका मकाम, ये मुकम्मल चीज है। एक आदमी पालूस आकर बुनियाद डालता है, अरिनियस इस पर इजाफा करता है, इससे अगला इस पर इजाफा करता है, इससे अगला इस पर और इजाफा करता है, इसके बाद आने वाले ने वो और वो और वो बढ़ाते रहे, तब तक आखिरी जमाना आ जाता है। लेकिन ये क्या है? बिल्कुल वही रूह जो मुझ में सुकूनत पजीर है, कहता है हाथ इस काम के लिए पहुँच जाए। वही रूह कहता है पाँव एक कदम आगे बढ़े। देखें मेरा क्या मतलब है। तब आपकी सारी जिसामत इन चीजों के काबू में है और माकूम है, लेकिन जब तक ये सफात आपके अंदर ना हो, इस वक्त तक इसको मुकम्मल तौर पर काबू नहीं रखा जा सकता। क्या कभी आपने सुना है? मुझे इजाजत दें कि मैं आपको बताऊं, और हकीकतन इसे बड़े गौर से सुनिए, समझे। एक जंजीर अपने कमजोर तरीन जोड़ से मजबूत तर होती है, क्या ये दुरुस्त है? ये अपने कमजोर जोड़ की निस्बत कहीं से भी ज्यादा मजबूत नहीं होती। कोई फर्क नहीं कि जब इसे बनाया गया और ये किस कदर मजबूत बनी थी, अगर इसमें एक कमजोर जोड़ है तो ये वहीं से टूटेगी, और फिर ये अपने कमजोर तरीन जोड़ की बानिस्बत मजबूत नहीं है। अगर ये आपके पास है और आप कहते हैं ये है और ये है, अगर ये आपके पास नहीं है तो यही जगह है जहाँ से ये टूटती है। अगर आपके पास ये है और वो नहीं है तो ये टूट जाएगी। आपके पास ये है और वो नहीं है तो वो टूट जाएगी। ये है और वो नहीं है तो ये टूट जाएगी। ये है और ये नहीं है तो ये टूट जाएगी, समझे। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो हासिल नहीं कर सकते। पर जब आप मुकम्मल हस्ती उसके हवाले करते हैं, फिर रुल कुछ ये सफात आप में उंडेलता है, फिर आप जिंदा मकदस हैं। फिर लोग बाहर देखते हैं और कहते हैं कि वो शख्स नेकी मार्फत, वो कलामे खुदा पर ईमान रखता है, परहेजगारी, सबर, दीनदारी, ब्रदरन उल्फत और खुदा के रुल कुछ की मोहब्बत से मामूर है, और देखें यहाँ वो रुल कुछ की मोहब्बत से मामूर होकर चल फिर रहा है। ये क्या है? एक मुजस्मा है जिसे बे ईमान देकर कह सकता है वो एक मसीही है। वहाँ एक मर्द या औरत है जो ये जानता है कि ये क्या बात कर रहा है। आपने इस कदर मेहरबान, शीरी, दीनदार शख्स को कभी नहीं देखा होगा। आप मोहर शुदा हैं। मोहर दोनों अतराफ से दिखाई देती है, चाहे आप जा रहे हों या आ रहे हों, वो देखते हैं कि मोहर वही है। ये आपका मकाम है, समझे। जब कोई मर्द या औरत ये चीजें रखता है तो फिर सिरे का पत्थर नीचे आता है और उन पर खुदा की बादशाही की मोहर कर देता है, जो कि रुल कुछ है। फिर कलामे मुकद्दस यहाँ आता है और इन सब में अपने आप को मुजस्सम करता है, देखें, ताकि इस तखलीक को एक मुकम्मल तखलीक यानी जिंदा खुदा का मकदस बनाए, मसीहत की एक चलती फिरती जिंदा मिसाल। ये लोग मसीह की मानिद हैं क्योंकि उसकी जिंदगी उनमें है, वो मसीह में है, और उनकी जिंदगी मर गई है और खुदा के वसीला से मसीह में छुप गई है, और वो रूल कुछ के वसीला से मोहर शुदा है। पहला करंथियों 12 बाप, ये दुरुस्त है, समझे। आप अपने आप को मुर्दा जाने, फिर आप ईमान से पैदा होते हैं, फिर नेकी और दूसरी चीजें अपने आप में शामिल कर लें, हत्ता के आप खुदा की मुकम्मल जिंदा शबी बन जाते हैं। क्या ये हैरान कुन नहीं है? और फिर खुदा इस वजह से भी 7 कलीसियाई जमाने लाया, ताकि वो 7 अकदाम दिखाए कि वो अपने लोगों को इनफरादी तौर पर अपनी शबी पर तामीर करेगा। वो अपनी शबी पर मुकम्मल कलीसिया तैयार कर रहा है, और वक्त सऊद ये मुकम्मल बदन उठा लिया जाएगा ताकि हमेशा इसके साथ रहे, क्योंकि ये उसकी दुल्हन है, समझे। हर जमाना जो आता है इसमें उन्हें अलग किया जाता है। अभी मजीद लोगों की जरूरत है, याद रखें। पालूस यहाँ अब्रानियों 11 में कहता है, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक मिनट के लिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। और फिर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, हमेशा जब मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं अब्रानियों 11 बाब में जाने लगा हूँ और मैं 32वीं आयत से शुरू करने लगा हूँ। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ के जदाउन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का हाल बयान करूं। उन्होंने ईमान के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझा दिया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। अब यहाँ नीचे क्या है, समझे? ठीक है। और बाज मुसीबत में पड़ने, बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने और हाँ बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, वो संसार किए गए, आरे में चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार के साथ मारे गए, बेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे, दुनिया उनके लायक ना थी। देखें कौसीन के अंदर, आपने अपनी बाइबल में गौर किया? वो बियाबानों में, पहाड़ों में और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, अगरचे उन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गुवाही दी गई, यहाँ ईमान के सबब से अच्छी गुवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीजें ना मिली, समझे? इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाएं। क्या आप समझते हैं? ये लोग जो मर गए थे यहाँ हम पर इंतजार कर रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस इस कलीसिया को कामलियत तक पहुँचना है ताकि क़यामत लाएं, और इनकी रूहें कुर्बानगाह के नीचे हैं और कलीसिया की कामलियत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन जब मसीह आता है और ये कलीसिया, आपने देखा, शुमार में कम हो रही है और ये तमाम हजूम इससे तेज है, लेकिन सिर्फ जो लिखता हूँ इससे वो नाराज हो जाते हैं, समझे? ये अब एन आखिरी मकाम आ गया है, जबकि कलीसिया अकलियत में है, जैसे एक मकाम पर जाना है, और ये इस किस्म की खिदमत है जो उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि जब ये सिरे का पत्थर वापस आता है इसकी एक जगह मौजूद है जहां ये मुस्तकिल मखरूत पर मौजूद रहेगा। ये एक महज टोपी नहीं जो चोटी पर सजा दी जाएगी, ये एक छोटा रद्द किया हुआ सिरा है और इसे वहां कायम किया जाएगा ताकि पानी बरसाए, और जब ये आता है तो कलीसिया सान का पत्थर हो जाएगी। मखरूत के बाकी तमाम पत्थर इस खूबसूरती से रखे हुए हैं कि आप इनमें से एक ब्लेड भी नहीं गुजार सकते। कई टन वजनी पत्थर वहाँ रखे हुए हैं, वो किस तरह उन्हें ऊपर ले आए वो नहीं जानते, लेकिन वो तामीर किए गए थे। और यहाँ ऊपर जब मखरूत की टोपी आती है, मखरूत बजाते खुद मसीह के बदन को सान लगाया जाएगा, ना के चंद अकायद और तलीम या कोई और चीज जो हमारे इलम में है। इसे इसके आने तक बिल्कुल ठीक कामिल होना है, जैसा कि मसीह, वो और उसकी खिदमत दोनों बाहम एक हो जाएंगे, समझे? तब सऊद होगा और घर जाना होगा। देखे अब हम कहाँ रह रहे हैं, लौदीकिया में, जहाँ कलीसिया अपने सबसे बदतरीन कलीसिया जमाने में थी। बाइबल में हमें मिलता है सिर्फ इसी कलीसिया जमाने में खुदा कलीसिया से बाहर था, वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, अपनी अमारत में दोबारा वापस आने की कोशिश करता है। अकायद और तंजीमों ने इसे इसकी अपनी कलीसिया से बाहर निकाल दिया है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, समझे? वो बाहर है। इस कलीसिया जमाने में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दिया है और उसके साथ कुछ तल्लुक नहीं रखा। अब आप देखें कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, जबकि लौदीकिया का कलीसिया जमाना इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, यहाँ तक कि ये और कैथलिकिज्म, जिसने इसे अब तोड़ दिया है, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं और एक बड़ी कलीसिया के तौर पर मुतहिद हो रहे हैं। कलीसियाओं की फेडरेशन भी ऐसे ही है जैसे कि कैथलिकिज्म। अगर वो इसे नजरअंदाज कर सकें तो उनमें सिर्फ एक ही इख्तलाफ है, यह है इशा रबानी लेना, यही वाहिद चीज है। ये वो शह है जो कैथलिकिज्म और प्रोटेस्टेंट इज्म को इकट्ठा नहीं रहने देती। कैथलिक कलीसिया कहती है ये बदन है, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया कहती है ये बदन की तशबी है। कैथलिक इसे एक मांस बना लेते हैं, मांस वो चीज है जिससे वो ये उम्मीद करते हुए शराकत लेते हैं कि वो माफ कर दिए गए हैं। प्रोटेस्टेंट इसे इस ईमान के साथ लेते हैं और शराकत में खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी माफी हो चुकी है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं हमारी माफी हो चुकी है, कैथलिक कहते हैं हम उम्मीद करते हैं कि माफ हो चुके हैं। मांस और शराकत, वो इसे मांस कहते हैं जबकि हम इसे शराकत कहते हैं। मांस एक उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, शराकत एक इलम है कि ऐसा हो गया है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, समझे? फक्त यही वो चीज है जिस पर वो इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन वो ऐसा कर लेंगे। ओ, ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि इकट्ठे होकर चलें, ये सब साथ चलें, ठीक है। बाइबल कहती है और अब हैवानों ने अपना इख्तियार उस कस्बी को दे दिया। देखें, वो आपस में इकट्ठे हो गए, समझे? वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि बाइबल ने कहा कि वो करेंगे। वो इस आखिरी हफ्ते में शमूलियत करेंगे, ये दुरुस्त है। मैं कैथोलिक लोगों की मुखालफत में हरगिज नहीं हूँ और ना ही प्रोटेस्टेंट लोगों की। आप मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और पेंतिकास्टलों में से बहुतों की कलीसियाएं इस कलीसियाई इतिहाद में जा चुकी हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क में कलीसियाई इतिहाद का एक बड़ा मुर्दा खाना तामीर कर लिया है। ये अक्वामे मुतहदा जैसी चीज है। वो तमाम प्रोटेस्टेंट इज्म को एक साथ मुतहद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामला में कैथोलिक आकिल है। ये पोप जॉन 22वां या 23वां पोप है, जो भी है वो बहुत हलीम तरीके से तमाम प्रोटेस्टेंट ईमान और कैथोलिक ईमान वालों को एक ईमान पर लाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि बाइबल ने कहा कि वो करेंगे। यह है आपका मकाम और तमाम प्रोटेस्टेंट इसमें शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सफात उनमें शामिल नहीं है। मार्फत के कलाम मुकद्दस दुरुस्त है। सबर, वो जो खुदावंत का इंतजार करते हैं। आप समझते हैं कि इससे मेरी क्या मुराद है? जैसा कि एक दिन मेथोडिस्ट बिशप ने, जब उन्होंने उसकी मंजूरी दी और कहा, हर कोई जानता है कि कैसे उन्हें किस चीज ने मुतासिर किया है कि वो एक खास दुआ की मंजूरी की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कलीसिया और स्कूल में पढ़ाई जाए। और चाहे, मेरा ख्याल है कि ये प्रेसबिटेरियन दुआया किताब या कोई ऐसी चीज थी और वालदेन ने स्कूल पर दावा कर दिया क्योंकि उन्होंने ये कबूल ना किया कि ये स्कूल में पढ़ी जाए। और ये मेथोडिस्ट बिशप एक दनाव बूढ़ा आदमी था और वो खड़ा हुआ और कहने लगा, ये गलत है। फिर कहा, ये गैर कानूनी है। उसने इस तकरार को संभाल लिया। उसने कहा, जैसे हमारी मेथोडिस्ट कलीसिया में, उसने फिर कहा, हमारी मेथोडिस्ट कलीसिया में, उसने बताया, हमारे ज्यादातर लोग हमेशा हॉलीवुड की बदनामी की बातें करते हैं और उनमें से 95% उनकी फिल्में देखते हैं। क्या मसला है? उन्होंने इसे छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। मैं फॉल शहर में एक रोज उसी कमरे में एक मेथोडिस्ट कलीसिया के बड़े अफसर से बात कर रहा था। मेथोडिस्ट कलीसियाओं में सबसे ज्यादा रूहानी कलीसिया फॉल शहर में है। ये जाहिर करती है मेथोडिस्ट जमाने को जो हमारे जमाने से पिछला जमाना था, यानी पेंतिकोस्टल जमाने से पिछला। और उसने कहा, सेंट लुइस मिसूरी में 3 या 4 माह पहले उन्होंने एक तजर्बा किया और इस बात को मालूम किया, हो सकता है कि आज सुबह वो आदमी यहाँ बैठा हुआ हो। ठीक है, वो एक ठेकेदार है जो हमारे लिए इमारत बना रहा है। इसका ताल्लुक मेथोडिस्ट मेन स्ट्रीट से है जहाँ बाई लिम पासबान है। बस इस रिपोर्ट में हमें मालूम हुआ कि सेंट लुइस में मेथोडिस्ट लोग तकरीबन 70% के करीब सिगरेट नोशी करते हैं और इनमें से 68% लोग अल्कोहल यानी शराब पीते हैं, एक मेथोडिस्ट। और उस वक्त एक अजीब चीज सामने आई जब जायजा लिया गया और मर्दों और औरतों के माबैन तजजिया किया गया। औरतें, उनकी तादाद 70% या इससे कुछ ज्यादा थी, जबकि मर्दों की तादाद 50% थी। औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा सिगरेट नोशी और शराब नोशी करती थी, 70% या इससे कुछ ज्यादा मर्दों के मुकाबले में औरतें थी। अब अगर हम बाइबल की तालीम, छोटी निकरों, कटे हुए बालों और इस तरह की चीजों के बारे में देखें, जहां खुदा प्रस्ती, क्योंकि ये गैर मुतकई औरतें खुदा प्रस्ती और तकद्दुस का दावा करती हैं, ताश की पार्टियां और हर तरह की और चीजें करती हैं, बकवासी फजूल गो, जो इस काबिल भी नहीं कि अपनी जुबान पर काबू कर सकें, बातें करती हैं और गप्पे हांकती और इधर उधर आवारा गर्दी करती हैं। मर्दों के बारे में क्या ख्याल है? ताश की पार्टियां, गोल्फ की खेलें, बाहर निकलते वक्त उनका आधा लिबास कदरे पुराने दिखाई देने वाले कपड़े पहने हुए औरतों को बाहर साथ लिए फिरते हैं, हैरानी की कोई बात नहीं। देखें, इस गंदी तारीख ने मनाद को, कैदी मनाद को इस सुबह खींच लिया। जी हाँ जनाब, मैं नहीं समझता कि वो आदमी इस गुनाह में गिरा हो। इससे क्या हुआ? वो भाई, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। जी हाँ, डेन गिलबर्ट जेल में मनादी करने वाला, चंद माह पहले जब वो आदमी अंदर दौड़ा और डेन को कत्ल कर दिया। अब इसकी बीवी उम्मीद से है, जबकि डेन फोत हो गया है। वो अब इस बच्चे में से खून की मुंतकली नहीं कर सकते। उस औरत ने कहा, डेन ने उसकी असमत दरी की थी और जबकि ये बच्चा डेन का है। कैसे? मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। इससे ज्यादा नहीं कि एक एक कौवा कबूतर के पर रखता हो। नहीं जनाब, मुझे यकीन है कि ये झूठ है। मुझे यकीन है कि डैन गिलबर्ट एक मर्द खुदा था और मैं उसे अबलीस का एक हरबा समझता हूँ। जैसा कि वो चीज इन्हें दुआओं पर लगाने की कोशिश कर रही है, वो बूढ़ा मेथोडिस्ट बिशप उसे काबू में रखने की अहलियत रखता था। अगर वो पूरे तौर पर इस पर गौर करता तो वो किसी दूसरी चीज से मुतासिर होता, ये सच है। जैसा कि जनूब में अलैदगी का मसला हुआ था, उसी तरह मैं इंसानों की आजादी पर यकीन रखता हूँ। मेरा यकीन है कि ये कौम आजादी के लिए खड़ी हुई है। मैं मिस्टर कनेडी को फौजी दस्ते भेजने पर इल्जाम नहीं देता, ना मैं कोई और नई स्कीम का हामी हूँ। मैं कोई सियासी नहीं हूँ, मैं जमहूरी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक मसीही हूँ। इसलिए मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखता। मैं इस बात पर ईमान नहीं रखता कि स्याह फाम लोग अपने पदेशी हक को इस तरह के मवाद के लिए बेच दें। ये जमहूरी पार्टी पर फर्ज है। इब्राहिम लंकन के खून से इन लोगों को आजादी मिली क्योंकि वो एक खुदा प्रस्त आदमी था। मेरे ख्याल में अगर आप वोट देने के लिए जा रहे हों तो कम अज कम किसी न किसी पार्टी से मुंसलिक रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो लड़का वहाँ महज अपने स्कूलों की वजह से ना था। वो लड़का एक शहरी है, वो एक अमरीकी है, हर एक को आजादी है। स्याफाम होने से आदमी को कुछ इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हम सब, खुदा ने कहा, तमाम कौमें एक आदमी एक के खून से बनी है, हम सब एक हैं। लेकिन वो लड़का एक फौजी था, वो एक तजर्बाकार फौजी था, वो हर दुरुस्त बात के लिए लड़ा। उसे हक हासिल था कि स्कूल जाए, ये दुरुस्त बात है। इसके सामने बहुत से स्कूल थे जिनमें वो जा सकता था। ये चीज क्या है? अगर आप इसकी तहकीक करें, ये मौजूदा दोनों में तंजीमी मवाद है जो इसे मुतासिर कर रहा है। क्यों? वो इन स्याफाम लोगों के वोटों को रिपब्लिकन पार्टी से डेमोक्रेट पार्टी में लाए हैं और वो इससे अपना पदेशी हक बेच रहे हैं। बिल्कुल सच है। क्या रूल कुछ मौजूद नहीं जिसके पास हिकमत है, जिसके पास मार्फत है? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि ये कलीसिया, ये मौजूदा जमाना अपने आप को बेच रहा है। क्या आप नहीं देख सकते क्या हो रहा है? अगर ये टेप भी हो रहा हो तो मुझे परवाह नहीं, ये ऐसे ही है। अफसोस है, जी हाँ। क्या मसला है? मेरी माँ कहा करती थी, अबलीस को इसका हिस्सा दो। सिर्फ एक आदमी था जिसने अकलमंदी की, वो था कैस्ट्रो। जी जनाब, वो वहाँ गया और जहाँ तमाम दारुल हुकूमती इख्तियार और सब कुछ रखते थे, ये सोने के तवाजन से है जैसे कि अमरीका। उसने क्या किया? वो तमाम बॉन्ड्स खरीद लाया और उसने किसी तरह से भी रकम हासिल कर ली। फिर उसने क्या किया? उसने जाली नोट बनाए और उन्हें बदल दिया, ठीक उसी जगह वापस रख दिए। ये कौम फक्त यही कुछ कर सकती है। क्या आपने एक शुभ जिंदगी की डोरी सुना था? क्योंकि आपको मालूम हुआ ये ऐसे ही है जैसे सोने के उस बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। बॉन्ड तो पहले ही ले लिया गया है और ये मौजूदा हुकूमत अब किसके लिए रकम खर्च कर रही है? टैक्स की रकम के लिए जिसे वो अब से 40 बरस तक वसूल करेगी। उसने ये किया। जिंदगी की डोरी तमाम कौम के लिए वाशिंगटन डीसी से निकलती है। वो टैक्स को खर्च कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि बैरूनी ममालिक से खरीदें। ठीक है, बहरहाल वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि वो बिल्कुल क्या करने जा रहे हैं? समझे, ये क्या है? अब अगर ये कौम टूटी है तो सिर्फ यही कर सकती है, टूट जाए। ये महज इतना कर सकती है कि दिवालिया निकाल दे। अकलमंदी सिर्फ यही है कि करेंसी तब्दील कर दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। मौजूदा इंतजामिया के जेरे इंतजाम रोमन कैथोलिक कलीसिया दुनिया के सोने की मालिक है और वो करेंगे, वो इसे बेच डालेंगे, ये दौलतमंद आदमी। और आगे ये सरजमीन के इन जैसों के बारे में बाइबल ऐसा ही कहती है। ये तमाम चीजें खोने से कबल वो क्या करेंगे? विलियमसन तंबाकू कंपनी और ब्राउन तंबाकू कंपनी इनमें से ज्यादातर कैथोलिक हैं। और दूसरी ये तमाम चीजें वो किया करेंगे, वो इसे कबूल करेंगे और वो रोम से रकम लेंगे और फिर इसी तरह अपना पदेशी हक बेच डालेंगे। रोम इसकी पुष्टपनाई करता है। जी जनाब, वो इसकी पुष्टपनाई करेगा। अब वो काफी हद तक हिकमत अमली हासिल कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द से, ताकि ऐसे लोगों को अपनी काबीना में लाएं। देखें मिस्टर कैनेडी क्या पूछ रहे हैं, और जब तुम इसे किसी दिन देखो, अब मजीद वोटों की जरूरत नहीं रही। वोटों का मकसद क्या है? जब वो अखबार में छाप चुके हैं और अवाम के सामने सबूत लाए हैं और उन्होंने इसके मुतल्लिक कुछ भी करने से इनकार कर दिया है, जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि तमाम ममालिक में मशीनें काम कर रही थी, उन्होंने मिस्टर कैनेडी को गलत वोट से मुंतखब किया। क्या बाइबल नहीं कहती वो मकारी से अंदर आएगा? यकीनी तौर पर ये बेईमानी है। अब मैं ना तो जमहूरी जमात और ना ही रियासती जमात के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं बाइबल में से हकायक बयान कर रहा हूँ। वोट डालने का क्या मकसद है जबकि वो जानते हैं कि वहाँ कौन आएगा? आप में से कितनों को वो टेलीविजन का इश्तहार याद है जिसमें उन्होंने दो खवातीन को खड़ा किया? एक ने कहा मैं तो वोट देने जा रही हूँ मिस्टर, या एक प्रोटेस्टेंट औरत ने कहा मैं मिस्टर कैनेडी को वोट देने जा रही हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो मुकाबलतन मिस्टर निक्सन से ज्यादा चुस्त आदमी है, वो एक बेहतरीन सदर साबित होगा। फिर उन्होंने कहा ये एक कैथलिक खातून है, आप किसको वोट देने जा रही हैं? उसने कहा मैं एक कैथलिक हूँ और एक रोमन कैथलिक, एक मोहब्बे वतन कैथलिक। उसने कहा मैं मिस्टर निक्सन को वोट देने जा रही हूँ। क्यों? उसने कहा क्योंकि वो मेरे ख्याल में मिस्टर निक्सन एक बेहतरीन सदर साबित होगा, क्योंकि वो मामलात को बेहतर तरीके से जानता है, उसे कम्युनिज्म से ज्यादा जान पहचान है। इस औरत ने झूठ बोला। मेरे पास वो उसको क्या कहते हैं, हमारे ईमान के हकायक, यहाँ हमारे पास सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली कैथलिक किताबें मौजूद हैं। इसमें कहा गया है और अगर कोई कैथलिक किसी प्रोटेस्टेंट के मुकाबला में खड़ा है, अगर कोई कैथलिक किसी प्रोटेस्टेंट को वोट देता है तो उसे कैथलिक कलीसिया की रफाकत से अलहदा कर दिया जाएगा, ठीक है? और अगर दो कैथलिक एक ही ओहदे के मुकाबला में आए तो वो उस कैथलिक को वोट दे सकते हैं जो अपनी माँ कलीसिया का ज्यादा वफादार हो। गौर करें ये कैसी मकारी है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खरीदने के लिए रकम दे रहे हैं, क्यों वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं और वो टूट चुकी है। और ये क्या है, ये सोने के मियार पर है। कैथलिक कलीसिया के मुकदसों के निजाम के पास दुनिया का सोना है 168 बिलियन, ये है आपका मकाम। इसे दोबारा सोने के मियार पर फेंक दो और आप लोग सिर्फ अपना घर और चीजें रखते हैं, लेकिन आपका तल्लुक कैथलिक कलीसिया से है, कौम का तल्लुक कैथलिक कलीसिया से है। इसी तरह उनकी करेंसी के जरिए तमाम चीजें उनके कब्जा में हैं। क्या बाइबल नहीं बताती? क्या यही वो तस्वीर नहीं है? बाइबल बताती है भाई। आज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहेंगे वो इसे एक उम्दा कलीसिया बनाएंगे और ये प्रोटेस्टेंट इज्म को मुतहद कर देगी और ये फितरी आंखों से अच्छा लगता है, लेकिन इस दुनिया का इलम खुदा के नजदीक बेवकूफ़ी है और हमें मुनादी की बेवकूफ़ी के जरिए खुदा को खुश करना है ताकि जो खोए हुए हैं उन्हें बचा लिया जाए उस इलाही इख्तियार से जो उसने अपनी कलीसिया पर मुकरर कर रखा है, ताकि कलीसिया की तामीर इन रूहानी सफात पर हो, ना के किसी ऐसी चीज पर जो दुनियावी तर्ज की हो। पत्रस ने कहा तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में जर की दोस्ती है और बड़े दिनों की ख्वाहिश और खुश होने और खाने और पीने और तमाम आसाइशें जो हमारे पास हैं, तुम छूट चुके हो और अब हम एक जिंदा घर में तामीर किए गए हैं। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया से मुखातिब हूँ, ये है आपका मकाम। क्या आपने इसे पढ़ा है? क्या आप समझ गए हैं? क्या इसे आपने फिर से पढ़ते हुए सुना है? पत्रस के दूसरे खत में सिर्फ सुने, यहाँ वो कहता है कितनी खूबसूरती से यहाँ लिखा है, वो कैसे इससे मुखातिब है, ठीक है? जब वो बोलता है तो गौर से सुने, ठीक है? पत्रस, शमोन पत्रस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदावंद मनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें हमको अनायत कर दी है। जमीन और बाकी तमाम चीजें किसकी मिरास होंगी? यकीनन जो इसके लायक हैं, जी हाँ ठीक बात है, जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर, इसे गौर से सुने, जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। दौलत की हिर्स, बड़ी चीजों की आरजू, शोहरत की तमन्ना, ईमानदारी के लिए इन चीजों की कोई वक़्त नहीं। हम परवाह नहीं करते एक खेमा हो या एक झोंपड़ी, मैं फिक्र क्यों करूं? जीऊं या मरूं, तैरता रहूं या डूब जाऊं, जिस चीज में मेरी दिलचस्पी है वो खुदा की बादशाही है। हाँ मैं अपने घर को कायम रखूं, हाँ अपने खानदान की कफालत करूं, हाँ जो कुछ भी हो इसे बरकरार रखूं, मुझे मसीह को रखना है जो कि जलाल की उम्मीद है। اے خداوند مجھے اس میں تعمیر کر اور مسیح میرا سر بن جائے, میرے وسیلہ سے کام کرے, میرے ایمان کی بنیاد جو اس پر ہے کام کرتے ہوئے نیکی, معرفت, پرہیزگاری, صبر, دینداری, برادرانہ الفت مجھ میں کام کرے. اے خداوند یہی میری دعا ہے, مجھے پرواہ نہیں مروں یا جیوں, ڈوب جاؤں یا بچ جاؤں, تنظیم کوئی تنظیم نہیں, دوست ہو یا بغیر دوستوں کے, یہ صفات مجھ میں کام کریں, مسیح کی نیکی, اس کی معرفت, اس کا مسا, تاکہ میں ان کو سکھا سکوں, کیونکہ خدا نے کلیسیا میں رسول, نبی, استاد, چرواہے اور مبشر بنا کر دے دیے تاکہ سب کامل بنے اور یہ خصوصیات ان میں آ جائیں تاکہ خدا کے بیٹے کی آمد پر کامل ہوں. ان میں سے ہر ایک پتھر بغیر مادیت کے ہے, یہ اس کا حصہ ہے. ان میں سے ہر ایک خصوصیات کا تعلق خدا سے ہے, انہی کے وسیلہ سے وہ اسے انڈیل رہا ہے. آمین. بارہ بج چکے ہیں, یہ سب کہاں جاتا ہے؟ آمین. کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے؟ اے بچوں غور سے سنو, آج صبح سسٹر کڈ نے کہا, بھائی بل میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھ سکوں گی, یہی پسندیدگی مجھے مار ڈالتی ہے. سمجھے, وہ سمجھتی ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہو گئی ہے اور وہ ہے بھی. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو اور بائی کڈ کو طویل عمر عطا فرمائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ کتنے عرصے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. میں نہیں جانتا کتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. خدا مجھے دنیا سے بلا سکتا ہے, وہ مجھے خدمت کے کسی اور میدان میں بلا سکتا ہے اور آپ کو بھی بلا سکتا ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن آئیں اسے جان لیں, اسے اپنے اوپر سے گزر نہ جانے دیں, آئیں اسے حاصل کر لیں. اور یہ یہاں بائبل میں ہے, یہاں اس کی مثال باقی ہر چیز میں ہے. اور اگر میرے پاس صرف یہی کرنے کے لیے وقت ہو, آپ ایک دن میں یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ جانتے ہیں, لیکن جہاں میں تمام چیزیں باہم اکٹھی کر سکوں. دیکھیں جب ہم پیغام پر غور کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں رول کچھ نے دیوار پر کیا کیا, کیا آپ نہیں جانتے اس وقت کتنے لوگ یہاں موجود تھے؟ سمجھے, یقیناً میں یہ کہہ رہا تھا, آئیں اور وہی چیز حاصل کریں, یعنی خداوند کی قدرت. دیکھیں یہ سچ ہے, آپ اسے جانے نہ دیں, اسے تھامے رہیں. اے بچوں اسے تھامے رہو, یاد رکھو اپنے ایمان پر نیکی, معرفت, صبر بڑھاؤ. اب یہاں میرے خیال میں میرے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, اگر میرے منادی کرتے ہوئے یہ گر نہ گیا ہو تو. یہ یہاں ہے, شکریہ بھائی, مہربانی, شکریہ. اگر آپ اس پر نگاہ کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اسے, ہو سکتا ہے مقابلہ تن اس کے جو وہاں ہے قدرے بہتر نمونہ ہو, اور شاید آپ میں سے چند ایک اس کی کاپی کرنا چاہتے ہوں, تو میں یہاں اوپر لگا دوں گا اور یقیناً آپ اسے دیکھ سکیں گے اور اس کی کاپی اتار لیں گے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں اور اس کا موازنہ کریں اور پھر اس پر عمل کریں. صرف اس کا مطالعہ نہ کریں, اس کا موازنہ کریں, لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہوں. اسے اپنے اوپر سنجیدگی سے لیں, یہ مت کہیں ٹھیک ہے میں سن کر لطف اندوز ہوا ہوں, میں بھی ہوا ہوں, لیکن اسے سننا اور پھر اسے حاصل کرنے میں فرق ہے. سمجھے یہ مختلف ہے. سمجھے, خدا کے قد و قامت کو بنانے کے لیے سات صفات ہیں, سات کلیسیائی زمانے ہیں جس میں سے خدا کلیسیا کو گزار کر اس مقام تک لایا ہے, اور یہ کرنے کے لیے اس کے پاس سات پیمبر تھے. یہاں سات 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 ہیں, سمجھے, سات سات خدا کی تکمیل کا عدد ہے اور تین خدا کی کاملیت کا عدد ہے. پس یہ تین ہے, پس سات اور تین. پس علم الریاضی کے مطابق, روحانی طور سے, کلام کے مطابق اور رول کچھ کی گواہی سے اس کی تمام چیزیں اکٹھی مکمل ہو چکی ہیں. آئیں اس کا مطالعہ کریں, آئیں یہ چیزیں اپنے ایمان میں بڑھائیں, پھر ہم مسیح کے پورے قد و قامت تک پہنچ سکتے ہیں. الہی محبت سے باہم بندھے رہیں, خدا کا خوف رکھیں, ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تقدس ہو, ایک دوسرے کی گہری تعظیم, بھائیوں اور بہنوں جیسی مہربانی, نہ کہ کبھی گنوار پن, کچھ نہیں, لیکن صرف رول کچھ کا خالص پن. سمجھے, مسیحی ہوتے ہوئے اکٹھے رہیں, ایمان کے ساتھ چلیں, اپنے وسیلہ سے خدا کی خاصیت کو پھیلائیں, اور جب یہ درست اور غلط آتا ہے تو اسے خدا کی معرفت سے جانیں. جب ابلیس کوئی چیز پیش کرتا ہے جو کہ کلام کے عین مطابق نہیں ہوتی, اس سے دور ہٹیں, یہی درست ہے. मेरा अंदाजा है कि उन रसूलों ने हमारी तरह कभी नहीं किया। पुलपट पर जाने तक उन अशखास के पास चंद अल्फाज होते थे, वो बढ़े और जो कुछ उन्होंने करना था उन्होंने किया और चले गए। जी जनाब, उनके पास कुव्वत थी, उनके पास नेकी थी, उनकी आदमियों के साथ कुछ तकरार ना थी, वो जानते थे कि वो कहाँ खड़े थे। बस यही बात है, वो रूल कुछ की ताबेदारी में चलते थे। जैसा कि मैंने रात को कहा था कि हल्का सा एक इशारा खुदा को सिर्फ ये करना होता था और फिर उन्हें कोई चीज रोक नहीं सकती थी। उन्होंने कोई सवाल किया ना, मुतालिया किया और ना गौरव खोज किया और ना हमारी तरह उलझन का शिकार हुए और ना ये किया ना वो किया। वो आगे बढ़े और कर डाला। खुदा की तरफ से सिर्फ एक इशारे पर हो गया इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा की तरफ से इशारा है। उनके अंदर तमाम जोहर मौजूद थे, यानी ये तमाम सफात, और खुदा के पहले इशारे के हर हिस्से का मुवाजना उसके कलाम के साथ करते। वो जानते थे कि ये खुदा का कलाम है और वो उठ खड़े हुए। उन्हें किसी और बात की फिक्र ना थी। जब खुदा ने कलाम किया तो वो निकल पड़े। खुदा हमसे बोलता है और हम कहते हैं ठीक है, हम शुरू करेंगे, हम देखेंगे अगर ये जिंदगी गुजार सके। पहली चीज जो आप जानते हैं कि कोई शख्स आपको परेशान कर देता है, अच्छा, यकीनन ये शैतान है। आज सुबह इस इबादत से मुझे दूर रखने की उसने बहुत कोशिश की। एक मर्तबा आपके साथ ऐसा जरूर होता है, ओ रहम हो। एक इबादत में मैंने बयान किया था कि मुझे हर वक्त लड़ना पड़ता है, और अगर मैं बीमारों के लिए दुआ करने लगूं और कोई बगैर निजात के मर रहा हो तो 10 मिनटों में 30 टेलीफोन कॉले आ जाती हैं, और अगर वो इतनी जल्दी मिल सकें ताकि मैं यही करता रहूं। ओ भाई ब्रैनम, आपको ये करना है, लेकिन वहाँ एक रूह बर्बाद होने को है यकीनन। जी हाँ, एक रात मुझे एक मकाम पर बुलाया गया था। एक नौजवान चंद साल पहले एक सुपरमार्केट में मेरी उसके साथ गुफ्तगु हुई। वो शराब का शिकार हो चुका था। मैं उस लड़के से वाकिफ था, वो एक उम्दा अच्छा लड़का था, लेकिन वो एक गुनाहगार था, और उसकी वालदा ने बुलाया। मेरा ख्याल है कि उसने उसे दो मर्तबा डॉग कहकर बुलाया, और उन्होंने बिली को बुलाया, और बिल आखिर मुझे पैगाम मिल गया। और जब मुझे पैगाम मौसूल हुआ तो मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी जितनी के उस लड़के तक जाने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो गरीब जो मेरा जानने वाला था गुजर चुका था। वो वहाँ बेहोश बदहवास लेटा हुआ था, वो इसी हालत में पड़ा रहा। उसका वालिद उसे थपथपाते हुए कहने की कोशिश कर रहा था, प्यारे, और ये आदमी 50 या 51 वर्ष की उम्र का था और कह रहा था प्यारे, ये मगर तब भी लेटा रहा और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अपने कमजोर बूढ़े बाजुओं को उस लड़के के जिस्म के गिर डालकर लड़के में कैंसर बिल्कुल फैल चुका था, यहाँ तक कि वो एक मुजस्म कैंसर बन चुका था। उसके जिस्म के तमाम अजा कैंसर ज्यादा थे, यहाँ तक कि उसकी शरियाने भी कैंसर ज्यादा थी और तमाम चीजें भी। और वहाँ वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और वो बिल्कुल उसी हालत में पड़ा था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा विड्रो विड्रो, ये भाई ब्रैनम है। उसके वालिद ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो, ये भाई बिल हैं, विड्रो, ये भाई बिल हैं। वो लड़का इस तरह से कर रहा था। इसके वालिद ने देखकर कहा बिली आपको आने में देर हो चुकी है। मैंने कहा बहुत ज्यादा देर कभी नहीं हुई, वो खुदा है, यहाँ मौजूद है। मुझे यहाँ आने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ी है। और फिर दूसरे लड़के यानी कुछ और गुनाहगार लड़के भी वहाँ खड़े थे, कुछ इसके रिश्तेदारों में से थे। मैंने कहा लड़को क्या तुमने देखा, तुम भी तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें इसी जगह आना है, तुम्हें ठीक इसी जगह पर आना है, समझे। शायद इस कैंसर के बायस नहीं, आप किसी और चीज से यहाँ आ सकते हैं, हाईवे पर खून बह जाने से, मौत या किसी और चीज के बायस आपको इस जगह पर आना है। मैंने उनके साथ बातें की, मैं इंतजार कर रहा था कि रूह क्या कहता है कि करूं। मैं इंतजार किए जा रहा था। पहली बात जो मेरी समझ में आई, मैंने एक हल्का सा इशारा महसूस किया, अपने हाथ उस पर रखो। मैंने इर्द गिर्द चलते हुए कहा सब अपने सरों को झुकाएं। उन सब ने सरों को झुका लिया। वहाँ 2 या 3 नौजवान साथी थे। मैंने अपने हाथ उस पर रखे और कहा खुदावंद खुदा इस लड़के के हवास बहाल हो जाएं ताकि वो जान जाए कि वो क्या करने जा रहा है, ताकि वो इस चीज को पा सके। वो मर रहा है, अब्लीस ने इसे जख्मी कर दिया है, वो रुखसत हो रहा है और इसने अपने आप को मौत में डुबो दिया है और अब वो इस हालत में है। मैं दुआ करता हूँ तू इस पर रहम कर। और जब मैंने उसके लिए दुआ की तो अगली सुबह वो बैठा हुआ अपने वालिद से बातें कर रहा था। बेस्टी रोजर्स, जिसको कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब उन्होंने बेस्टी रोजर्स के लिए मुझे अस्पताल में बुलाया। मैं मिल्टन में मुनादी करने के बाद बाहर निकला हुआ था, जहां छोटे जॉर्जी कार्टर ने शिफा पाई थी, ये आप सबको याद है। वहां एक मेथोडिस्ट मुनाद भी बाई स्मिथ था, उसने कहा अगर किसी ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हो तो वो मेरे खेमे के नीचे से बाहर निकल जाए। बिल्कुल वैसे ही और जैसे टोटन्सफोर्ड में इबादत करते हुए हुआ, और उसने कहा हो हर चीज में जो आप सोच सकते हैं मुझे इल्जाम दे दें। लेकिन मैंने कभी एक लफ्ज भी ना कहा, हालांकि मैं बिल्कुल दुरुस्त था, मेरे पास इख्तियार था। खुदावन ने मुझे एक रोया दिखाई, बियाबान में किसी जगह पर एक बरा लटका हुआ था। आप सबको ये रोया याद है, आप सबको मेरा अंदाजा है कि आपको याद है, क्या आपको याद है? ठीक है, फिर मैं इसका शिकार करने के लिए बियाबान में से गुजरता हुआ जा रहा था और मैं टूटनसफोर्ड गया। बाई राइट को मालूम था कि हम वहाँ थे, लेकिन हम ना जानते थे कि क्या करें। मैंने 5 आने में एक छोटी साबुनदानी खरीदी। मैं वहाँ से बाहर जाना चाहता था ताकि वहाँ पायदान पर खड़ा होकर मनादी करूँ। उसने कहा कि वो पहाड़ी की चोटी पर कुछ व्यापार करने जा रहा है। मैं इसके साथ हो लिया। वहाँ एक पुराना बैप्टिस्ट गिरजा खाली पड़ा था। खुदावन ने मुझे कहा वहाँ ठहर जा। मैंने कहा भाई राइट, मुझे यहीं पर ठहरने दो। मैं रुक गया और वो ऊपर गया और वापिस आ गया, जबकि मैं वहाँ गया मगर उस दरवाजे को खोल ना सका। मैंने कहा खुदावन, अगर तू इसमें मौजूद है तो तू चाहता है कि मैं इस गिरजे के अंदर जाऊँ तो मेरे लिए दरवाजा खोल दे। मैं बैठ गया और सोच रहा था। मैंने किसी के आने की आवाज सुनी। वो आया और उसने कहा आप कैसे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने कहा क्या तुम गिरजे के अंदर जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ जनाब। उसने कहा मेरे पास चाबी है। इसी तरह इबादत शुरू हो गई। पहले हफ्ते तकरीबन कोई भी ना था। पहली रात मेरी जमात थी, बाई राइट और उसका खानदान। पहली चीज ये कि हफ्ते के आखिर में ये सूरत हाल थी कि उन्हें सेन में खड़े होने में भी मुश्किल दरपेश थी। अभी तक वो बरा ना आया था। इसी दौरान बाई हाल ने निजात पाई, जो वहाँ पासबान थे, लेकिन मैं ना जान सका कि वो बरा कहाँ था। बाद अजां पहाड़ी के नशीब में चर्च ऑफ क्राइस्ट में एक छोटी लड़की थी जो 9 साल और 8 महीने से हिलजुल नहीं सकती थी। वो वहाँ लेटी रहती थी, वो वहाँ थी। आप सब इस वाक्य से वाकिफ हैं। जी जनाब। उस दोपहर को जब बस्टी रोजर्स, जो के एक सिपाही था, वहाँ खड़ा था, मैं वहाँ से बाहर निकला और बाई स्मिथ की जमात मुझ पर हंसने को खड़ी थी और यीशु के नाम में बपतिस्मा पर मजाक उड़ा रही थी। मैं टूटनसफोर्ड के आलूदा पानियों में से बाहर निकल आया। मैं ऊपर आ गया और वो जितना मजाक उड़ा सकते थे उड़ाते रहे। चंद एक डीकन मेरे साथ बाहर निकल आए। मैंने कहा आज दोपहर मैं खुदा के मुकद्दस कलाम की नुमाइंदगी के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा बाइबल में पढ़ता हूँ जहाँ पत्रस ने कहा तोबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। मैंने मुड़ते हुए किताबे मुकद्दस को डीकनों में से एक के हाथ में थमा दिया। वहाँ से बाहर निकला और कहा जो कोई भी अपने गुनाहों से तोबा करने के लिए आए मैं पानी में उतर गया हूँ। और मैंने कहा मुझे यूँ लगता है जैसे फरिश्तगान हर तरफ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। ओ मेरे खुदाया, 2 या 3 बल्कि उसकी पूरी जमात को बपतिस्मा दिया। औरतें जोर जोर से पुकारती हुई और अपनी उम्दा रेशमी पोशाक समेत पानी में उतर गईं। मैंने उनको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। आप जानते हैं कि मेरे पास उसकी तस्वीर है। ऐसा वहाँ हुआ था। ये क्या था? अपनी नेकी में इजाफा करो, समझे? इसे अकेला छोड़ दिया। खुदा जानता है कि इसे कैसे करना है। खुदा जानता है कि इन चीजों को कैसे लाना है। लोग जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने दें, कुछ इख्तलाफ ना करें, सिर्फ आगे बढ़ते रहें। बेस्टी रोजर्स जो वहाँ खड़ा था, जब उसने ये देखा उसने कहा तो फिर मैं पूरे दिल से इसका यकीन करता हूँ। और वो अपने बेहतरीन लिबास में पानी में उतर गया और उसे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। करीबन 3 या 4 साल कबल उन्होंने मुझे न्यू अल्बानी के एक अस्पताल में बुलाया। वो वहाँ कैंसर से मर रहा था, कैंसर ने उसे खा लिया था। डॉक्टरों ने बताया कि ये अगली सुबह तक जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा वो मर रहा है। उन्होंने कहा जल्दी से आए। मैं कमरे में गया और जब मैंने वहाँ खड़े खड़े दुआ की तो उसने कहा बिली, मुझे एक दनक दिखाई दे रही है जो इस तरफ कोने में दायरा बना रही है। मैं देखने को मुड़ा। मैंने कहा बेस्टी, ये एक अहद है कि तुम नहीं मरने वाले। खून का अहद तुम्हें बचाता है। मैंने अपने हाथ उस पर रखे और कहा खुदावंद खुदा, इस कोने की रोया ये साबित करती है कि तू यहाँ मौजूद है। तेरा वादा है ये कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मैं अपना हाथ इस पर बढ़ाता हूँ कि ये शिफा पा जाए और उसे सलामत घर भेज दे। अब उसे तकरीबन 4 या 5 तकरीबन 4 साल दरिया पार मछलियां पकड़ते हुए गुजर गए हैं। सब ठीक चल रहा है और जहां खुराक की नाली के गिर्द कैंसर बन चुका था वहां एक बड़ी सख्त गिराव बन गई थी। डॉक्टरों और अस्पताल के माहिरीन ने बताया कि उनके पास एक कोबाल्ट तरीकेकार इलाज है जो इस गिराव को जायल कर सकता है ताकि यक वक्त ज्यादा खुराक अंदर जा सके। इसे आहिस्ता आहिस्ता खाना पड़ता था और खाते वक्त खुराक की ज्यादा मकदार ना ले जा सकता था। वो इलाज कराने के लिए वहाँ चला गया था जिसका मुझे कोई इलम ना था। जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया तो उस पर कपकपी तारी हो गई और उसे एक झटका लगा और वो एक जानिब से मफलूज हो गया और वो सिर्फ ये कर सकता था कि आहिस्ता आहिस्ता करा सके। और इस तरह उसने एक कलम ली और करा और उसने ठीक हाथ से लिखने की कोशिश की। उसका हाथ थरथराहट का शिकार था, उसकी बाईं जानिब झटका लगा था और उसने अपने हाथ से कुछ लिखा। यस्सु ने 1900 और कुछ मजीद को निजात दी, वो इसे ना समझ सके। पर जब उसकी अहलिया ने मुझे बताया, भाई ब्रैनम, मैं नहीं समझ सकी कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा, मिसिज रोजर्स, इससे जो मुराद है कि 1900 और कुछ ने यस्सु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और निजात पाई। अब इसी के लिए वो दुख उठा रहा है, वो मरने से नहीं डरता है। मैंने कहा, खुदावन, इसकी जिंदगी को आजाद कर। मैं ये दुआ यस्सु नाम में करता हूँ कि तू इसकी जिंदगी को आजाद कर देगा। मैंने इस पर हाथ बढ़ाए और झटके लगना बंद हो गए, कपकपी मौकूफ हो गई और वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अब वो गवाहियां दे रहा है। अपने ईमान पर नेकी का इजाफा करो, नेकी पर मार्फत का इजाफा करो, मार्फत पर परहेजगारी का इजाफा करो, परहेजगारी पर सबर का इजाफा करो और सबर पर दीनदारी का इजाफा करो और दीनदारी पर ब्रादराना उल्फत का इजाफा करो और ब्रादराना उल्फत बढ़ाओ तो रूल कुस और मसीह आएगा। बिला शुबा उसके सामने झुक जाएं ताकि रूल कुस जो यस्सु मसीह का रूह है कलीसिया में इन खूबियों को जाहिर करे। हो मेरे खुदाया, तकरीबन अब 12:15 हो चुके हैं। मैं अब कैसा हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे मोहब्बत की। मैं आज इस सुबह अपने पूरे दिल से इसके साथ अहद करता हूँ कि उसकी मदद और फजल के वसीला दुआ करता रहूँगा और बिला नागा इसकी तलाश में रहूँगा जब तक कि मेरी हस्ती में ये तमाम चीजें अमल पजीर ना हों, जब तक कि मैं जिंदा मसीह का मकदस ना बन जाऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए गुनाहगार ठहरा ताकि मैं उसकी मानिद खुदा का कदूस ठहरूं। उसने मेरी जगह ले ली, खुदावन अब मुझे उसकी जगह लेने दे क्योंकि उसने इसी मकसद के लिए जान दी। कितने हैं जो खुदा के जलाल में अहद करेंगे अब अपने झुके हुए सरों और उठे हुए हाथों के साथ। खुदावन मैं ये अहद करता हूँ, कलीसिया अहद करती है कि तू हमें मसीह के पूरे कदो कामत के मुताबिक बना।